आगे सबक देखिए भाई। बाबुल ऐमानी फी तलाक व इदा अज़ाफत तलाक इला निकाह वका अकीबन निकाह मिस्लु अन यकूल लिमरअतिन इन तज़व्वजतुकि फा अंति तालिकुन औ कुल्लु मरअतिन अतज़व्वजुहा फहिया तालिकुन। وقال الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل النكاح। गुज़श्ता सबक में आपने मसला पढ़ा था कि अगर खावंद बीवी को तलाक का इख्तियार दे तो वही तलाक वाकई होगी जो खावंद ने बीवी के सुपुर्द की है। अगर खावन ने तलाक रजई सुपुर्द की है तो बीवी बेशक बाइन वाके करती रहे, बाइन वाके नहीं होगी, रजई ही वाके होगी। और अगर खावन ने बाइन सुपुर्द की है तो बीवी बेशक रजई कहती रहे लेकिन वो तलाक वाके करेगी तो बाइन ही होगी भाई। और फिर यह मसला भी जिक्र किया था कि अगर खावन ने बीवी से कहा कि तू अपने आप को तीन तलाकें दे दे इन शेती, अगर तू चाहती है तो इस सूरत में तीन वाके करेगी तो फिर ही तीन वाके होंगी, अगर वो एक या दो वाके करती है तो वो वाके नहीं होंगी क्योंकि खावंद ने सात शर्त जिक्र कर दी इन शिती, और इसका मफूल महजूफ है आई इन शिती सलासा तल्लिकी नफसकी सलासन इन शिती सलासा। तो लिहाजा अगर एक या दो वाके की तो मालूम हो उसने तीन को नहीं चाहा, और जब तीन को नहीं चाहा तो शर्त ना पाई गई, और जब शर्त ना पाई गई तो मशरूत भी नहीं होगा, तलाक वाकई नहीं होगी। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि नहीं, तीन को जब उसने चाहा तो तीन के जिमन में एक और दो भी आ गई, लिहाजा वो जो वाकई करेगी वाकई हो जाएंगी भाई। और फिर उसके बाद साहिब हिदाया ने आपको मसला बतलाया कि खावन ने बीवी से कहा कि अंति तालिकुन इन शेती, कि तुझे तलाक है अगर तू चाहती है। जवाब में बीवी कहती है शे तो इन शेता, कि मैं चाहती हूं अगर तू चाहता है। और खावन ने फिर जवाब में कहा शे तो मैं चाहता हूं, और नियत भी कर रहा है वो तलाक की, तो भी तलाक वाकई नहीं होगी। वजह यह कि खावन ने मुतलक मशीयत के साथ तलाक को मुअल्लक किया है, अंति तालिकुन इन शीति, अगर तू चाहती है, मुतलक मशीयत जिक्र कर रहा है खावन, और बीवी जो जवाब में जिक्र कर रही है वह मुअल्लक मशीयत है कि शी तू इन शीता, मैं चाहती हूं अगर तू चाहता है। तो औरत ने अपनी मशीयत को मुअल्लक कर दिया खावन की मशीयत के साथ, तो खावन ने तलाक को मुअल्लक किया था मुतलक मशीयत से, और औरत की तो मुतलक मशीयत इस वक्त है ही नहीं, वो तो मुअल्लक मशीयत जिक्र कर रही है। और फिर खावन जवाब में बेशक शीतु कह दे और तलाक की नीयत भी कर दे, फिर भी तलाक वाकई नहीं होगी। वजह यह कि जो खावन ने शीतु कहा है वो औरत के जवाब में कहा है, और औरत ने भी तलाक का लफ्ज जिक्र नहीं किया और खावन ने भी तलाक का लफ्ज जिक्र नहीं किया। एक चीज जब सवाल में नहीं है तो जवाब में भी जिमनन वो नहीं आ सकती। हां, अगर औरत ने तलाक का लफ्ज जिक्र किया होता शितु तलाकी इन शिता, फिर उसके जवाब में अगर खावन शितु कहता तो फिर तलाक वाकई हो जाती। तो औरत के अल्फाज में भी तलाक का लफ्ज नहीं है और खावन के अल्फाज में भी तलाक का लफ्ज नहीं। हां, अगर खावन यूं कह देता शितु तलाका की या शितु तलाका, तो फिर तलाक वाकई हो जाती अगर खावन नियत करता, और वो इस वजह से वाकई ना होती कि यह औरत का जवाब है, बल्कि ये एक अलग कलाम शुमार होता शितु तलाका की, ये एक अलग कलाम शुमार होता। और इस तरह का कलाम अगर खावंद अलग भी कहेगा तो उससे भी तलाक वाकई हो जाएगी। बात समझ में आ गई, खावंद बीवी को शितु तलाका की कह दे और नीयत भी तलाक की हो तो तलाक वाकई हो जाएगी। वजह यह कि मशीयत का लफ्ज शय उन से माखूज है और शय उन वजूद पर दलालत करता है, तो मशीयत भी वजूद पर दलालत करती है। तो जब खावन ने कहा शितु तलाक की, गोया वो तलाक को वजूद दे रहा है, और तलाक का वजूद तो ईका से ही होगा, लिहाजा तलाक वाकई हो जाएगी। जबकि इसके मुकाबले में अगर खावन ने कहा अरत तू तलाक की और नियत की तलाक की, तो इस सूरत में तलाक वाकई नहीं होगी भाई। वजह यह कि इरादा तलब पर दलालत करता है, इरादा तलब के लिए आता है और तलब के साथ वजूद का होना जरूरी नहीं, लिहाजा इससे तलाक वाकई नहीं होगी भाई। और इसी तरह अगर खावन ने कहा तल्लिकी नफ्सा की इन शिती, जवाब में औरत कहती है शितु इनका न कजा, अगर इस तरह हो जाए। औरत ने फिर मुअल्लक मशीयत जिक्र कर दी, यानी एक ऐसे काम को जिक्र किया जो अभी हुआ नहीं, तो इस सूरत में भी ये तलाक वाकई नहीं होगी भाई। और इन तमाम सूरतों में इख्तियार भी औरत के हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि वो एक लायानी काम में मसरूफ हो गई, एक बेकार काम में मसरूफ हो गई। खावंद उसे तलाक का इख्तियार दे रहा है और वो कह रही है कि मैं चाहती हूं अगर तुम चाहते हो, या मैं चाहती हूं अगर फलां काम हो जाए, तो ये एक लायानी और बेकार काम में मशगूल हो गई, गोया वो एराज कर रही है। अगर उसे जरूरत होती, हाजत होती, वो फौरन तलाक वाके कर देती, लेकिन उसका ये कलाम बतला रहा है कि वो एराज कर रही है, और एराज से तो इख्तियार बातिल हो जाता है, तो इसका इख्तियार भी बातिल हो जाएगा और तलाक भी वाके नहीं होगी। लेकिन इसके बजाय अगर औरत ने कोई ऐसी शर्त जिक्र कर दी जो हो चुकी है, जो साबित शुदा है, तो फिर इस सूरत में तलाक हो जाएगी भाई। और इसी तरह अगर खावन ने कहा अंति तालिकुन मताशीति या मता माशीति, तो जिंदगी भर जिस वक्त भी औरत चाहेगी तलाक वाके हो जाएगी। औरत रद्द कर दे फिर भी उसका इख्तियार खत्म नहीं, क्योंकि खावन ने तो क्या कहा था, अंति तालिकुन मताशीति, जब तू चाहे। और औरत रद्द कर रही है, मालूम हुआ अभी इसने चाहा ही नहीं, जब चाहा ही नहीं तो इसको इख्तियार भी नहीं, जब इख्तियार नहीं तो उसको रद्द करने का क्या माना भाई, इख्तियार मिलेगा तो रद्द करेगी उसको। और ईजा के बारे में बतलाया था कि साहिबैन और इमाम साहब का इख्तिलाफ है, और साहिबैन के नजदीक ईजा या ईजा मां कह दे तब भी इसी तरह जिंदगी भर औरत को इख्तियार मिल जाएगा तलाक का। हां अलबत्त एक ही तलाक वाके कर सकती है, एक से ज्यादा नहीं, जबकि इमाम साहब फरमाते हैं ईजा शर्त के लिए भी आता है और वक्त के लिए भी आता है। तो खामन ने जब कहा अंति तालिकुन ईजा शीति, तो अगर इसको शर्त के लिए बनाएं तो मजलिस के बाद इख्तियार खत्म होना चाहिए, और अगर इसको वक्त के लिए बनाएं तो फिर हमेशा इख्तियार होना चाहिए। तो लिहाजा औरत का इख्तियार मिलना तो यकीनी है, और अल यकीन ला यजूलु इल्ला बिल यकीन, यकीन जो है वो यकीन से ही जायल हो सकता है। तो जब खावन ने इख्तियार दिया तो औरत को इख्तियार तो यकीनी तौर पर मिल गया, अलबत्ता मजलिस के गुजरने के बाद अब शक आ गया कि पता नहीं इख्तियार खत्म हुआ है या इख्तियार खत्म नहीं हुआ, तो इस शक की वजह से इख्तियार को बातिल करार नहीं दिया जाएगा, जिंदगी भर उसको इख्तियार रहेगा। जबकि इसके मुकाबले में अगर कुल्लमा का लफ्ज जिक्र किया खावन ने, तो फिर इस सूरत में औरत जितनी तलाकें वाकई करना चाहे कर सकती है, अलबत्ता इकट्ठी नहीं, अलग अलग तलाकें वो वाकई कर सकती है, क्योंकि ये कुल्लमा जो है ये तकरार अफाल को साबित करता है। तो एक तलाक दे दे फिर दोबारा चाहती है, दूसरी भी दे दे फिर चाहती है, तो तीसरी भी अपने आप को औरत तलाक दे सकती है भाई। उसके बाद साहिबे हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया था कि खामन ने बीवी से कहा अंति तालिकुन कैफ शिति, कि तुझे तलाक है जैसे तू चाहती है। तो इस सूरत में इमाम साहब फरमाते हैं ये लफ्ज कहते ही फौरन एक तलाक हो गई, क्योंकि खामन ने सिर्फ सिफत औरत के हवाले की है, और सिफत तलाक की तभी हो सकती है जब असले तलाक तो पाई जाए, और असले तलाक तो ईका से होती है, लिहाजा ये लफ्ज कहते ही असले तलाक पाई गई, उसका वजूद आ गया, अब सिफत औरत के हवाले है। फिर इसके अंदर जो औरत नीयत करेगी, तो अगर उसकी नीयत खावंद के मुताबिक हुई, मसलन खावंद ने भी बाइना की नीयत की, औरत ने भी तलाके बाइन वाके की, या खावंद ने भी तीन की नीयत की, औरत ने भी तीन तलाकों की नीयत की, या खावंद ने रजई की नीयत की, औरत ने भी रजई की नीयत की है, तो फिर तो मुआफकत पाई गई बीवी की मशीयत और खावंद के इरादे के दरमियान, लिहाजा इस सूरत में यही तलाक वाके हो जाएगी जिसका इरादा औरत ने किया है। और अगर खावंद का इरादा और है और बीवी की मशीयत और है, तो फिर इस सूरत में इजा तआरजा तसाकता, दोनों में तआरुज आया तो दोनों की मशीयत जो है वो साकित हो जाएगी, दोनों की मशीयत साकित हो जाएगी और असले तलाक वाके हो जाएगी। क्योंकि खावन ने क्या कहा था, अंति तालिकुन कैफा शेती, तो अंति तालिकुन तो मौजूद है, तो उससे तलाक हो जाएगी, और उससे तो तलाक रजई होती है, लिहाजा रजई तलाक हो जाएगी। और अगर खावन की कोई नीयत ही नहीं है, तो इस सूरत में मुतकद्दिमीन से तो कोई रिवायत नहीं है, अलबत्ता मुताखिरीन के नजदीक इस सूरत में औरत की मशीयत के मुताबिक तलाक होनी चाहिए भाई, तो औरत की मशीयत मोतबर होगी भाई। जबकि साहिबैन फरमाते हैं कि इस सूरत में सिर्फ सिफत औरत के हवाले नहीं की खावन ने, बल्कि असले तलाक भी औरत के हवाले की है, लिहाजा अंति तालिकुन कैफशीती, इससे तलाक वाक नहीं होगी जब तक औरत न चाहे। जबकि इमाम साहब तो फरमाते थे ये लफ्ज कहते ही तलाक वाक हो गई है और अब सिर्फ सिफत की तायीन बाकी रह गई थी भाई। और फिर साहिब हिदाया ने मसला जिक्र फरमाया कि अगर खावन ने बीवी से कहा तल्लिकी नफ्सकी मीन सलासिम माशीती, कि तू अपने आप को तलाक दे दे मीन सलासिन तीन में से माशीती जितनी तू चाहे, तो साहिबैन फरमाते हैं कि ये मा तामीम के लिए आता है और मीन जो है तबईज के लिए आता है, लेकिन मां की तामीम पक्की है और मीन के अंदर तबईज का इहतमाल है, कोई पक्की नहीं, मीन के और भी मानी आते हैं, तो लिहाजा ये जो मीन जो मुहतमल है इसको भी मुहकम पर महमूल कर लेंगे और इसको उसी के लिए बयान बना देंगे। लिहाजा बीवी अपने आप को एक तलाक भी दे सकती है, दो भी दे सकती है और तीनों यानी सारी तलाकें भी दे सकती है। जबकि इमाम साहब फरमाते हैं कि नहीं, इस सूरत में औरत तीन तलाकें नहीं दे सकती बल्कि उसमें से बाज दे सकती है, क्योंकि यहां मीन आ गया है, कलिमा मा तामीम के लिए है कि जितनी तलाकें देना चाहती है दे सकती है, मीन सलासिन कितने में से तीन, यानी बाज तीन में से बाज दे सकती है, तो एक भी दे सकती है दो भी दे सकती है। देखो मां की तामीम पर भी अमल हो रहा है, एक भी देना चाहे एक तलाक भी वाके कर सकती है और दो भी वाके कर सकती है, लेकिन तीनों का मजमुआ वो वाके नहीं कर सकती। अब आइए आज के सबक पर, बाबुल ऐमान फि तलाक व इदा अज़ाफ तलाक इलन निकाह वका अक़ीबन निकाह मिस्लु अन यकूल लिमरअतिन इन तज़व्वजतुकि फअंति तालिकुन أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق وقال الشافعي رحمه الله تعالى لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل النكاح باب الأيمان في الطلاق أيمان بھئی یاد رکھو یہ جمع ہے یمین کی أيمان جمع ہے یمین کی أيمان حمزہ پر فتحہ پڑھنا ہے याद रखो एक वजन है अफआल और एक वजन है इफआल। इफआल ये मस्तर है बाबे इफआल का और अफआल ये जमा का वजन है, तो इसका आपने हमेशा ख्याल रखना है। जैसे कलम की जमा अकलाम, फेल की जमा अफआल, तो इसी तरह यमीन की जमा ऐमान, तो ये अफआल जमा का वजन है भाई। और याद रखो यहां यमीन जिक्र है लेकिन मुराद तालीक है। आपको मैंने बतलाया था कि फिका के अंदर तालीक को भी यमीन कहते हैं, तालीक को भी यमीन कहते हैं, इसलिए क्योंकि जिस तरह यमीन जो है किसी काम पर उभारने के लिए या रोकने के लिए लाई जाती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या रोकने के लिए लाई जाती है। मसलन एक शख्स एक काम से अपने आप को रोकना चाहता है तो कसम खाता है, वल्लाह ये काम मैं आइंदा नहीं करूंगा, तो देखो ये कसम उसने खाई है अपने आप को रोकने के लिए। और कभी किसी काम के करने पर इंसान कसम उठाता है ताकि उसका नफ्स उसके करने पर मजबूर हो जाए, कहता है वल्लाह ये काम मैं जरूर करूंगा, तो ये कसम किस लिए उठाई, अपने आप को उभारने के लिए कि ये काम अब मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने कसम खा ली है। तो जैसे यमीन किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए खाई जाती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए की जाती है। मसलन खावन बीवी से कहता है अगर तू उस घर में न गई तो तुझे तलाक है। मालूम हुआ खावंद उसको उभार रहा है कि उसे इस घर में जाना पड़ेगा भाई। तो यहां देखो काम के करने पर उभारा जा रहा है और कभी किसी काम के न करने पर उभारा जा रहा होगा। खावंद बीवी से कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो ताकि बीवी उस घर में न जाए भाई तलाक के खौफ से। तो मालूम हुआ तालीक भी यमीन की तरह है। यमीन जैसे किसी काम से रोकने के लिए और किसी काम पर उभारने के लिए खाई जाती है, इसी तरह तालीक भी किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए की जाती है। और नीज जैसे यमीन लाजिम हो जाती है, एक शख्स ने कसम खा ली अब वो लाजिम हो गई, अब रुजू नहीं हो सकता। एक शख्स कहता है वल्लाह मैं ये काम नहीं करूंगा, तो अब कसम मुनाकिद हो गई, आप ये काम करेगा तो हानिस हो जाएगा, कफारा देना पड़ेगा। तो जैसे कसम खाने के बाद वो लाजिम हो जाती है, वहां रुजू की सूरत नहीं। इसी तरह जब एक चीज को दूसरी चीज के साथ मुअल्लक किया जाए, तालीक की जाए, तो वो भी लाजिम हो जाती है, उससे अब रुजू नहीं हो सकता। खामन ने अपनी बीवी से कहा कि अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो याद रखो अब मामला खावन के हाथ से निकल गया। अब जिंदगी भर जब भी ये औरत उस घर में जाएगी, तलाक वाकई हो जाएगी। तो जैसे यमीन लाजिम हो जाती है, उसमें रुजू नहीं हो सकता, इसी तरह तालीक भी लाजिम हो जाती है, उसमें रुजू नहीं हो सकता। इसलिए तालीक को भी यमीन कहते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे जैसी हैं भाई। तो यहां ऐमान का जिक्र है, ऐमान जमा है यमीन की, लेकिन मुराद तालीक है भाई। तो कहते हैं बाबुल ऐमानी फी तलाक, ये बाब है तलाक के बारे में तालीकात के बयान में। व इदा अज़ाफ़ तलाक इला निकाह, सूरत मसला ये, खावन ने तलाक की निस्बत निकाह की तरफ कर दी जी। मसलन एक औरत है, उसकी बीवी नहीं है, लेकिन वो उसे कहता है इन तज़व्वजतु की फ़ान्त तालिकुन, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है जी। तो याद रखो इंदल अहनाफ ये यमीन मुनाकिद हो गई, यानी तालिक हो गई। ये शख्स जैसे ही इस औरत से निकाह करेगा, जिस लम्हे के अंदर इजाब और कबूल होगा, उसी लम्हे के अंदर फौरन तलाक भी आ जाएगी और निकाह टूट जाएगा। और नीज ये तो गैर मदखूल बिहा है, लिहाजा बाइना हो गई, लिहाजा बाइना हो गई। हां, अब दोबारा निकाह करना चाहता है, दोबारा कर सकता है, लेकिन अब जिंदगी भर इसको दो तलाकों का हक होगा, क्योंकि एक तलाक ये दे चुका है। और ये तो खास तालीक थी, किसी खास औरत से कहा अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है। और अगर अगर वो तालीक करता है उमूम के तरीके पर कि जिस औरत से भी मैं निकाह करूं उसे तलाक है, किस तरीके पर? उमूम के तरीके पर तालीक कर रहा है, जिस औरत से भी मैं निकाह करूं तो उसे तलाक है। तो याद रखो अब जिंदगी भर जिस औरत से भी निकाह करेगा फौरन तलाक आएगी और निकाह टूट जाएगा जी। तो ये इसने निहायत खतरनाक अल्फाज बोल दिए, अब जिंदगी भर इसके निकाह की कोई सूरत नहीं है जी। क्योंकि जब भी किसी औरत से निकाह करेगा फौरन तलाक वाकई हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इसने भी क्या कहा था, मैं जिस औरत से भी निकाह करूं उसको फौरन तलाक है भाई। तो अलबत्ता फिर उलमा उसका हीला बतलाते हैं कि फिर निकाह की यह सूरत है कि कोई फजूली इसका निकाह करवा दे, कोई फजूली इसका निकाह करवा दे और यह जुबान से कबूल ना करे, जुबान से कबूल करेगा तो फौरन तलाक हो जाएगी, बल्कि अपने किसी फेल के जरिए अपने कबूल का इजहार करे। मसलन किसी फजूली ने निकाह करवा दिया और इसने फिर औरत को महर भिजवा दिया, मालूम हो ये निकाह को कबूल कर रहा है, जुबान से कुछ नहीं कहा लेकिन महर भिजवा दिया। और नीज ये भी कोई आसान काम नहीं है कि फजूली निकाह करवा दे भाई। फजूली आप जानते हैं वो शख्स जो ना असील है और ना वकील है, अगर ये खुद भी किसी को कहेगा भाई मेरा फजूली बन के निकाह करवा दो, नहीं भाई ये फजूली कहां रहा, आपने जब कह दिया ये तो वकील बन गया, ये तो वकील बन गया। तो लिहाजा इस सूरत में फिर निकाह बड़ा ही मुश्किल हो गया भाई। उलमा ने हीला तो बतला दिया लेकिन ये हीला भी कोई आसान नहीं है भाई। और फिर बिलखसूस भाई लड़की वाले भी कभी इस तरह लड़की नहीं देंगे कि उस लड़के से मिले बगैर, देखे बगैर और उसकी मर्जी पूछे बगैर ही निकाह करवा दें, और ये मर्जी जिक्र करेगा फिर तो निकाह ही नहीं होगा भाई। तो लिहाजा इस सूरत में फिर निकाह बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ये तालीकात के मसले में जिंदगी भर याद रखना भाई, कभी तालीक न करना भाई। तालीक जब एक दफा कर दी मामला हाथ से निकल गया भाई, इंसान गुस्से में है, तलाक की तालीक कर दी, बस अब मामला हाथ से निकल गया भाई, अब वहां वापसी की कोई सूरत नहीं है। लिहाजा एक तो तलाक का लफ्ज कभी जुबान पर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि बार बार झगड़े के अंदर अगर तलाक जिक्र करता रहेगा तो एक दिन आएगा जब ज्यादा गुस्से की वजह से तलाक दे भी देगा और फिर अफसोस के अलावा कोई रास्ता नहीं। वजह यह कि औरत के पास तो पहले भी इख्तियार नहीं है, तलाक का इख्तियार तो मर्द को होता है, तो वो गुस्से में आकर तलाक देगा तो अब मर्द का इख्तियार भी खत्म हो गया। अब दोनों बे इख्तियार हो गए, बात समझ में आ गई। तो अगर एक या दो तलाकें दी हो फिर तो रुजू या निकाह की गुंजाइश रहेगी, लेकिन अगर तीन तलाकें दे दी फिर तो दोबारा निकाह की भी सूरत नहीं है, इल्ला ये कि वह औरत किसी और शख्स से निकाह करे और वो इसके साथ सोहबत भी करे, और फिर अगर उसने जिंदगी में कभी तलाक दे दी या उसका इंतकाल हो गया तो फिर पहला खावंद उसे निकाह कर सकता है। देखिए भाई कहते हैं, वह ईदा अजाफत तलाक इलन निकाही, और जब खावंद ने निस्बत कर दी तलाक की निकाह की तरफ यानी निकाह के साथ उसे मुअल्लक कर दिया, वका अकीबन निकाही, तो निकाह के बाद तलाक वाके हो जाएगी। मिसलु अन यकूल लिमरातिन, मिसाल के तौर पर कोई शख्स किसी औरत से कहता है, इन तज़व्वजतुकि फअंति तालिकुन, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है। तो देखो तालीक है लेकिन खुसूस के तरीके पर, खास औरत को जिक्र कर रहा है। औ कुल्लु इमरातिन अतज़व्वजुहा फहिय तालिकुन, और हर वो औरत जिसे मैं निकाह करूं, फहिया तालिकुन, तो उसको तलाक है। तो ये देखो ये तालीक है उमूम के तरीके पर। वकाल शाफियु रहिमहुल्लाह तआला ला यकाउ, इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये तलाक वाके नहीं होगी, ये तलाक वाके नहीं होगी। आपको मैंने जाब्ता बतलाया था, हमारे नजदीक मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा शर्त, इंदा वजूदी शर्त। जब एक चीज को आप दूसरी चीज के साथ मुअल्लक कर दें तो ये जो मुअल्लक जिसको मुअल्लक किया है ये सबब बनेगा इन द वजूदी शर्त, जब शर्त पाई जाएगी। मसलन खावन ने बीवी से कहा, अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई। अब देखो ये अंति तालिकुन ये तलाक का सबब बनता है, इसकी वजह से तलाक आया करती है, तो अंति तालिकुन है इल्लत और तलाक है उसका मालूल, और हमारे नजदीक इल्लत मालूल से जुदा नहीं हो सकती। भाई जब मालूल पाया जाए इल्लत जरूर पाई जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता इल्लत तो पाई जाए और मालूल न पाया जाए। लिहाजा अंति तालिकुन इन दखलती दारा, यहां तो अंति तालिकुन आ रहा है और तलाक नहीं आ रही, क्योंकि तलाक तो मुअल्लक हो गई है दुखूल दार के साथ। तो लिहाजा अहनाफ के नजदीक ये वाला अंति तालिकुन ये तलाक का सबब ही नहीं है, क्योंकि अगर इसको तलाक का सबब करार दें तो फौरन तलाक का आना जरूरी है, क्योंकि इल्लत पाई जाए तो मालूल का आना जरूरी होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि इल्लत हो और मालूल न हो। तो इंदल अहनाफ ये जो तलाक है ये मुअल्लक हो गई, ये वाला अंति तालिकुन तलाक का सबब ही नहीं है, क्योंकि अगर ये सबब है तो फिर तो ये इल्लत है, और इल्लत हो और मालूल ना हो ऐसा नहीं हो सकता। अंति तालिकुन जब भी आएगा वुकूए तलाक जरूरी है। देखो अंति तालिकुन यह है ईकाए तलाक, तलाक का वाके करना, तलाक का देना, खावन तलाक देता है तो बीवी पर तलाक वाके हो जाती है। तो ईकाए तलाक यह है इल्लत, और वुकूए तलाक यह है मालूल यानी उसका असर। भाई तो ईका यह है इल्लत और वुकूए यह है मालूल। भाई तो हमारे नजदीक अंति तालिकुन इन दखलती दारा ये अंति तालिकुन मुअल्लक है भाई दुहुलेदार के साथ, और मुअल्लक इंदल अहनाफ ये सबब बनता है वजूद शर्त के वक्त, यानी जिस वक्त शर्त पाई जाएगी जब औरत उस घर में दाखिल होगी उस वक्त अंति तालिकुन आएगा, और अंति तालिकुन तो क्या है ईकाए तलाक, खावन क्या कर रहा है तलाक को वाके कर रहा है, और जैसे ही ईका आएगा तो ये तो इल्लत है, इल्लत के आते ही मालूल जरूर आता है, तो अब मालूल यानी तलाक भी आ जाएगी, औरत मुतल्लका हो जाएगी। ज़ाब्ता क्या हुआ, इंदल अहनाफ मुअल्लक वो सबब बनता है इंदा वजूदी शर्त, तो इस वक्त गोया यूं समझो अंति तालिकुन है ही नहीं, जब घर में जाएगी तो अंति तालिकुन भी आएगा और तलाक भी वाके हो जाएगी। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मुअल्लक जो है वो सबब बनता है इंदा तकल्लुम, वो सबब बनता है इंदा तकल्लुम, यानी जिस वक्त खावन ने कहा अंति तालिकुन इन दखलती दारा तो इसी वक्त ये अंति तालिकुन तलाक का सबब बन रहा है, यानी इसकी वजह से ईकाए तलाक हो रहा है, तलाक वाके हो रही है। लेकिन आगे चूंकि शर्त आ गई, क्या आ गई शर्त आ गई, तो लिहाजा इस वजह से अब वुकूए तलाक नहीं पाया गया, वुकूए तलाक जब शर्त पाई जाएगी तब वुकूअ होगा। गोया उनके नजदीक अंति तालिकुन तो फिलहाल है लेकिन तलाक नहीं है, और तलाक जब वो औरत घर में जाएगी तो उस वक्त तलाक आ जाएगी। तो इस वक्त उनके नजदीक सिर्फ इकाए तलाक है, वुकूए तलाक नहीं, क्योंकि शर्त मौजूद है, शर्त वुकूअ को नहीं आने दे रही। अंति तालिकुन तो चाहता है फौरन तलाक वाक हो जाए, लेकिन इन दखलती दार ये शर्त जो है ये वुकूए तलाक को रोक लेती है, और औरत जब घर में जाएगी तो वुकूए तलाक पाया जाएगा। तो मालूम हुआ उनके नजदीक अंति तालिकुन इन दखलती दार ये इकाए तलाक है, और औरत जब घर में जाएगी तो वो वुकूए तलाक होगा। तो उनके नजदीक वुकूअ इका से जुदा हो सकता है। वुकूए तलाक क्या है? इका से जुदा हो सकता है। हमारे नजदीक खावन ने कहा अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तो हमारे नजदीक न इस वक्त इका है और न वुकूअ है। जब औरत घर में जाएगी तो फिर इका भी होगा और फिर वुकूअ भी होगा, जबकि उनके नजदीक इस वक्त इका है, क्योंकि उनके नजदीक मुअल्लक सबब बनता है इंद तकल्लुम। जब मुअल्लक पर कोई शख्स तकल्लुम करता है वो उसी वक्त सबब बन जाता है, या अंति तालिकुन इसी वक्त सबब बन गया तलाक का, लेकिन तलाक नहीं आ रही, इसका हुक्म और असर नहीं आ रहा, क्योंकि ये मुअल्लक है शर्त के साथ। तो हमारे नजदीक मुअल्लक सबब बनता है इंदा वजूद शर्त, और उनके नजदीक मुअल्लक सबब बनता है इंदा तकल्लुम, जिस वक्त मुतकल्लिम उस पर तकल्लुम करता है। तो उनके नजदीक वुकूअ जुदा हो सकता है इका से, लेकिन हमारे नजदीक वुकूअ इका से जुदा नहीं हो सकता। भाई जब इका हो वुकूअ जरूर होना चाहिए, इसलिए हमने कहा कि जब शर्त पाई जाएगी तभी इका होगा, और इका के साथ वुकूअ जरूर होता है तो वहां वुकूअ भी फिर आ जाएगा। तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं इस शख्स ने किसी औरत से कहा है इन तजव्वज तू किफानती तालिकुन, अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है, तो अंति तालिकुन इस वक्त आ रहा है, और ये अंति तालिकुन किसका सबब बनेगा? तलाक का, इसी वक्त तलाक का सबब बनेगा, लेकिन इस वक्त तो ये उसकी बीवी नहीं है, इसने तो इसी वक्त इका का सबब बनना था, लेकिन इस वक्त तो ये उसकी बीवी नहीं, तो ये कलाम लग्व चला गया, बेकार चला गया, किसी गैर औरत को कोई कैसे कह सकता है अंति तालिकुन? भाई फर्क समझ में आ रहा है? तो इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये मुअल्लक जो है ये तकल्लुम के वक्त ही इसने सबब बनना है, लेकिन तकल्लुम के वक्त वो औरत इसकी बीवी ही नहीं है, तो इसका अंति तालिकुन कहना ही लगव है, बेकार है, लिहाजा उनके नजदीक ये उस औरत से बाद में निकाह करेगा भी तो भी तलाक वाकई नहीं होगी, क्योंकि वो कलाम जो उसने पहले किया था वो लगव था, उसको कोई एतबार ही नहीं था। और इसी तरह अगर एक शख्स कहता है कुल उम्रातिन अतजव्वजुहा फहिया तालिकुन, कि जिस औरत से भी मैं निकाह करूं तो उसे तलाक है, तो यहां पर भी अभी निकाह ही नहीं है तो फहिया तालिकुन लगव है, लिहाजा जब ये लगव है तो निकाह करेगा भी तो तलाक वाकई नहीं होगी। भाई तो ये तो थी अकली दलील इमाम शाफी रहमतुल्लाह की, और नीज वो नकली दलील भी जिक्र करते हैं, हदीस जिक्र करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तलाक कबला निकाह, निकाह से पहले तलाक नहीं है। तो ये तो दोनों जो सूरतें जिक्र की, एक शख्स ने औरत से कहा इन तजव्वजतु की फांति तालिकुन, निकाह है नहीं और वो तलाक देना चाह रहा है, तो हदीस में तो आ गया कि निकाह से पहले तलाक नहीं है। भाई तो कहते हैं वकाल शाफी रहिमहुल्लाह ताला ला यकौ, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि यह तलाक वाकई नहीं होगी, ये जो खावन ने तलाक को निकाह से मुअल्लक किया था यह तलाक वाकई नहीं होगी। लिकौलिही अलैहि सलातु वस्सलाम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मुबारक की वजह से आपने फरमाया ला तलाक कबल निकाह, निकाह से पहले तलाक नहीं है। वलाना, अब हमारी दलील आ गई, वलाना और हमारी दलील यह है कि अन्नहादा तसर्रुफ यमीन लिवजूद शर्त वल जजाई, कि यह तसर्रुफ यमीन है लिवजूद शर्त वल जजाई, शर्त और जजा पाए जाने की वजह से। इस शख्स ने क्या कहा है इन तजव्वज तो की फअंति तालिकुन, अगर मैं तुझसे निकाह करूं तो तुझे तलाक है, तो यह तसर्रुफ यमीन है। और याद रखो ये जो इंसान कोई कसम खाता है तो ये कसम उसके जिम्मा में होती है। भाई मसलन एक शख्स ने कह दिया वल्लाह मैं ये काम नहीं करूंगा, तो अब यह कसम इस शख्स के जिम्मा में होगी और जब भी यह शख्स उस काम को करेगा तो हानिस हो जाएगा और इसको कफारा अदा करना पड़ेगा। तो यमीन जो है वो कसम खाने वाले के जिम्मा में होती है, लिहाजा वो कसम खाने वाले में अहलियत होनी चाहिए भाई कि कोई चीज उसके जिम्मा में बाकी रह सके, यानी उसको आकिल और बालिग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आकिल और बालिग होना चाहिए। तो आकिल बालिग जब कसम खाएगा वो कसम उसके जिम्मा में आ गई, अब उसको उसकी पाबंदी करना पड़ेगी, अगर वो उसके खिलाफ करेगा तो हानिस हो जाएगा और उस पर कफारा वाजिब हो जाएगा। तो हासिल कलाम क्या कि कसम कसम खाने वाले के जिम्मा में रहती है, लिहाजा उसमें अहलियत जरूरी है, उसका आकिल बालिग होना जरूरी है भाई। इसी तरह याद रखो जब कोई शख्स तालीक करता है तो तालीक भी तो यमीन है भाई, तालीक भी तो क्या है? यमीन। लिहाजा ये तालीक भी इस शख्स के जिम्मा में बाकी रहती है, लिहाजा इसमें अहलियत होनी चाहिए, यह आकिल बालिग होना चाहिए। और यहां पर भी इस शख्स ने क्या कहा है? इन तजव्वज तु की फअंत तालिकुन या कुल्लु मरअतिन अतजव्वजुहा फहिया तालिकुन। तो यहां पर भी ये कलाम करने वाला शख्स आकिल बालिग है, इसमें अहलियत है, ये तालीक कर सकता है, ये कसम खा सकता है भाई, ये यमीन मुनाकिद कर सकता है भाई। और तालीक के लिए शर्त और जजा चाहिए, तो शर्त और जजा यहां मौजूद है। इन तजव्वजतु की फअंत तालिकुन या कुल्लु मरअतिन अतजव्वजुहा फहिया तालिकुन। तो यहां शर्त भी मौजूद है और जजा भी मौजूद है और कहने वाले में अहलियत भी है, वो कोई चीज उसके जिम्मे में बाकी रह सकती है, लिहाजा यहां पर ये यमीन मुनाकिद हो जाएगी। हमारे नजदीक यमीन में मालिक होना जरूरी नहीं। आगे चलकर साहिब हिदाया आपको बतलाएंगे कि हमारे नजदीक जो मालिक हो वो भी तालिक कर सकता है, यमीन कर सकता है, और अगर वो मालिक नहीं है और मिल्कियत की तरफ निस्बत कर दे तब भी उसकी तालीक सही है। तालीक के लिए आगे साहिब हिदाया बाकायदा आपको जाब्ता बतलाएंगे कि तालीक करने वाले के लिए जरूरी है कि वो मालिक होना चाहिए। अगर एक शख्स मालिक ही नहीं है तो फिर तालीक भी सही नहीं। मसलन एक शख्स एक अजनबी औरत से कहता है इन दखलती दार अफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। भई ये तो अजनबिया है, यहां तो आप तलाकों के मालिक ही नहीं है, लिहाजा ये आपकी तालीक लग चली गई, बेकार चली गई, इसका कोई एतबार नहीं। तो मालिक होना जरूरी है, और अगर मालिक ना हो तो फिर इस सूरत में मिल्कियत की तरफ निस्बत जरूरी है। मसलन जैसे यहां कहा इन तजव्वज तु की फअंत तालिकुन, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है, और निकाह से ये तलाकों का मालिक बन जाएगा। तो किसकी तरफ निस्बत की? मिल्कियत की तरफ, या सबब मिल्कियत की तरफ यहां निस्बत कर दी। तो लिहाजा इस सूरत में यह तालीक सही है। तो हासिल कलाम क्या? इंदल अहनाफ तालीक के लिए क्या जरूरी है कि तालीक करने वाला या तो वह मालिक हो या मिल्कियत की तरफ निस्बत करे, यानी मालूम हुआ फिलहाल मालिक न भी हो लेकिन मिल्कियत की तरफ निस्बत करे तो तालीक सही हो जाएगी भाई। तो मालूम हुआ तालीक के लिए मिल्कियत जरूरी नहीं, अलबत्ता उस शख्स में अहलियत होनी चाहिए, यह यमीन उसके जिम्मा में बाकी रहेगी, लिहाजा वो आकिल बालिग होना चाहिए। तो लिहाजा यहां पर भी ये तालीक करने वाला शख्स आकिल बालिग है, और उसने शर्त को भी जिक्र किया है और जजा को भी जिक्र किया है, लिहाजा ये यमीन मुनाकिद हो गई, ये यमीन मुनाकिद हो गई। तो कहते हैं वलना, और हमारी दलील यह है कि अन्नहादा तसर्रुफ यमीन, इनकी तसर्रुफ यमीन है। ये क्या है? तसर्रुफ यमीन है। लिवजूद शर्त वल जजाई, शर्त और जजा के पाए जाने की वजह से कि कहने वाले में अहलियत भी है, वो तालीक कर सकता है, और नीज शर्त भी पाई जा रही है और जजा भी, लिहाजा ये यमीन मुनाकिद हो गई और अब ये शख्स के जिम्मा में बाकी है भाई। तो कहते हैं वलाना, हमारी दलील यह है कि नहादा तसर्रुफ यमीन, इनकी ये तसर्रुफ यमीन है। लिवजूद शर्त वल जजाई, बवजह शर्त और जजा के पाए जाने के, फला युश्तरतु लिसिहती ही कियामुल मिल्क फिलहाल, लिहाजा शर्त नहीं होगा इस तालीक के सही होने के लिए कि फिलहाल मिल्कियत कायम हो, फिलहाल मिल्कियत मौजूद हो, फिलहाल मालिक होना जरूरी नहीं है भाई। लिअन्न अल-वुकूअ इंदा शर्ती, इसलिए क्योंकि जजा का वाक़े होना यानी तलाक का वाक़े होना इंदा शर्ती, वो तो शर्त के वक्त होगा। अंति तालिकुन तो किस वक्त पाया जाएगा, जब शर्त पाई जाएगी। और शर्त क्या थी, जब मैं तुझसे निकाह कर लूंगा, और जब निकाह करेगा तो ये तो तलाकों का मालिक बन गया, लिहाजा उस वक्त तो तलाक वाक़े हो जाएगी। फिलहाल मालिक होना जरूरी नहीं है, बल्कि जब शर्त पाई जाए उस वक्त मालिक होना जरूरी है भाई, और उस वक्त तो ये मालिक होगा भाई। तो कहते हैं फला युश्तरतुल सिहतिहि क़ियामुल मिल्क फिलहाल, लिहाजा इस तालीक के सही होने के लिए यह शर्त नहीं होगी कि फिलहाल मिल्कियत कायम हो यानी मौजूद हो। लिअन्न अल-वुकूअ इंदा शर्ती, इसलिए क्योंकि इस तलाक का वाक़े होना इंदा शर्ती शर्त के वक्त होगा यानी जिस वक्त शर्त पाई जाएगी। वल मिल्क मुतयक्कनुन बिही इंदहु, और मिल्कियत तो यकीनी है इंदहु जिस वक्त शर्त पाई जाएगी। जब शर्त पाई जाएगी, शर्त क्या थी, इन तजवज तो की, अगर मैंने तुझसे निकाह किया और जब निकाह करेगा उस वक्त तो मिल्कियत का पाया जाना यकीनी है भाई। तो कहते हैं वल मिल्क मुतयक्कनुन बिही इंदहु, और मिल्कियत का पाया जाना तो यकीनी है इंदहु इंदा शर्ती जिस वक्त शर्त पाई जाए। वकब्ल ज़ालिका असरुहुल मनउ, और उससे पहले तो इस तालीक का जो असर है अल मनउ यानी मना करना वो मौजूद है भाई। देखो मैंने आपको बतलाया कि यह कसम इंसान किस लिए खाता है, किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए। इसी तरह तालीक भी किस लिए की जाती है, किसी काम पर उभारने के लिए या किसी काम से रोकने के लिए। लिहाजा अगर एक शख्स एक अजनबिया औरत को कहता है अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो यहां तो निकाह ही नहीं है, यहां तो यह शख्स तलाक का मालिक ही नहीं है। लिहाजा मुझे बताइए क्या ये तालीक उस औरत को उस घर में जाने से रोकने का सबब बनेगी? नहीं, वो बेफिक्र होकर उस घर में जाएगी क्योंकि उसको पता है ये शख्स मेरी तलाक का मालिक ही नहीं है, ये तो एक अजनबी आदमी है। तो तालीक किस लिए की जाती है, किसी काम पर उभारने के लिए और या किसी काम से रोकने के लिए। और ये असर इस वक्त भी यहां मौजूद है। अजनबिया से कहे इन दखलती दारफानती तालिकुन, वहां तो मना मौजूद नहीं, लेकिन यहां पर तो यह मना मौजूद है। इस शख्स ने क्या कहा है, इन तजवश तो किफ अंति तालिकुन, तो यहां वो मना मौजूद है, उसने ये तालीक की है अपने आप को इस काम से रोकने के लिए, और मना मौजूद है। यह शख्स भी इस औरत से निकाह से इज्तनाब करेगा अब, इसलिए क्योंकि इसको पता है मैं निकाह करूंगा तो तलाक वाकई हो जाएगी। तो देखो ये मना तो मौजूद है, और ये मना किसके साथ कायम है, ये कसम खाने वाले के साथ, ये कसम, ये तालीक जो उसने की इन तजवज तो किफानती तालिकुन, ये कसम इस शख्स को रोक रही है कि वो इस औरत से निकाह न करे। तो जजा अंति तालिकुन कब वाके होगा, जब निकाह करेगा। तो लिहाजा जजा तो शर्त के वक्त पाई जाएगी, लेकिन फिलहाल इस तालीक का असर क्या है, ये इस शख्स को रोकेगी, मना करेगी इस औरत से निकाह से भाई, कि अगर निकाह कर भी लोगे तो फौरन तलाक वाकई हो जाएगी। तो कहते हैं अफिल हाल असर चाहिए था कि तालीक मना का या उभारने का बाइस बने, और यहां ये मना का बाइस बन रही है। ये शख्स इस औरत के साथ निकाह करने से अपने आप को बचाएगा और उसे इज्तनाब करेगा। तो कहते हैं वकब्ल ज़ालिका असरुहुल मनउ, और इससे पहले तो इस तालीक का जो असर है वो मौजूद है, और वो क्या है, अल मनउ मना करना यानी रोकना। तो फिलहाल तो रोकना मौजूद है, और जजा वो तो जिस वक्त शर्त पाई जाएगी उस वक्त जजा वाके होगी यानी तलाक वाके होगी भाई। तो कहते हैं वकब्ल ज़ालिका असरुहुल मनउ, और उससे पहले तो इस तालीक का जो असर यानी कि मना करना जो है वो पाया जा रहा है। वह कायम बिल मुतसर्रिफी, और ये असर जो है कायम है बिल मुतसर्रिफी, ये जो तसर्रुफ करने वाला है, ये शख्स जिसने तसर्रुफ यमीन किया है, जिसने कसम खाई है, जिसने तालीक की है, इसके साथ ये असर कायम है, ये इस औरत के साथ निकाह नहीं करेगा, ये उससे मना होगा, रुकेगा भाई। वल हदीस महमूलुन अला नफी तंजीज, अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने हदीस जिक्र फरमाई थी कि ला तलाक कबल निकाह, निकाह से पहले तलाक ही नहीं है, तो उसका भी जवाब दे रहे हैं। कहते हैं वल हदीस महमूल अला नफ़ी तंजीजी, कि ये हदीस जो है नफ़ी तंजीज पर महमूल है। मैंने आपको बतलाया एक है तंजीज और एक है तालीक। तंजीज का माना है एक चीज को पूरा कर देना, यानी उसी वक्त तलाक दे देना, उसी वक्त तलाक दे देना। जैसे खावंद अपनी बीबी से कहे अंति तालिकुन, तो देखो अंति तालिकुन कहते ही फौरन तलाक हो गई, यह है तंजीज। और अगर खावंद यूं कहे अंति तालिकुन इन दखलती दारा, तुझे तलाक है अगर तू उस घर में गई, तो अब यह तालीक है, फिलहाल तलाक वाकई नहीं बल्कि मुअल्लक है। जब उस घर में वो औरत जाएगी तो उसको तलाक हो जाएगी। तो तंजीज का क्या माना है? फौरी तौर पर तलाक देना। तो जवाब दे रहे हैं कि वल हदीस महमूल अला नफी तंजीजी, कि यह हदीस महमूल है तंजीज की नफी पर। किस पर? यानी जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला तलाक कबल निकाह, कि निकाह से पहले तलाक नहीं है, यानी निकाह से पहले कोई तंजीज नहीं कर सकता, तलाक को वाकई नहीं कर सकता। एक अजनबी औरत है, उसे एक शख्स का निकाह नहीं हुआ और उसको कहता है अंति तालिकुन, तुझे तलाक है, तो ये तो निकाह से पहले क्या कर रहा है? तंजीज कर रहा है, तलाक वाके कर रहा है। लिहाजा इस सूरत के अंदर ये तलाक लग चली जाएगी, क्योंकि हदीस में क्या आ गया ला तलाक कबल निकाह, निकाह से पहले तलाक नहीं हो सकती। या किसी गैर की बीवी से एक आदमी कहता है अंति तालिकुन, तुझे तलाक है, भाई भाई आपका इसे निकाह ही नहीं है, ये तो गैर की मनकूहा है, तो आप तलाक कैसे देते हो? तो लिहाजा इस हदीस से मुराद तंजीज की नफी है, कि निकाह से पहले तंजीज तलाक नहीं हो सकती, यानी उसी वक्त तलाक का वाक़े करना नहीं हो सकता। बाकी तालीक तलाक, तलाक को मुअल्लक करना, तो उसका तो इस हदीस में जिक्र ही नहीं है भाई, उसका तो इस हदीस में जिक्र नहीं है। तो कहते हैं वल हदीस महमूल अला नफी तंजीजी, और ये हदीस जो है ये महमूल है तंजीज की नफी पर, यानी से तंजीज की नफी मुराद है। वल हमलु मासूर अनिस सलफी, फिर आगे साहिब हिदाया फरमा रहे हैं कि और ये जो हमने हदीस को नफी तंजीज पर महमूल किया है, ये कोई हमारी अपनी राय नहीं है, असलाफ से यानी किबार फुकहा और मुहद्दिसीन से भी यही मनकूल है, हमारे असलाफ से भी यही मनकूल है। कहते हैं वल हमलु मासूर अनि सलफी, मासूर बैसा के साथ इसका मासूर यानी मनकूल, वल हमलु मासूर अनि सलफी, और ये हमल करना यानी इस हदीस को नफी तंजीज पर महमूल करना मासूर अनि सलफी, ये मनकूल है असलाफ से। सलफ कहते हैं गुजरे हुए लोग, गुजरे हुए लोग, या इसी तरह इल्म और फजल में जो बढ़े हुए लोग हैं वो मुराद हैं। तो ये सलफ असलाफ से, वो असलाफ जो इल्म और फजल में बढ़े हुए थे, खूब इल्म और फजल वाले थे, उनसे भी यही हमल नकल किया गया है। कश्शाबी व ज़ुहरी रहिमहुम अल्लाह तआला वगैरहिमा, जैसे कि इमाम शाबी है, शाबी शीन के फतहा के साथ है और ज़ुहरी ज़ा के ज़म्मा के साथ है। याद रखो इमाम शाबी और इमाम ज़ुहरी भाई ये जलीलुल कदर ताबईन गुजरे हैं और दोनों फुकहा हैं भाई, अजीम फुकहा हैं और अजीम मुहद्दिसीन में से हैं भाई। तो कहते हैं कि ये मनकूल है कश्शाबी व ज़ुहरी, जैसे कि इमाम शाबी और इमाम ज़ुहरी हैं, उनसे भी यही हमल मनकूल है, वो भी इस हदीस को नफ़ी तंजीज पर ही महमूल करते हैं। और याद रखो ये इमाम शाबी रहिमहुल्लाह, इनकी पैदाइश हुई है हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के दौरे खिलाफत में, और इनका इंतकाल हुआ है 104 हिजरी में, 104 हिजरी में, और ये ताबईन में से हैं भाई। व ज़ुहरी और इमाम ज़ुहरी जो हैं, इनका इंतकाल हुआ है 123 हिजरी में, 123 हिजरी में इंतकाल हुआ है, और ये भी ताबईन में से हैं भाई। तो ये दोनों जलीलुल कदर ताबईन हैं, फुकहा में से हैं और मुहद्दिसीन में से हैं भाई। तो कहते हैं वल हमलु मासूरुन अनिस सलफी का शाबी ये व ज़ुहरी ये वगैरहिमा, और ये हमल मनकूल है असलाफ से भी, जैसे इमाम शाबी हैं और इमाम ज़ुहरी हैं वगैरहिमा, और इनके अलावा जो हैं आगे देखिए, वह इदा अजाफहु इला शर्तियों वकाकी बस शर्ती मिसलु अयकूल इम्रअति ही इन दखलती दारफ अंत तालिकुन। वह इदा अजाफहु इला शर्तिन, और जब खावन तलाक की निस्बत करे इला शर्तिन शर्त की तरफ, वका अकीब शर्ती तो वो तलाक वाके हो जाएगी अकीब शर्ती शर्त के बाद। भाई ऊपर भी यही मसला जिक्र था कि जब तलाक की निस्बत करें निकाह की तरफ तो वह निकाह के बाद वाके होगी, तो ऊपर भी शर्त जिक्र थी यहां भी, लेकिन वहां बिलखसूस निकाह के बारे में जिक्र था। शर्त क्या थी? निकाह, अगर मैं तुझसे निकाह करूं। और उसमें हमारा और इमाम शाफई रहमहुल्ला का इख्तिलाफ था, जबकि यह सूरत इत्तेफाकी है। भाई वहां इमाम शाफी रहमहुल्ला इख्तिलाफ फरमाते थे कि वहां वो शख्स तलाक का मालिक ही नहीं है, जब तलाक का मालिक ही नहीं है तो इन तजवश तो किफ अंति तालिकुन, तो अंति तालिकुन ने फिलहाल वाके होना है, ईका फिलहाल पाया जाएगा और वुकूअ शर्त के वक्त, लेकिन फिलहाल ईका हो ही नहीं सकता था क्योंकि वह औरत उसकी बीवी ही नहीं है। जबकि यहां पर तो खावंद अपनी बीवी से कह रहा है, तो यहां फिलहाल खावंद मालिक है, लिहाजा तालिक सही है। खावंद बीवी से कहता है इन दखलती दार अफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो जिस वक्त शर्त पाई जाएगी वो घर के अंदर जाएगी तो फौरन तलाक हो जाएगी। तो फर्क समझ में आया, पहला मसला उसमें निकाह के साथ तालिक थी, और निकाह के साथ तालीक थी वहां हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इख्तिलाफ था, और यहां निकाह के अलावा बाकी शर्तें मुराद हैं, और इसमें हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इत्तेफाक है। भाई तो कहते हैं वह इदा अजाफहु इला शर्तिन, और जब खामंद ने तलाक की निस्बत कर दी शर्त की तरफ यानी निकाह के अलावा किसी और शर्त की तरफ, वका अकीब शर्ती तो यह तलाक वाके हो जाएगी शर्त के बाद, मिसलु अन यकूल लिमरअति ही मिसाल के तौर पर खावंद अपनी बीवी से यूं कहता है इन दखलती दारफ अंति तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, वहाजा बिल इतफाकी और यह बिल इतफाक है, यानी इस सूरत में तलाक का वाके होना बिल इतफाक है, इसमें हमारा और इमाम शाफी रहमतुल्लाह का इतफाक है। कहते हैं वहादा बिल इतफाकी और यह बिल इतफाक है, लिअन्न अल मिल्क कायम फिलहाल, इसलिए क्योंकि फिलहाल मिल्कियत कायम है, फिलहाल खावंद है, ये तलाकों का मालिक है, तो फिलहाल मिल्कियत कायम है, व जाहिर बकाउहू और जाहिर भी यही है कि यह मिल्कियत बाकी रहेगी, इला वक्ती वजूदी शर्ती शर्त के पाए जाने के वक्त तक, ये मिल्कियत बाकी रहेगी शर्त के पाए जाने के वक्त तक। भाई देखो यहां दरअसल एक शुबा आता है, शुबा ये कि फिलहाल तो बेशक मालिक है लेकिन हो सकता है बाद में ये निकाह खत्म हो जाए, खावंद पहले से ही तलाक दे दे, तो जिस वक्त शर्त पाई जाएगी औरत उस घर में दाखिल होगी उस वक्त तो वो इसकी बीवी ही नहीं है, पहले ही खावंद तलाक दे चुका है, तो इहतमाल है, हो सकता है जिस वक्त शर्त पाई जाए उस वक्त औरत इसकी बीवी ही ना हो। तो जवाब देंगे साहिबे हिदाया कि नहीं भाई एक इहतमाल है और इसकी कोई दलील कोई भी नहीं है, बगैर दलील के एक इहतमाल है वैसे, लिहाजा इसका कोई एतबार नहीं, कोई ऐसी बात हो जिसकी कोई दलील मौजूद हो उसका तो एतबार किया जाता है, और वैसे ही एक एहतमाल हो उसका कोई एतबार नहीं, तो एहतमाल तो है, हो सकता है ये उस वक्त बीवी ना हो, लेकिन इस एहतमाल की तरफ तवज्जो नहीं की जाएगी, फिलहाल निकाह है तो जाहिर यही है कि जिस वक्त शर्त पाई जाएगी उस वक्त भी निकाह होगा, वो खावन तलाकों का मालिक होगा। भाई जाहिर यही है भाई, और बिलखसूस ये तो निकाह का मामला है, निकाह तो चंद दिन के लिए नहीं किया जाता कि आप कहें उस वक्त निकाह नहीं होगा, निकाह तो सारी उम्र के लिए किया जाता है, लिहाजा गालिब गुमान यही है कि उस वक्त निकाह मौजूद होगा। भाई तो कहते हैं लिअन्न अल मिल्क कायमुन फिलहाल, इसलिए क्योंकि खावंद की मिल्क निकाह फिलहाल भी मौजूद है, वह जाहिर बकाउहू इला वक्ती वजूदी शर्ती और जाहिर यही है कि यह मिल्कियत बाकी रहेगी, इला वक्ती वजूदी शर्ती जिस वक्त शर्त पाई जाएगी, फयसिहु यमीनन औ ईकान, तो लिहाजा ये तालीक सही है यमीनन यमीन होने के एतबार से, औ ईकान या ईका होने के एतबार से, यमीनन ये अहनाफ के एतबार से कहा, लिहाजा ये तालीक सही है यमीन होने के एतबार से, यानी हमारे नजदीक भी ये यमीन है, ये तालिक सही है। किस तरह, क्यों यमीन है? क्योंकि हमारे नजदीक तो मालिक होना भी जरूरी नहीं होता, मालिक होना भी जरूरी नहीं है। हां, अगर मालिक नहीं है फिर मिल्कियत की तरफ निस्बत करना पड़ेगी, लेकिन यहां पर तो खैर मालिक है, जब मालिक है तो मिल्कियत की तरफ निस्बत की जरूरत भी नहीं है। बस मुतलकन खावन ने कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, लिहाजा खावन उसमें अहलियत है, वो आकिल बालिग है और तालीक या कसम उसके जिम्मा में रह सकती है। तो खावन ने तालीक की है और तालीक इसके जिम्मे में रह सकती है क्योंकि उसमें अहलियत है, वो आकिल बालिग है, और नीज उसने शर्त को भी जिक्र किया है और जजा को भी जिक्र किया है, और शर्त और जजा को कोई ऐसा शख्स जिक्र करे जिसमें अहलियत है तो यह तालीक सही हो जाती है। तो हमारे नजदीक यह तालीक सही हो गई, हमारे नजदीक यह तालीक सही हो गई, यमीन सही हो गई। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक तो जिस वक्त तालीक करे उसी वक्त मालिक होना शर्त है, इसलिए क्योंकि खावन कह रहे हैं इन दखलती दारफ अंति तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। हमारे नजदीक तो ये अंति तालिकुन ये मुअल्लक है, ये सबब बनेगा किस वक्त, जिस वक्त शर्त पाई जाएगी उस वक्त अंति तालिकुन आएगा और औरत को तलाक हो जाएगी। तो ये जो अंति तालिकुन है ये हमारे नजदीक इस वक्त तलाक का सबब ही नहीं बन रहा, ये तलाक का सबब ही शर्त जब पाई जाएगी उस वक्त बनेगा, जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक ये फिलहाल सबब बनता है, यानी इस वक्त ये तलाक का सबब बन रहा है, इससे ईकाए तलाक हो रहा है, लेकिन आगे शर्त जो है वो वुकूअ को नहीं आने दे रही। तो ईका पाया जा रहा है और वुकूअ कब होगा, जब औरत घर के अंदर जाएगी। तो मालूम हुआ फिलहाल जब ईका हो रहा है तो फिलहाल खावंद का मालिक होना जरूरी है तलाकों का, और फिलहाल तो खावंद मालिक है, ये अपनी बीवी से कलाम कर रहा है, किसी अजनबिया को नहीं कह रहा भाई। तो जब फिलहाल मालिक है तो ईका के एतबार से भी यह तालीक सही है, तो लिहाजा उनके नजदीक भी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक भी तालीक सही हो गई। ये माना है फयसिहु, तो ये तालीक सही है यमीनन, बेतबार यमीन होने के भी हमारे नजदीक, और ईकान या वाकई करने के एतबार से भी सही है, यानी इमाम शाफी रहमतुल्लाह के नजदीक, दोनों के नजदीक ये तालीक सही हो जाएगी और वो औरत जब उस घर में जाएगी तो उसको तलाक वाकई हो जाएगी। वला तसिहु इजाफतु तलाकी इल्ला अन यकून अलहालिफु मालिकन औ युज़ीफहु इला मिल्किन। मैंने आपको बतलाया भाई इंदल अहनाफ तालीक के लिए क्या जरूरी, कि एक तो उस शख्स में अहलियत हो और या वो मालिक होना चाहिए या मिल्कियत की तरफ निस्बत करे भाई, वही बयान कर रहे हैं। वला तसिहु इजाफतु तलाकी, और तलाक की निस्बत करना शर्त की तरफ सही नहीं है, इल्ला अन यकून अलहालिफु मालिकन, मगर यह कि वो हालिफ जो है वो जो कसम खाने वाला है यानी तालीक करने वाला जो है मालिकन, वो उस चीज का मालिक हो। वो जो जजा में जिक्र कर रहा है फांति तालिकुन, इसको क्या होना चाहिए, इसका तलाकों का फिलहाल मालिक होना चाहिए, या मिल्कियत की तरफ इसकी निस्बत कर रहा हो, इन तजवजतु की, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है। तो कहते हैं वला तसिहु इजाफतु तलाकी, और तलाक की निस्बत सही नहीं है शर्त की तरफ, इल्ला अन यकून अलहालिफु मालिकन, मगर यह कि कसम खाने वाला मालिक हो, और युज़ीफहु इला मिल्किन, या वो इसकी निस्बत करे अपनी मिल्कियत की तरफ, लिअन्न अलजज़ा अला बुद्द अन यकूना ज़ाहिरन लियकूना मुखीफन फयतहक्कक़ मअना अलयमीन व हुवल क़ुव्वा। इस जगह को अच्छी तरह समझ लें भाई, ये जरा मुश्किल जगह है भाई, لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا, इसलिए क्योंकि जजा जो है ला बुद्ध जरूरी है अन यकून ज़ाहिरन, कि वो जाहिर हो, जजा जाहिर हो, क्या माना, यानी उसके होने का यकीन हो, क्या हो, जजा जाहिर है यानी उसके होने का यकीन है, गालिबुल वजूद है कि गालिब यही है कि यह पाई जाएगी। मसलन खावंद ने बीवी से क्या कहा, अंति तालिकुन इन दखलती दारा, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। देखो यहां तो औरत जैसे ही घर में जाएगी फौरन तलाक हो जाएगी, लेकिन बाज औकात जजा आए या ना आए लेकिन उसके होने का सिर्फ यकीन हो तो भी वो काफी है। मसलन बाप अपने बेटे से कहता है अगर ये काम तुमने किया तो मैं तुम्हारी सख्त पिटाई करूंगा, अगर तुमने ये काम किया तो मैं तुम्हारी सख्त पिटाई करूंगा। तो अब बेटा उस काम से रुकेगा, अब वो काम नहीं करेगा, क्योंकि ये तालीक उसको डरा रही है, उसको खौफ है अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे अब्बा जान मेरी सख्त पिटाई करेंगे। अगरचे ये बात यकीनी नहीं है, हो सकता है बाप पिटाई करे, हो सकता है वो पिटाई ना भी करे, माफ भी कर दे, लेकिन ये बच्चा उस काम के करने से रुकेगा क्योंकि उसको यकीन है कि ऐसा होगा, अगर मैंने किया तो मेरी पिटाई हो जाएगी। तो देखो, जब शर्त पाई जाए जजा का होना जरूरी नहीं होता, बाद सूरतों में तो जरूरी होता है, जैसे खावन ने बीवी से कहा इन दखलती दार अपानती तालिकुन, तो लिहाजा जजा ऐसी होनी चाहिए जो जाहिर हो। क्या माना जाहिर हो? हां, ये लफ्ज दोहराए जुबान से, उसके होने का यकीन हो, यानी वो गालिबुल वजूद हो कि ऐसा हो जाएगा। जब उसके होने का यकीन होगा तो अब जो है वो जजा उसको डरा रही है, वो शख्स उस काम के करने से रुकेगा, बीवी उस घर में जाने से रुकेगी कि मैं जाऊंगी तो मुझे तलाक हो जाएगी। तो देखो, ये जजा ने उसको डरा दिया है, खौफ में मुबतला कर दिया है। तो जजा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके होने का यकीन हो, ताकि वो दूसरे उस शख्स को खौफ में मुबतला करे, और उस खौफ की वजह से वो इस काम के करने से अगर रोका गया है तो वो उससे अपने आप को बचाए। भाई तो कहते हैं लि अनल जजा अलाबुद्दा अन यकूना जाहिरन, इसलिए क्योंकि जजा जो है जरूरी है कि वो जाहिर हो। जाहिर हो क्या माना? कि उसके होने का यकीन हो, या यूं कहो कि जजा जाहिर हो, उस शख्स को खौफ हो कि ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। लियकून मुखीफन, ताकि जजा उसको डराने वाली हो, उस शर्त के करने से डराने वाली हो। फयतहक्क मानल यमीनी, तो यमीन का माना पाया जाएगा। वहुवल कुव्वतु, और वो कुव्वत है। याद रखो, अरबी जुबान में यमीन का माना है ताकत और कुव्वत के, यमीन का माना है ताकत और कुव्वत के। तो जब जजा का खौफ होगा दूसरे के दिल में, तो फिर ही वो शर्त के करने से रुकेगा। अगर उसके दिल में जजा का खौफ नहीं है तो वो तो शर्त के करने से नहीं रुकेगा। जैसे एक अजनबिया से एक आदमी कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, वो अजनबिया उसी वक्त चली जाएगी कि भाई तुम कौन होते हो मुझे तलाक देने वाले, मेरा तुम्हारा तो निकाह ही नहीं है। तो देखो, इस जजा ने उसको किसी खौफ में मुबतला नहीं किया, तो ये यमीन नहीं है, इसका कोई एतबार नहीं है। यमीन तो वो होगी जो दूसरे को खौफजदा करे, यानी उसमें कुव्वत हो। यमीन का अरबी जुबान में क्या माना है? कुव्वत और ताकत के। तो यह लिहाजा यमीन में कुव्वत और ताकत होनी चाहिए जो दूसरे को एक फेल से रोक दे। बात समझ में आ रही है? तो यह माना है। फिर तर्जमा देख लीजिए, लिअन्न अलजज़ा अला बुद्दा अन यकूना ज़ाहिरन, इसलिए क्योंकि जजा जो है वो जरूरी है कि वो जाहिर होनी चाहिए, कि उसके होने का यकीन हो, यानी वो गालिबुल वजूद हो। लियकून मुखीफन, ताकि वो जजा उस शख्स को डरा दे। अखाफ युखीफू का क्या माना? डराना, भाई किसी दूसरे को डराना। लियकून मुखीफन, ताकि ये जजा उसको डराने वाली हो जाए। फयतहक्क मानल यमीनी, तो यमीन का माना पाया जाएगा। वहुवल कुव्वतु, और वो कुव्वत है। वह जुहूर भी अहदी हाजैनी, और जजा का जुहूर जो है वो तो भी अहदी हाजैनी, इन दो चीजों में से किसी एक के जरिए होगा, कि या वो मालिक हो या मिल्कियत की तरफ निस्बत करे। जजा जाहिर हो, क्या माना जजा जाहिर हो? उसके होने का यकीन हो कि ऐसा हो सकता है। तो ये उसी वक्त होगा जब वो शख्स मालिक हो। अगर खावन अपनी बीवी से कहता है इन दखलती दार अफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, अब ये खावन तलाक का मालिक है, तो अब ये जजा जाहिर है, यानी इसके होने का यकीन है। जब हो जाएगी जजा वाकई हो जाएगी तो वो अपने आप को बचाएगी उस घर में जाने से। या मिल्कियत की तरफ निस्बत करे कोई शख्स, इन तजवज तो किफानती तालिकुन, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है। तो लिहाजा इस सूरत के अंदर भी अगरचे ये शख्स उस औरत की तलाकों का मालिक नहीं, लेकिन मिल्कियत के सबब की तरफ निस्बत कर दी। याद रखो, आगे साहिब हिदायत आपको बतलाएंगे कि चाहे मिल्कियत की तरफ निस्बत करें, चाहे मिल्कियत के सबब की तरफ निस्बत करें, एक ही बात है। एक है मिल्कियत, एक है सबब मिल्कियत। सबब मिल्कियत, जैसे आप कोई चीज खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, या कोई चीज आपको कोई तोहफे में देता है तो आप उसके मालिक बन जाते हैं, तवज्जो है। और इसी तरह जब आप औरत से निकाह करते हैं तो आप उसकी तलाकों के मालिक बन जाते हैं। तो निकाह सबब है मिल्कियत का, निकाह सबब है मिल्कियत का, इसकी वजह से खावन तलाकों का मालिक बन जाता है। और इसी तरह खरीदना यह सबब है मिल्कियत का, कोई बांदी खरीदेगा तो वो उसका मालिक बन जाएगा। तो अगर कोई शख्स यूं कहता है, बाकायदा मिल्कियत की तरफ निस्बत करे, बांदी से कहता है इन मलक तू की फंत हुर्रा, इन मलक तू की अगर मैं तेरा मालिक हुआ, अगर मैं तेरा मालिक बना, फंत हुर्रा तुन, तो तू आजाद है। देखो मिल्कियत की तरफ निस्बत कर रहा है, और कभी मिल्कियत की तरफ निस्बत नहीं करता, सबब मिल्कियत की तरफ निस्बत करता है। मसलन कहता है इनिश्तराई तू की फंत हुर्रतुन, अगर मैंने तुझे खरीदा तो तू आजाद है। अब खरीदना ये तो मिल्कियत नहीं है, हां ये मिल्कियत का सबब है भाई। तो मिल्कियत को जिक्र करें या सबब मिल्कियत को, एक ही बात है, यानी सबब मिल्कियत भी मिल्कियत ही के दर्जे में है, क्योंकि उससे मिल्कियत आ जाती है भाई। बात चल रही है वह जुहूर भी अहदी हाजैनी, और ये जजा का जाहिर होना इन दो चीजों में से किसी एक के जरिए होगा, जजा के होने का यकीन हो, यह इन दो चीजों में से किसी एक में होगा, या तो खावन क्या हो तलाक का मालिक हो, या मिल्कियत की तरफ निस्बत कर दे। इन तज़व्वजतु की फ़ान्ती तालिकुन, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है। तो देखो यहां वो सबब मिल की तरफ तलाक की निस्बत कर रहा है, और जब निकाह करेगा फिर तो ये मालिक बन जाएगा, और उस वक्त तो तलाक का वाक होना यकीनी है भाई। तो कहते हैं वह जुहूर भी अहदी हाजैनी, और जजा का जाहिर होना इन दो चीजों में से किसी एक के जरिए होगा, कि मालिक हो या मिल्कियत की तरफ निस्बत करे। कहते हैं वल इजाफतु इला सबबिल मिल्की, और सबब मिल्कियत की तरफ निस्बत करना, बिमंजिलतिल इजाफति इलैहि, ये इसी दर्जे में है कि मिल्कियत की तरफ निस्बत की है, लिअन्नहु जाहिरुन इंदा सबबिही, इसलिए क्योंकि जजा जो है वो जाहिर होगी, जजा लिअन्नहु हाजमी जजा को लौटाएं, लिअन्नहु इसलिए क्योंकि जजा जो है वो जाहिर होगी, इंद सबब ही ऐ सबब मिल की, जब सबब मिल्क पाया जाएगा तो जजा जाहिर होगी, जब सबब मिल्क पाया जाएगा यानी निकाह करेगा तो उस वक्त भी तलाक के वाके होने का यकीन है, तो उस वक्त जजा जाहिर होगी यानी उसके होने का यकीन होगा। यह माना है लिअन्नहु ज़ाहिरुन इंदा सबबिही, इसलिए क्योंकि जजा जो है वो जाहिर होगी यानी उसके होने का यकीन होगा, इंदा सबबिही जब मिल्कियत का सबब पाया जाए। आगे देखिए फइन क़ाल अली अजनबियतिन, अगर किसी शख्स ने अजनबी औरत से कहा इन दखलती दार फअंती तालिकुन, कि अगर तू उस घर में दाखिल हुई तो तुझे तलाक है, सुम्म तज़व्वजहा, फिर उस शख्स ने उससे निकाह कर लिया, फदखलती दार लम तुतल्लक, तो वो औरत उस घर में चली गई तो तलाक नहीं होगी। अजनबिया से एक आदमी ने कहा था इन दखलती दार फअंती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, ना तो ये इस वक्त तलाकों का मालिक है यह आदमी अजनबिया से कह रहा है, और न ही इसने अपनी मिल्कियत की तरफ निस्बत की है, लिहाजा यह तालिक सही नहीं है भाई। तो कहते हैं सुम्म तज़व्वजहा, फिर उस शख्स ने उसे निकाह कर लिया, फदखलती दारा, अब निकाह के बाद वो औरत उस घर में गई है, लम तुतल्लक, तलाक वाके नहीं होगी, क्योंकि वो तालिक सही नहीं थी। तालिक के सही होने के लिए क्या जरूरी है कि वो शख्स उसी वक्त तलाकों का मालिक हो या अपनी मिल्कियत की तरफ निस्बत करे, और वहां ऐसा नहीं था। तो कहते हैं लम तुतल्लक, औरत को तलाक नहीं होगी, लि अन्नल हालिफ लैसा बि मालिकिन, इसलिए क्योंकि कसम उठाने वाला ना तो मालिक है, वमा अज़ाफहु इलल मिल्क औ सबबिही, और ना ही उसने तलाक की निस्बत की है मिल्कियत की तरफ, औ सबबिही या सबब मिल्कियत की तरफ, वला बुद्दा मिन वाहिदिन मिनहुमा, और इन दोनों में से तो एक का होना जरूरी है, मिल्कियत या निस्बत इलल मिल्कियत भाई। व अल्फाज उस शर्त, और शर्त के जो अल्फाज हैं, इन व ईदा व ईदा मा व कुल्लुन व कुल्लमा व मता मा, ये अल्फाज हैं शर्त के, इन ईजा ईजा मा कुल्लुन कुल्लमा मता और मता मा, ये क्या है, शर्त के अल्फाज हैं। तो कहते हैं वह अल्फाज उ शर्त इन व ईजा व ईजा मा व कुल्लुन व कुल्ल मा व मता मा ले अन्न शर्त मुश्तकुम मिनल अलामती, इसलिए क्योंकि शर्त का लफ्ज जो है मुश्तकुम मिनल अलामती, ये मुश्तक है अलामत से। शर्त का लफ्ज किससे मुश्तक है? अलामत से। भाई शर्त का लफ्ज अलामत से कैसे मुश्तक है? शर्त का मादा तो है शीन रा तो, और अलामत का मादा क्या है? आइन लाम मीम, यानी इलम उसका मादा है। तो दोनों का मादा ही अलग है, तो दोनों का मादा ही बिल्कुल अलग अलग है। तो ये शर्त अलामत से कैसे मुश्तक है? तो याद रखो, याद रखो, अलामत से लफ्ज अलामत मुराद नहीं है, बल्कि अलामत से मुराद लफ्ज शरत है। क्या मुराद है? शरत। भाई शरत, शरत रा के फतहा के साथ, याद रखो, एक है शर्त रा के सुकून के साथ, ये जो शर्त और जजा है इस शर्त को, ये शर्त है, और एक है शरत रा के फतहा के साथ, और उसका माना है अलामत। शरत का क्या माना? अलामत। चुनांचे आप अरबी किताबों के अंदर आप देखेंगे उलामा क्यामत की अलामतें जिक्र फरमाते हैं, तो वहां वो लिखते हैं अशरात साअत, अशरात साअती, क्यामत की अलामतें, जो अहादीस में क्यामत की बड़ी बड़ी निशानियां जिक्र हुई हैं भाई, तो वो जिक्र फरमाते हैं, तो वहां अशरात का लफ्ज जिक्र करते हैं, और ये अशरात जमा है शरत की, और शरत का माना है अलामत, और ये जो लफ्ज है ये शर्त रा के सुकून के साथ, इसकी जमा तो शुरूत आती है भाई जी। इसकी जमा शुरूत आती है, अशरात नहीं। तो साहिबे हिदाया बतलाना ये चाहते हैं कि ये शर्त का लफ्ज शरत से मुश्तक है जी। शर्त का लफ्ज शरत से मुश्तक है। अब देखो बात वाजे हो गई, शर्त का मादा भी शीन रा पा और शरत का मादा भी शीन रा पा है भाई। तो कहते हैं अन्न शर्त मुश्तक मिनल अलामती, इसलिए क्योंकि शर्त का लफ्ज मुश्तक है अलामत से, यानी शरत के लफ्ज से। वहादिहिल अल्फाज मिम्मा यलीहा अफालुन, और ये जो अल्फाज हैं इन इजा इजामा वगैरह, ये जो अल्फाज हैं मिम्मा यलीहा अफालुन, ये उन अल्फाज में से हैं यलीहा अफालुन, कि इनके साथ अफाल मिले होते हैं। वलिया यली का क्या माना? साथ मिलना। यलीहा अफाल, इनके साथ अफाल मिले होते हैं। याद रखो, याद रखो, शर्त हमेशा फेल होगा, शर्त हमेशा फेल होगा। वजह यह कि आप एक चीज को दूसरी चीज से मुअल्लक करना चाहते हैं, एक चीज को दूसरी चीज से मुअल्लक करना चाहते हैं, तो जो मुअल्लक किया जाता है वो किसी जात के साथ मुअल्लक नहीं किया जाता, बल्कि फेल के साथ मुअल्लक किया जाता है, कि अगर तूने ऐसा किया तो तुझे तलाक है। देखो फेल के साथ मुअल्लक कर रहे हैं जी। तो ये जो अल्फाज हैं इनके साथ भी हमेशा क्या आते हैं? अफ़ाल आते हैं। तो शर्त का फेल होना जरूरी है भाई। किसी चीज को मुअल्लक किससे किया जाता है? जात से नहीं, बल्कि फेल से मुअल्लक किया जाता है भाई। वजह यह कि तालीक जमाने में होती है, तालीक यानी मुस्तकबिल के एतबार से, अगर तू ऐसा करेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो तालीक किसमें होती है? जमाने में, और जमाना फेल के अंदर होता है। फेल का मफहूम मुरक्कब है माने मस्तरी से, और जमाना और निस्बत इलल फाइल, तो फेल के अंदर जमाना होता है और तालीक भी जमाने में होती है, इसलिए तालीक हमेशा फेल के साथ होगी, क्योंकि फेल के अंदर जमाना होता है। बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वहादिहिल अल्फाज मिम्मा यलीहा अफालुन, और ये अल्फाज उन अल्फाज में से हैं जिनके साथ अफाल मिले हुए होते हैं। फतकूनु अलामात इन अलल हिंसी, तो ये अफाल जो हैं अलामत होते हैं अलल हिंसी हानिस होने पर। तो फतकूनों के अंदर हिया जमीर है, फतकूनों के अंदर हिया जमीर है, या तो ये हिया जमीर राजे है, माकबल में अफाल का जिक्र आया। फतकून अलामात इन, ये अफाल अलामत होते हैं अलल हिंसी हानिस होने पर। ये अफाल अलामत होते हैं किस पर? हानिस होने पर कि ये फेल पाया गया तो हानिस हो जाओगे, जजा वाके हो जाएगी। मसलन खावन ने बीवी से कहा इन दखलती दार अफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। तो तलाक को मुअल्लक किया किस से? दुखूल दार के फेल के साथ। तो ये फेल अलामत है हानिस होने की, यानी ये फेल जब भी पाया गया दुखूल दार वाला, ये औरत जब भी उस घर में गई तो हानिस हो जाएगी, ये जजा वाके हो जाएगी भाई। तो यह अफाल किस चीज की अलामतें हैं? हानिस होने की, यानी इन अफाल का वजूद जो है हानिस होने की अलामत है। यह अफाल जब पाए जाएंगे तो यह हानिस हो जाएगी। ये जो फेल शर्त में जिक्र किया गया है, ये जब पाया जाएगा तो यह अलामत है हानिस होने की कि यह शख्स हानिस हो गया, इस पर जजा वाके हो गए। तो तकूनु की जमीर किसको लौटाई? अफाल को, इनके इन अफाल का वजूद जो है वो अलामत होती है हानिस होने की। जबकि बाज उलमा ने तकूनु की जमीर इन अल्फाज की तरफ लौटाई, हिया जमीर किसको लौटाई? ये जो अल्फाज हैं ये अल्फाज अलामत हैं हानिस होने की, ये अल्फाज हानिस होने की अलामत हैं। यानी ये अल्फाज दलालत करते हैं इस बात पर कि जो हमारे बाद फेल आ रहा है अगर ये पाया गया तो तुम हानिस हो जाओगे। ये अल्फाज किस चीज पर दलालत करते हैं? इन दखलती दार अफानती तालिकुन, ये इन दलालत कर रहा है कि अगर ये दुखूल वाला फेल पाया गया तो तुम क्या हो जाओगे? हानिस हो जाओगे। तो ये वाले अल्फाज जो हैं, ये जो शर्त वाले अल्फाज हैं, ये अलामतें हैं किस चीज की? हानिस होने की, जिस वक्त ये अफाल पाए जाएंगे। तो आप जिस तरफ भी जमीर राजे कर लें, बात एक ही है भाई, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं फतकून अलामात इन अलल हिंसी, तो इन अफाल का वजूद जो है ये अलामत है अलल हिंसी हानिस होने पर। सुम मकलिमत इन, अब इनमें से हर एक की तफसील बयान कर रहे हैं। कहते हैं सुम मकलिमत इन सिर्फ उन लि शर्त, कि कलिमा इन वो सिर्फ शर्त के लिए है जी। कलिमा इन सिर्फ शर्त के लिए है, उसमें वक्त वाला माना नहीं। जबकि ईजा या ईजामा, मता या मतामा, इनमें क्या है? इनमें वक्त वाला माना भी है। मता तकुम अकुम, जिस वक्त तू उठेगा मैं भी उठूंगा। तो मता, देखो इसमें वक्त वाला माना है। इजा तजरिब अजरिब, जब भी तुम पिटाई करोगे मैं भी पिटाई करूंगा, जब भी जिस वक्त भी, देखो इसमें भी वक्त वाला माना है। लेकिन इन जो है उसमें वक्त वाला माना नहीं है, वो महज शर्त के लिए है। जबकि मता और ईजा, इनमें वक्त वाला माना भी होगा और शर्त वाला माना भी होगा। तो कहते हैं सुम कलिमा तो इन सिर्फ उन लि शर्ती, फिर कलिमा इन सिर्फ शर्त के लिए है। ले अन्नहु लैस फीहा मानल वक्ती, इसलिए क्योंकि उसके अंदर वक्त वाला माना नहीं। तो लिहाजा ये जो इन है ये उम्मुल बाब है, ये इस बाब की असल है। हुरूफ शर्त में से, अदवात शर्त में से असल क्या है? इन, क्योंकि यह सिर्फ और सिर्फ शर्त के लिए है, इसमें और कोई माना नहीं। जबकि बाकियों के अंदर और मानी भी हैं भाई। तो कहते हैं यह सिर्फ शर्त के लिए है क्योंकि इसके अंदर वक्त वाला माना नहीं है। वमा वरा अहा मुल हकुम बिहा, और इसके अलावा जो अल्फाज हैं, यानी इनके अलावा जो अल्फाज हैं बाकी जो हमने जिक्र कर दिए, वो अल्फाज मुल हकुम बिहा, उनको इनके साथ मिलाया गया है, उनका भी यही हुक्म है, वो भी शर्त का फायदा देंगे। लेकिन असल क्या है? इन है, और बाकी मुलहक बिहा है, उसके साथ मिलाए गए हैं। तो कहते हैं वमा वरा अहा मुलहकुम बिहा, और इसके इनके अलावा और अल्फाज जो हैं वो इनके साथ मिलाए गए हैं। वकलिमत कुल्लिन लैसा शर्तन हकीकतन, अब कुल के बारे में बतला रहे हैं कि कुल्लुन का जो लफ्ज है ये हकीकत में शर्त के लिए नहीं है। कुल्लुन हकीकत में ये शर्त के लिए नहीं है। शर्त वाले अल्फाज तो हमेशा फेल पर दाखिल होते हैं, इजा के बाद फेल आना जरूरी, इजा मा मता मता मा और इन सब के बाद फेल आता है। लेकिन कुल, कुल का माना तो है सारा, तो इसके लिए मुजाफिले चाहिए भाई। क्या चीज सारी मुराद है? कुल किताबें मुराद हैं या कुल तलबा मुराद हैं या कुल इंसान मुराद हैं? तो इसके लिए मुजाफिले चाहिए भाई। कुल्लु इंसान या कुल्लु किताबिन, तो कुल के बाद तो मुजाफिले आता है, इसम आता है, फेल नहीं आता। हालांकि हालांकि अल्फाज शर्त के बाद तो फेल आया करता है, तो सवाल पैदा हुआ कि आपने कुल को कैसे अल्फाज शर्त में शुमार कर लिया, इसके बाद तो इसम आता है, फेल नहीं आता भाई। तो उसका भी जवाब देंगे साहिब हिदाया कि हां आपकी बात ठीक है, कुल जो है वो अल्फाज शर्त में से नहीं है, हकीकत में, हकीकत के एतबार से ये अल्फाज शर्त में से नहीं है, क्योंकि इसम पर दाखिल होता है, फेल पर दाखिल नहीं होता। लेकिन जिस इसम पर कुल दाखिल होता है उसके बाद फेल का आना जरूरी है। कुल खुद तो इसम पर दाखिल है, लेकिन वो इसम आगे फिर किस पर दाखिल होगा, फेल पर दाखिल होगा। तो देखो फेल आ गया, तो इस एतबार से कुल को भी किसके साथ मिला दिया गया, अल्फाज शर्त के साथ, कि वहां भी फेल आया, अगरचे कुल के फौरन बाद फेल नहीं आया बल्कि उसके मुजाफिले के बाद फेल आया है, लेकिन फेल तो आ गया भाई। तो कहते हैं वह कलिमतु कुल्लिन लैसा शर्तन हकीकतन, और कुल का जो कलिमा है ये हकीकत में शर्त नहीं है, लिअन्नमा यली हस्मुन, इसलिए क्योंकि वो लफ्ज जो इसके साथ मिला होता है इस्मुन वो तो इसम होता है, वह शर्त मा यतअल्लकु बिहिल जज़ाउ, और शर्त तो वो होती है कि जिसके साथ जजा मुतअल्लिक होती है, जिसके साथ जजा मुअल्लक होती है, वल अजजियतु तताअल्लक बिल अफआली, और जजाएं जो हैं वो तो मुअल्लक होती हैं बिल अफआली, किसके साथ, अफआल के साथ मुअल्लक होती हैं, इल्ला अन्नहु उल्हिकत बिशर्ती, मगर ये कि इस कुल को भी शर्त के साथ मिला दिया गया, लिताअल्लुक الفعل بالاسم الذي يليها, लिताअल्लुक الفعل, इसलिए क्योंकि फेल का ताल्लुक होता है بالاسم الذي يليها उस इसम के साथ जो स्कूल के साथ मिला होता है, फेल का ताल्लुक होता है उस इसम के साथ जो कुल के साथ मिला हुआ है, यानी उस इसम के बाद फेल आता है, यह माना है। इल्ला अन्नहु उल्हिकत बिशर्ती, मगर यह कि कुल को भी शर्त के साथ मिलाया गया है, लिताअल्लुक الفعلی, इस वजह से कि फेल का ताल्लुक होता है बिलिस्मि लदी यलीहा, उस इसम के साथ जो इस कुल के साथ मिला होता है, मिस्लु कौली का, जैसे कि आपका यह कौल, कुल्लु अब्दिन इश्तरैतुहु फहुवा हुर्रुन, कुल्लु अब्दिन, हर ऐसा गुलाम, इश्तरैतुहु, जिसको मैं खरीद लूं, फहुवा हुर्रुन, तो वो आजाद है। अब देखो कुल्लू के बाद अब्द का लफ्ज मुजाफिले है यानी इसम है, और आगे इश्तरैतुहु देखो फेल आ रहा है, तो देखो यहां भी तालीक आ गई, कुल्लू अब्दिन इश्तरैतुहु फहुवा हुर्रुन, हर वो गुलाम जिसको मैं खरीदूं तो वो आजाद है। तो देखो तालीक आ गई, शर्त और जजा पाए गए भाई। आगे देखिए, काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, फफी हादिहिल अल्फाजी इजा वुजिद शर्तुन हल्लत वंतहतिल यमीन, इन हल्ला यन हल्लू का माना है खुल जाना, और इंतहा का माना है इंतहा तक पहुंचना, इख्तिताम तक पहुंचना। तो कहते हैं फफी हादिहिल अल्फाजी इजा वुजिद शर्त, तो इन अल्फाज के अंदर जब शर्त पाई जाएगी, इन हल्लत वंतहतिल यमीनू, तो यमीन खुल जाएगी और उसकी इंतहा हो जाएगी, वो खत्म हो जाएगी, लिअन्नहा गैर मुक्तज़ियतिन लिलउमूमी व तकरारी लुगतन, इसलिए क्योंकि ये जो यमीन होती है ये तकाजा नहीं करती उमूम और तकरार का, लुगतन अरबी जुबान के एतबार से, ये यमीन जिसमें इजा और इजामा वगैरह आते हैं ये यमीन तकरार का तकाजा नहीं करती। मसलन खावन ने बीवी से कहा, इन दखलती दारा फांती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो एक दफा जब औरत उस घर में जाएगी तो शर्त पाई गई, और जब शर्त पाई गई साथ ही जजा भी वाके हो गई, जजा भी पाई गई, तो यमीन खुल गई, खत्म हो गई। अब इसके बाद जब दोबारा औरत उस घर में जाएगी तो फिर तलाक वाके नहीं होगी, क्योंकि ये अल्फाज या यूं कहें ये यमीन जो है ये तकरार का तकाजा नहीं करती कि बार बार वाके हो, बस एक मरतबा वाके हो गई तो खुल गई और खत्म हो गई भाई। तो कहते हैं अन्नहा गैरु मुक्तज़ियतिन लिलउमूमी व तकरारी लुगतन, इसलिए क्योंकि ये यमीन जो है ये उमूम और तकरार का तकाजा नहीं करती, लुगतन अरबी जुबान के एतबार से, फबी वजूद इल फ़िअल मर्रतन, तो एक मरतबा उस फेल के पाए जाने से यतिम्मु शर्त, शर्त पूरी हो गई, जब दुखूल दार पाया गया, एक दफा ये दुखूल दार वाला फेल पाया गया तो शर्त पूरी हो गई। शर्त क्या हो गई, पूरी हो गई। और यमीन तो किस चीज का नाम था? शर्त और जजा दोनों का नाम था। तो जब शर्त पूरी हो गई तो यमीन खुल गई, खत्म हो गई। तवज्जो है, जजा तलाक का वाक होना या ना होना उसकी बात अभी नहीं कर रहे, क्योंकि अगर वो औरत अभी भी मनकूहा है इसी आदमी की, फिर तो तलाक होगी। और अगर ये तलाक दे चुका है, जुदाई हो चुकी है, तो फिर तो तलाक वाकई नहीं होगी, उसकी बात अभी नहीं कर रहे, उसकी भी बात आगे चल के करेंगे। अभी सिर्फ क्या कह रहे हैं कि यमीन किस चीज का नाम है? शर्त और जजा दोनों में से एक भी खत्म हो जाएगी तो यमीन खत्म। तो लिहाजा जब दुहुले दार पाया गया तो फेल पाया गया, शर्त पूरी हो गई, शर्त खुल गई, शर्त खत्म हो गई, और जब शर्त खत्म तो यमीन भी खत्म, क्योंकि यमीन तो किस चीज का नाम था? शर्त और जजा का नाम था। दोनों होंगी तो यमीन है, इन दोनों में से एक भी खत्म हो जाएगी तो यमीन भी खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गई। तो एक मर्तबा औरत उस घर में गई तो शर्त पूरी हो गई, शर्त पूरी हो गई, जब शर्त पूरी हो गई तो यमीन भी खुल गई, खत्म हो गई। तो यह माना है फबी वजूद इल्फ़ेल मर्रतन, तो एक मर्तबा उस फेल के पाए जाने से यतिम मुशर्त शर्त पूरी हो जाएगी। वला बका अलिल यमीनी बिदूनी ही, और यमीन की बका नहीं है बिदूनी ही आई बिदूनी शर्ती, शर्त के बगैर। शर्त के बगैर तो यमीन बाकी नहीं रह सकती, क्योंकि यमीन तो नाम ही शर्त और जजा का है, दोनों होनी चाहिए भाई। सिर्फ शर्त है या सिर्फ जजा है इसको यमीन नहीं कहते, यमीन में दोनों का होना जरूरी है। और शर्त तो पाई गई, पूरी हो गई, लिहाजा यमीन भी खुल गई, खत्म हो गई। यह माना है वला बका अलिल यमीन भी दूनी ही, और यमीन के लिए बका नहीं है बगैर शर्त के। इल्ला फी कलिमति कुल्लमा, हां कुल्लमा के कलिमे में, कुल्लमा के कलिमे में जब भी वो औरत जाएगी तो तलाक वाके हो जाएगी। इसलिए क्योंकि बाकी अल्फाज तो तकरार का तकाजा नहीं करते, लेकिन कुल्लमा जो है वो तकरार अफाल का तकाजा करता है। जब भी वो फेल पाया जाएगा तो तलाक वाके हो जाएगी, क्योंकि कुल्लमा का माना भी क्या है? जब भी, कुल्लमा दखलती दारा, तू जब भी उस घर में गई, फअंत तालिकुन, तो तुझे तलाक है। तो एक दफा जाएगी तो एक तलाक हो जाएगी। अभी भी यमीन मौजूद है, क्योंकि उसने क्या कहा था? जब भी तू उस घर में गई, कुल्लमा दखलती दारा, दोबारा जाएगी तो फिर तलाक दूसरी भी हो जाएगी, फिर गई तो फिर तीसरी भी हो जाएगी। तो कहते हैं इल्ला फी कलिमति कुल्लमा, मगर कलिमा कुल्लमा के अंदर, फैन नहा तक तजी तामीम अल अफाली, इसलिए क्योंकि कलिमा कुल्लमा जो है वो तामीम अफाल का तकाजा करता है कि जब भी वो फेल करे जजा पाई जाए। तो कलिमा कुल्लमा अफाल की तामीम का तकाजा करता है। काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, आगे है बदलना हुम जुलूदन गैरहा, कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब भी उनकी खालें जल जाएंगी, बदलना हुम जुलूदन गैरहा, तो हम उनको और खालों से बदल देंगे, यानी नई खालें उनको दे देंगे भाई। अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ये जहन्नमियों की बात अल्लाह जिक्र फरमा रहे हैं कि जहन्नम की आग में जब भी उनकी खाल जल जाएगी तो हम उनको नई खाल उनको दे देंगे भाई। और आज साइंस ने आकर दरियाफ्त किया है भाई कि इंसान को जो बदन पर तकलीफ होती है इसका ज्यादा ताल्लुक इस खाल के साथ है। इस खाल के अंदर अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया हुआ है कि जिस्म के जिस हिस्से पर मामूली सी भी तकलीफ होती है फौरन दिमाग को खबर पहुंच जाती है। देखो आपकी इन तवज्जो नहीं है, आपके पांव पर एक चींटी ने काट लिया, आपका दिमाग फौरन आपको खबर देता है कि पांव में एक तकलीफ है, कोई चीज आपको काट रही है। तो ये जो ज्यादातर ये जो तकलीफ का एहसास है इसका ताल्लुक इस खाल से है। और जब ये खाल जल जाए तो अब उसके बाद उसमें तकलीफ का एहसास ज्यादा नहीं होगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो जो तकलीफ का पैगाम पहुंचाने वाली चीजें थी दिमाग तक वो जल गईं। वो कहां पर थी? ज्यादातर खाल के अंदर थी। तो लिहाजा जब खाल जल जाती है तो तकलीफ का एहसास कम हो जाता है। ये आज साइंस ने बतलाया और कुरान ने 1400 साल पहले यह ऐलान कर दिया था कि जब भी उनकी खालें जल जाएंगी हम उनको नई खालों से बदल देंगे। इशारा कर दिया कि असल तकलीफ का ताल्लुक किससे है? खाल से है और खाल जलेगी तो उनकी तकलीफ कम हो जाएगी, लेकिन हम उनकी तकलीफ कम नहीं करेंगे, फिर हम उनको नई खाल दे देंगे, फिर नए सिरे से तकलीफ होगी उनको। भाई अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए भाई जहन्नुम से, अल्लाह ताला हम सबको हुस्ने खातिमा नसीब फरमाए। तो कहते हैं काल अल्लाह ताला, अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम, जब भी उनकी खालें जल जाएंगी। देखा यहां कुल्लमा आया तो वो बार बार उनकी खालें बदली जाएंगी भाई। वमिन जरूरती तामीमी तकरार, और तामीम की जरूरत में से तकरार है। कलिमा कुल्लमा किस लिए आता है? तामीम के लिए, और तामीम के लिए जरूरी है फेल का तकरार। फेल का भाई हर तकरार में जजा आए तभी हम कहेंगे तामीम है ना, वैसे तो तामीम नहीं है। एक औरत एक दफा घर में गई और तलाक हो गई, दोबारा जाए और तलाक ना हो, यह तो तामीम नहीं है। तामीम तो यह है जब भी जाएगी फौरन क्या होनी चाहिए? तलाक वाकई होनी चाहिए। मसलन खावन ने बीवी से क्या कहा है? कुल्लमा दखलती दार अफानती तालिकुन, तो यह तामीम का तकाजा कर रहा है, और तामीम के साथ जरूरी है कि उसमें अफाल का तकरार हो। अफाल के तकरार के बगैर कैसे तामीम हो सकती है? अफाल के तकरार के बगैर तामीम कैसे हो? तामीम तो है ये, जब भी ये फेल पाया जाएगा ये जजा वाकई होगी भाई। तो तामीम के लिए जरूरी है तकरार का होना, यानी फेल का तकरार भाई। तो जब भी फेल का तकरार होगा तो वो तलाक वाकई हो जाएगी। तो कहते ममिन जरूरती तामीमी तकरार, और तामीम अफाल के साथ जरूरी है तकरार का होना। आगे देखिए काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं फइन तज़व्वजा बादा ज़ालिका अय बादा ज़ौजिन आखरा। सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा कुल्लमा दखलती दार फअंती तालिकुन, तू जब भी उस घर में गई तो तुझे तलाक है। बीवी एक दफा गई तलाक हो गई, फिर कुछ दिनों बाद दोबारा बीवी वहां चली गई फिर तलाक हो गई, फिर चंद दिनों के बाद औरत तीसरी दफा चली गई, अब तीसरी तलाक भी हो गई। अब यह औरत इस खावन के लिए तो हराम हो गई, इसने इद्दत के बाद किसी और जगह निकाह कर लिया, और फिर कुछ अरसे के बाद वो दूसरे खावंद का इंतकाल हुआ या उसने इसको तलाक दे दी। अब ये खावंद फिर इसी औरत से निकाह कर लेता है तो अब फिर वो उसी घर में जाती है तो क्या फिर तलाक वाकई होगी या नहीं? क्योंकि खावंद ने तो कहा था कुल्लमा दखलती दार फअंती तालिकुन, तू जब भी उस घर में गई तुझे तलाक है। तो क्या अब जब दरमियान में एक खावंद भी आ गया फिर निकाह कर लिया, अब खावंद फिर तीन तलाकों का मालिक बन गया, तो क्या औरत अब उस घर में जाएगी तो फिर तलाक वाकई होगी या नहीं? तो आपको साहिबे हिदायत बतलाएंगे कि नहीं, अब तलाक वाकई नहीं होगी। अब तलाक वाकई नहीं भाई, कैसे वाकई नहीं होगी? उसने तो कुल्लमा कहा था जब भी तू उस घर में जाए तो तुझे तलाक है। तो जवाब यह कि उस वक्त खावंद तीन तलाकों ही का मालिक था। कितनी तलाकों का? तीन तलाकों का मालिक था, और वो सारी खत्म हो गई। लिहाजा अब ये नई तलाकें आई हैं, नई मिल्कियत आई है, उस तालीक का इन तलाकों के साथ ताल्लुक नहीं है। तो कहते हैं काल साहिब कुदूरी फरमाते हैं फइन तज़व्वजा बादा ज़ालिका, अगर खावन ने उसके बाद फिर इस औरत से निकाह कर लिया आई बादा ज़ौजिन आखरा, यानी एक और खावंद के बाद वह तकर्रा शर्त, और अब फिर वो शर्त पाई गई लम यकाश है उन, तो अब कुछ भी वाकई नहीं होगा, अब तलाक वाकई नहीं। लिअन नबी इस्तीफा इतलकात इस सलासिल ममलूकात फी हादन निकाही लम यबकल जज़ाऊ। इस्तीफा का माना है वसूल करना, तलकात जमा है तलकतुन की, लम साकिन है, तलकतुन एक तलाक को कहते हैं, तलकतुन एक तलाक को कहते हैं, यह तावहदत की है और इसकी जमा है तलकात। तो साहिब हिदायत फरमा रहे हैं अब जब नई मिल्कियत आ गई है तो अब तलाक वाकई नहीं होगी, इसलिए कि उस निकाह के अंदर जिसमें खावन ने तालीक की थी उसमें खावन तीन ही तलाकों का मालिक था, और औरत ने तीनों तलाकें वसूल कर ली, तीनों तलाकें उसको मिल गई, तो लिहाजा अब जजा ही खत्म हो गई। खावन ने क्या कहा था? कुल्लमा दखलती दारा फअंती तालिकुन, तू तुझे तलाक है। और यह तलाक कब वाकई होती है? जब खावन मालिक तो हो तलाकों का जी। तो जब तीन तलाकें वाकई हो गई तो अब अंती तालिकुन बेकार चला गया, इससे आगे तो हो ही नहीं सकती तलाकें, इससे आगे तो तलाकें हो ही, तो जजा खत्म हो गई। जब जजा खत्म हो गई तो यमीन तो किस चीज का नाम था? शर्त और जजा दोनों का नाम था, तो जजा खत्म हो गई तो यमीन भी खत्म हो गई। जैसे पिछले मसले में बताया कि जब एक मरतबा शर्त पे अमल कर लिया तो शर्त खत्म हो गई तो यमीन भी खत्म, और यहां जजा खत्म हो गई, अंति तालिकुन खत्म हो गया, क्योंकि खावन तीन ही तलाकों का मालिक था, इससे ज्यादा का तो मालिक ही नहीं, और वो सारी औरत पर वाकई हो गई, तो जजा खत्म हो गई, अंति तालिकुन खत्म हो गया। जब अंति तालिकुन जजा खत्म हुई तो यमीन भी खत्म, क्योंकि यमीन शर्त और जजा का नाम है। तो कहते हैं लिअन नबी इस्तीफा इतलकात इसलासी, इसलिए क्योंकि वो तीन तलाकें वसूल कर लेने से, अल ममलूकात फी हादन निकाही, जो ममलूक थी इस निकाह में, जिनका खावन मालिक था इस निकाह में, जब वो तलाकें औरत ने तीन वसूल कर ली, लम यब कल जजा, तो जजा बाकी न रही, वह बका उल यमीन बिही व बि शर्ती, और यमीन की बका तो जजा और शर्त के जरिए होती है, तो जब जजा न रही तो यमीन भी न रही, खत्म हो गई। वफी है खिलाफ जुफर रहमहुल्ला, और इसमें इमाम जुफर रहमहुल्ला का इख्तिलाफ है। इमाम जुफर इख्तिलाफ फरमाते हैं, वो फरमाते हैं नहीं, उसने कुल्लमा कहा है, लिहाजा दूसरे खावंद के बाद फिर पहले खावंद ने निकाह कर लिया, अब भी अगर औरत उस घर में जाएगी उसको फिर तलाक वाके हो जाएगी। वो फरमाते हैं कि खावंद ने क्या कहा था, कुल्लमा दखल दिदार फअंत तालिकुन, तो उसके अंदर खावंद ने कोई कैद नहीं लगाई कि इस निकाह वाली तलाक मुराद हैं, कोई कैद नहीं लगाई, वो मुतलक मिल्कियत उसने जिक्र की है, फअंत तालिकुन, कि तुझे तलाक है जिसका मैं मालिक हूं, तो चाहे वो इस निकाह में हो चाहे अगले निकाह में हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुतलक मिल्कियत जिक्र हुई है, उस निकाह की मिल्कियत जिक्र नहीं हुई कि उस निकाह के अंदर मैं जितनी तलाकों का मालिक हूं वो वाकई होंगी, नहीं ऐसा नहीं है भाई। तो कहते हैं वफी ही खिलाफ जुफर रहमहुल्ला, और इसमें इमाम जुफर रहमहुल्ला का इख्तिलाफ है, वसा नुकर्ररुहु मिन बादु इंशा अल्लाह ताला, और हम आन करीब इसको साबित करेंगे इंशा अल्लाह ताला, साहिब हिदाया आगे इसको जिक्र फरमाएंगे। वलौ दखलत आला नफ्सि तज़व्वुज बि अन क़ाला कुल्लमा तज़व्वजतु इम्रअतन फहिया तालिकुन जी, वलौ दखलत आला नफ्सि त, भाई सूरत मसला ये, एक शख्स ने कहा कुल्लमा तज़व्वजतु इम्रअतन फहिया तालिकुन, मैं जब भी किसी औरत से निकाह करूं तो उसे तलाक है, मैं जब भी किसी औरत से निकाह करूं तो उसे तलाक है, तो याद रखो ये उसने बड़े ही खतरनाक अल्फाज कह दिए, अब जब भी किसी औरत से निकाह करेगा साथ ही तलाक वाके हो जाएगी, और ये तो गैर मदखूल बिहा है, अभी तो निकाह कर रहा है, और निकाह करते ही फौरन तलाक आएगी, और तलाक से फौरन वो बाइना हो जाएगी, फिर वो जहां चाहे निकाह कर सकती है वो औरत, इस पर इद्दत भी नहीं है क्योंकि ये गैर मदखूल बिहा है, तो लिहाजा अब जिंदगी भर निकाह की कोई सूरत नहीं भाई, जिस औरत से भी निकाह करेगा फौरन तलाक वाके हो जाएगी। और मैंने बतलाया कि इसमें फिर उलमा हीला जिक्र करते हैं कि कोई फजूली इसका निकाह करवा दे, ये अपनी जुबान से निकाह की इजाजत न दे, वरना निकाह होते ही फौरन तलाक हो जाएगी, फजूली इसका निकाह करवा दे, यानी जिसको इसने वकील न बनाया हो भाई, अगर इसने किसी को कहा है वो तो वकील हो गया, वो भी निकाह करवाएगा तो फौरन तलाक हो जाएगी, लिहाजा कोई फजूली करवा दे और ये जुबान से उसकी निकाह की इजाजत न दे, बल्कि अपने किसी फेल के जरिए निकाह की इजाजत दे दे, यानी औरत को महर भिजवा दिया, तो ये रजामंदी और इजाजत की अलामत है, बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वलौ दखलत आला नफ्स तज़व्वुजी, और अगर कलिमा कुल्लमा दाखिल हो गया नफ्स तज़व्वुज पर, यानी नफ्स तज़व्वुज के लफ्ज पर, भी अन काला बाई सूरत के खामन ने यूं कहा कुल्लमा तज़व्वुज तुम रातन फहिया तालिकुन, के जब भी मैं किसी औरत से निकाह करूं फहिया तालिकुन, तो उसे तलाक है, यह नसु बिकुल्ली मर्रतिन, तो हर मर्तबा में यह खावंद हानिस हो जाएगा, यानी जैसे ही निकाह करेगा तलाक हो जाएगी, वह इन काना बाद अज़ौजिन आखरा, अगरचे दूसरे खावंद के बाद ही क्यों ना हो, उसी एक औरत से निकाह किया फौरन तलाक हो गई, फिर दोबारा निकाह किया फिर तलाक हो गई, फिर निकाह किया फौरन तलाक हो गई, अब तो निकाह कर ही नहीं सकता, अब इस औरत ने किसी और से निकाह कर लिया, उसने फिर बाद में तलाक दे दी, फिर यह पहला खावन दोबारा निकाह करता है तो इस सूरत में भी जैसे ही निकाह करेगा तलाक वाकई हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इसने क्या कहा था, जब भी मैं किसी औरत से निकाह करूं तो उसको तलाक है। तो जब भी निकाह करेगा साथ ही तलाकों का मालिक बनेगा खावन और साथ ही वो तलाक वाकई हो जाएगी। तो कहते हैं यह नसु बिकुल्ली मर्रतिन व इन कान बादा ज़ौजिन आखरा, के हर मर्तबा में खावन हानिस हो जाएगा यानी जजा वाकई हो जाएगी। वह इन कान बादा ज़ौजिन आखरा यानी अगरचे किसी दूसरे खावन के बाद यह निकाह हो, लिअन्ना इक़ादहा बेअतिबारी मा यमलिकु अलैहा मिन अत्तलाक़ बित्तज़व्वुज, लिअन्ना इक़ादहा इसलिए क्योंकि इस यमीन का मुनाक़िद होना बेअतिबारी वो इस एतबार से है कि मा यमलिकु अलैहा मिन अत्तलाक़ी कि जिसका वो खावंद उस औरत पर मालिक बनता है, मीनत तलाकी यानी के तलाक का, बेतजवुजी निकाह के जरिए। भाई ये इबारत समझ लें, मा यमलिकु अलैहा जिसका खावंद मालिक बनता है अलैहा उस औरत पर, मीनत तलाक ये बयान है मा यमलिकु का, किस चीज का मालिक बनता है खावंद, मीनत तलाक यानी के तलाक, लिहाजा इस मां को हटा दें और इसकी जगह यह तलाक का लफ्ज ले आए। तो बेअतिबारी मा यमलिकु अलैहा ऐ बेअतिबारी तलाकी यमलिकु अलैहा। अब तर्जमा सुनिए, कहते हैं लिअन्ना इक़ादहा बेअतिबारी मा यमलिकु अलैहा मिन अत्तलाक बित्तज़व्वुजी, इसलिए क्योंकि ये जो कसम मुनाकिद हुई है इसका मुनाकिद होना इस एतबार से है कि खावन उस औरत पर तलाक का मालिक हो गया है बित्तज़व्वुजी निकाह करने की वजह से, वज़ालिका गैरु महसूरिन और ये तलाकें जिनका वो मालिक बनता है गैरु महसूरिन इनकी तो कोई हद नहीं है, इनकी तो कोई इंतहा नहीं है, जब भी निकाह करेगा ये तलाक का मालिक बनेगा और मालिक बनते ही वो तलाक वाके हो जाएगी। आगे देखिए काला वजवाल उल्मिल की बादल यमीनी ला युबतिलुहा, सूरत मसला ये खावन ने बीवी से कहा इन दखलती दारफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, औरत अभी उस घर में नहीं गई कि खावन ने पहले ही तलाके बाइन दे दी, वो तलाक अभी भी मुअल्लक है लेकिन खावन ने एक और तलाके बाइन दे दी तो औरत से निकाह खत्म हो गया, टूट गया, तवज्जो है। बाद में किसी वक्त जिंदगी में खावन फिर इसी औरत से निकाह कर लेता है, जब खावन फिर इसी औरत से निकाह करेगा तो तालीक अभी भी मौजूद है क्योंकि वह औरत अभी तक उस घर में नहीं गई, लिहाजा अब भी औरत उस घर में जाएगी तो उसको तलाक हो जाएगी, तलाक हो जाएगी। और एक तलाक तो खावन ने पहले भी दी थी, तलाक बाइन पहले भी दी थी और एक यह भी वाकई हो गई, अब जिंदगी भर इस शख्स के पास सिर्फ एक तलाक का हक बाकी रह गया, सिर्फ एक तलाक का हक बाकी रह गया। और अगर पहले यह दो दे चुका था तो अब जैसे ही जाएगी तीसरी भी वाकई हो गई और हुर्मत मुगल्लसा आ जाएगी, अब खावन का इसके साथ निकाह करना जायज नहीं इल्ला ये के दरमियान में कोई और खावन आए भाई जी। और अगर खावन ने तलाक मुअल्लक की, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है और फिर खावन ने तलाक बाइन दे दी इसको, वो तलाक मुअल्लक है, खावन ने तलाक बाइन दे दी और औरत बाइना हो गई, जुदा हो गई, बाद में किसी वक्त वह औरत उस घर में गई तो अब तो निकाह बिल्कुल टूट चुका है, खत्म हो चुका है, निकाह खत्म हो चुका है, लिहाजा वो शर्त पूरी हो गई, वो औरत घर में चली गई, शर्त पूरी हो गई और तलाक आ गई, लेकिन ये औरत तो तलाक का महल ही नहीं है, खावन से तो इसका निकाह टूट चुका है, लिहाजा तलाक लगव चली जाएगी और वो यमीन भी खुल गई और खत्म हो गई। यमीन की बका तो किसके जरिए थी, शर्त और जजा के जरिए, और वो शर्त और जजा तो खत्म हो गए, खुल गए, लिहाजा अब खावन ने इसे निकाह कर लिया, अब यमीन खुल चुकी है, अब ये औरत उस घर में जाएगी तो इसे तलाक नहीं होगी क्योंकि यमीन खुल चुकी है, खत्म हो चुकी है। तो कहते हैं काला व जवाल उल मिल्की बादल यमीनी ला युबतिलुहा, और मिल्कियत का जायल हो जाना बादल यमीनी यमीन के बाद, ला युबतिलुहा ये यमीन को बातिल नहीं करता, यमीन यानी तालीक कर दी फिर तलाक बाइन दे दी तो खावन की मिल्कियत तो खत्म हो गई औरत पर से, फिर भी तालीक अपनी जगह है, तालीक खत्म नहीं। जैसे पहली मिसाल थी एक शख्स ने एक अजनबी औरत से कहा, इन तजवज तो किफानती तालिक, अगर मैंने तुझसे निकाह किया तो तुझे तलाक है। तो यह यमीन है, तालीक है, और इस वक्त यह शख्स तलाकों का मालिक है, मालिक नहीं, लेकिन फिर भी तालीक सही है क्योंकि उसने मिल्कियत की तरफ निस्बत की है। तो जब हमारे नजदीक इब्तिदाए तालीक में मिल्कियत जरूरी नहीं, हमारे नजदीक इब्तिदाए तालीक के अंदर जब मिल्कियत जरूरी नहीं, तो बकाए तालीक के लिए बतरीके औला मिल्कियत जरूरी नहीं। मिल्कियत के बगैर भी तालीक बाकी रहेगी। जब तालीक की इब्तिदा बगैर मिल्कियत के हो सकती है, तो तालीक की बका भी बगैर मिल्कियत के हो सकती है। भाई तो कहते हैं काला साहिब कुदूरी फरमाते हैं, व जवालुल मिल्क बाद अल यमीनी ला युबतिलुहा, और मिल्कियत का जायल हो जाना यमीन के बाद, ला युबतिलुहा, वो इस यमीन को बातिल नहीं करता, लिअन्नहु लम यूजदि शर्तु फबकिया, इसलिए क्योंकि शर्त नहीं पाई गई, अभी शर्त वाला फेल अभी तक नहीं हुआ, फबकिया तो शर्त बाकी है, वल जजा उबाकिन लिबका इ महल ही, और जजा भी बाकी है क्योंकि जजा का महल बाकी है, यानी वो औरत जिसको खामन ने अभी सिर्फ एक तलाक दी है, खामन ने उसको सिर्फ एक तलाक दी है, तो एहतमाल है खावंद इससे हो सकता है दोबारा निकाह कर ले, तो महल यानी जिस पर जजा ने वाके होना है, जजा ने किस पर वाके होना था, उस औरत पर, तो शर्त भी बाकी है क्योंकि शर्त वाला फेल अभी नहीं पाया गया जी। और जजा भी बाकी है क्योंकि जजा का महल यानी वो औरत अभी बाकी है, उसको खावंद ने तीनों तलाकें नहीं दी। भाई तो कहते हैं लिअन्नहु लम यूजदि शर्तु फबकिया, इसलिए क्योंकि शर्त नहीं पाई गई तो शर्त बाकी है, वल जजा उबाकिन लिबका महलिही, और जजा भी बाकी है क्योंकि जजा का महल यानी वो औरत बाकी है, फबकियल यमीन, तो यमीन भी बाकी रहेगी क्योंकि यमीन तो किस चीज का नाम है, शर्त और जजा का। सुम इन वुजिद शर्तु फी मिल्किहिन हल्लतिल यमीन वबका तलाक, सुम इन वुजिद शर्त फी मिल्की ही, फिर अगर यह शर्त पाई गई फी मिल्की ही इसी खावंद की मिल्कियत में, यानी इसने दोबारा निकाह कर लिया था, तो अब इन हल्लतिल यमीन, तो ये अब यमीन खुल जाएगी, वक़ात तलाक, और तलाक वाके हो जाएगी क्योंकि खावंद इस वक्त फिर मालिक है इस औरत का, तो कहते हैं तलाक वाके हो जाएगी, लिअन्नहु वुजिद शर्त, क्योंकि शर्त पाई गई है, वल महल काबिलुन लिल जजाई, और महल यानी वो औरत जो है वो भी काबिलुन लिल जजाई, जजा के काबिल है, वो जजा को कबूल कर रही है, काबिल कबूल से है, तो कहते हैं वल महल काबिलुन लिल जजाई, और यह महल भी जजा को कबूल करने वाला है, कबूल कर रहा है क्योंकि इस वक्त इसकी बीवी है, फयनजिलुल जजाउ, तो जजा नाजिल हो जाएगी यानी तलाक हो जाएगी, वला यबकल यमीन, और अब यमीन बाकी नहीं रहेगी क्योंकि शर्त भी पूरी हो गई, जजा भी वाके हो गई, तो कहते हैं वला यबकल यमीन, यमीन बाकी नहीं रहेगी, लिमा कुल ना, उस वजह से जो हमने कहा, वो जो हमने आपको बतलाया था कि ये जो यमीन है ये उमूम और तकरार का तकाजा नहीं करती भाई, या वो जो हमने कहा था कि यमीन शर्त और जजा का नाम है, तो जब शर्त और जजा दोनों पूरे हो गए हैं तो यमीन भी खुल गई, अब उसका वजूद भी बाकी नहीं भाई, तो ये माना है वला यबकल यमीन लिमा कुलना, और यमीन बाकी नहीं रहेगी, लिमा कुलना, उस वजह से जो हमने कहा, व इन वुजिद फी गैरिल मिल्क हल्लतिल यमीन लिवजूद शर्ती, सूरत मसला यह, खावन ने बीवी से कहा अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तालीक हो गई, अब ये तलाक मुअल्लक है, लेकिन उस घर में जाने से पहले ही खावन ने इस औरत को एक और तलाक बाइन दे दी, ये उस खावन से जुदा हो गई, और फिर इद्दत के बाद ये औरत किसी वक्त उस घर में चली गई तो अब शर्त पूरी हो गई, शर्त वाला फेल पाया गया, शर्त वाला फेल पाया गया, तो लिहाजा शर्त पूरी हो गई, वो खत्म हो गई, और जजा यानी तलाक वाके नहीं होगी क्योंकि औरत इस वक्त तलाक का महल ही नहीं है। और मैंने कैद लगाई कि औरत इद्दत के बाद उस घर में गई तो तलाक वाके नहीं होगी भाई, इसलिए क्योंकि अगर औरत इद्दत के अंदर उस घर के अंदर चली गई तो फिर वो मुअल्लक तलाक भी वाके हो जाएगी, इसलिए क्योंकि इद्दत के अंदर खावंद तलाक दे तो वो पहली तलाक के साथ मिल जाती है। जहां किताबु तलाक हमने शुरू की थी वहां मैंने आपको जाब्ता बतलाया था, असरीह यल हकु सरीह वल बाइना, कि एक खावंद एक तलाक दे दे तो और फिर इद्दत के अंदर दूसरी तलाक दे तो क्या दूसरी तलाक पहली तलाक से मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैंने आपको बतलाया था असरीह यल हकु सरीह वल बाइना कि सरीह जो है सरीह से भी मिल जाएगी और बाइन से भी, यानी अगर दूसरी तलाक सरीह है साफ लफ्जों में तलाक है तो वह पहली तलाक के साथ मिल जाएगी, चाहे पहली तलाक सरीह हो चाहे बाइन हो। वल बाइनु ला यलहकुल बाइना और बाइन जो है तलाक वो बाइन के साथ नहीं मिलेगी, यानी बाइन की नाया जो है वो पहली बाइन के साथ नहीं मिलेगी। बाइन अगर दूसरी तलाक की नाया बाइन है तो वो पहली बाइन के साथ नहीं मिलेगी, चाहे पहली सरीह बाइन हो चाहे की नाया बाइन हो। बात समझ में आ गई। तो लिहाजा ये औरत खावन ने इसको तलाक दे दी और यह इद्दत के बाद उस घर में गई है तो अब तलाक वाके नहीं होगी, लेकिन अगर यह औरत इद्दत के अंदर उस घर में गई तो यह दूसरी तलाक जो मुअल्लक थी यह भी वाके हो जाएगी। भाई यह भी वाके हो जाएगी। तो खावन ने एक तलाक मुअल्लक कर दी कि अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो यह तलाक मुअल्लक है और खावन ने तलाक बाइन दे दी, तो यह औरत खावन से जुदा हो गई और फिर इसने इद्दत भी पूरी कर ली। इद्दत पूरी करने के बाद अब निकाह पूरी तरह टूट चुका है, अब इसके बाद औरत उस घर के अंदर जाती है तो शर्त पूरी हो गई। जब शर्त पूरी हुई तो यमीन खुल गई, अलबत्ता तलाक वाके नहीं होगी इसलिए क्योंकि इस वक्त यह औरत तलाक का महल ही नहीं है, इसका तो निकाह टूट चुका है। और फिर उसके बाद इसी शख्स से इस औरत ने दोबारा निकाह कर लिया तो अब उस घर के अंदर जाएगी तो तलाक वाके नहीं होगी क्योंकि यमीन खुल चुकी है। भाई तो कहते हैं वह इन उजी दफी गैर मिल्की और अगर वो फेल गैर मिल्कियत में पाया गया तो इन हल्लतिल यमीन तो यमीन खुल जाएगी ली वजूदी शर्ती शर्त पाए जाने की वजह से वलम यका शय उन और कुछ भी वाके नहीं होगा यानी तलाक वाके नहीं होगी लिन इदामिल महलियती महल के न होने की वजह से कि वह औरत अब तलाक का महल ही नहीं जुदाई आ चुकी है पहले से ही। वही इख्तलाफा फी शर्ती फल कौल कौल ज़ौजी सूरत मसला ये खावन ने तलाक को मुअल्लक किया था शर्त के साथ, खावन ने तलाक को मुअल्लक किया था शर्त के साथ और फिर बाद में मियां बीवी का इख्तलाफ हो गया, बीवी कहती है शर्त पूरी हो चुकी है और खावन कहता है शर्त पूरी नहीं हुई, शर्त पूरी नहीं हुई। मसलन ये तो एक सीधी सी मिसाल है, खावन क्या कहता है अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, इसमें तो जाहिर सी बात है इख्तलाफ नहीं होगा, इसमें तो इख्तलाफ नहीं, अगर इख्तलाफ करेगा भी तो बीवी उसी वक्त चली जाएगी कि ये लो अब मैं फिर चली गई तो तालीक तो थी तलाक तो वाके हो जाएगी। लेकिन कोई और शर्त है, कोई और शर्त मसलन खावन ने जिक्र की थी और बीवी बाद में कहती है यह शर्त पाई गई, शर्त पूरी हो गई, जब शर्त पूरी हो गई मुझे तलाक भी हो गई और खावन कहता है नहीं ये शर्त पूरी नहीं हुई, अभी तक ये शर्त वाला फेल नहीं हुआ, भाई दोनों में इख्तलाफ आ गया। तो अब कहते हैं कि औरत चूंकि तलाक की मुद्दईया है, शर्त पाई जाएगी तो तलाक हो जाएगी, तो लिहाजा औरत मुद्दईया हुई यानी तलाक की और खावन मुनकिर हुआ और आपने पढ़ा है अल बैयिनत अलल मुद्दई वल यमीन अला मन अनकरा के मुद्दई के जिम्मे बैयिना होती है, लिहाजा अगर औरत दो गवाह ले आई तो औरत के हक में काजी जुदाई का फैसला कर देगा और अगर औरत गवाह न ला सकी तो फिर खावंद के कौल का एतबार है क्योंकि मुनकिर का कौल मोतबर होता है कसम के साथ, तो खावंद अगर कसम खा लेगा कि वल्लाह काजी साहब यह शर्त नहीं पाई गई तो फिर काजी बकाए निकाह का हुक्म लगा देगा कि जुदाई नहीं हुई, निकाह उसी तरह बाकी है। भाई तो कहते हैं वही इख्तलाफा फी शर्ती और अगर मियां बीवी दोनों ने इख्तिलाफ कर लिया शर्त में फल कौल कौल ज़ौजी तो वो कौल जो मोतबर है वो खावंद का कौल है, फल कौल कौल ज़ौजी ऐ फल कौल मोतबर कौल ज़ौजी वो कौल जो मोतबर है वो किसका कौल है खावंद का, इल्ला अन तुकीम अल मरअतुल बय्यिना था मगर यह कि औरत बय्यिना कायम कर दे गवाह पेश कर दे, लिअन्नहु मुतमस्सिकुन बिल असली व हुवा अदमु शर्ती इसलिए क्योंकि खावन जो है वो दलील पकड़ने वाला है असल से, व हुवा अदमु शर्ती और वो अदम शर्त है। भाई याद रखो कौल उस शख्स का मोतबर होता है जो असल के साथ दलील पकड़े, जो असल को दलील बनाए। खावन ने कहा बीवी से फर्ज करो इसी में इख्तिलाफ है, औरत कहती है मैं उस घर में गई थी, खावंद कहते हैं तुम उस घर में नहीं गई। जिस वक्त खावन ने तालीक की है, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है, तो इस वक्त आदम फेल है, इस वक्त दुखूल दार पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। जिस वक्त खावन तालीक कर रहा है उस वक्त तो दुखूल दार नहीं पाया जा रहा, तो असल जो है वो आदम शर्त है, शर्त का ना पाया जाना
जी।
और शर्त का पाया जाना ये खिलाफुल असल है
जी।
ये क्या है? खिलाफुल असल है, और कौल उसी का मुआतबर होता है जो असल से इस्तेदलाल करे, जो असल को दलील बनाए। और असल भी क्या था? शर्त का न होना असल था और होना खिलाफुल असल था, तो खावंद असल को दलील बना रहा है, लिहाजा खावंद का कौल मुआतबर है। एक वजह यह, और नीज इसलिए खावन का कौल मोतबर क्योंकि खावन मुनकिर है भाई
जी।
और कौल किसका मोतबर होता है? मुनकिर का। तो कहते हैं खावन का कौल मोतबर है लिअन्नहु मुतमस्सिकुम बिल असली, क्योंकि खावन जो है असल के साथ इस्तेदलाल करने वाला है। वह हुआ आदमु शर्ती, और असल क्या है? आदम शर्त, शर्त का वजूद न होना। वली अन्नहु मुनकिरु वुकूई तलाक व ज़वालिल मिल्क, और इसलिए क्योंकि खावन जो है वो वुकूई तलाक और ज़वाले मिल्क का मुनकिर है। खावन वुकूई तलाक का इनकार कर रहा है और ज़वाले मिल्क का इनकार कर रहा है कि मेरी मिल्कियत इस औरत से खत्म नहीं है। तो कहते हैं वली अन्नहु मुनकिरु वुकूई तलाक व ज़वालिल मिल्क, और इसलिए क्योंकि खावन जो है वुकूई तलाक और ज़वाल मिल्कियत का मुनकिर है। वल मरअतु तद्दईही, और औरत जो है वो इसका दावा कर रही है, यानी कि वुकूई तलाक और ज़वाल मिल्क का औरत दावा कर रही है, तो खावन का कौल मोतबर है क्योंकि वो मुनकिर है भाई। आगे देखिए फइन काना शर्तु ला युअलमु इल्ला मिन जिहतिहा, भाई याद रखो अगर खावन ने ऐसी शर्त जिक्र की है जिसका पता औरत ही दे सकती है, औरत से ही उसका पता चल सकता है किसी और से नहीं, तो फिर इस सूरत में अगर औरत शर्त के पाए जाने की खबर देगी तो फिर इस सूरत में उसके अपने हक में इसको कबूल कर लिया जाएगा, किसी दूसरे के हक में कबूल नहीं किया जाएगा
जी।
मसलन खावन ने बीवी से कहा इन हिजती फांति तालिकुन, इन हिजती अगर तुझे हैज आया फांति तालिकुन तुझे तलाक है। अब ये हैज का आना इसका तो औरत ही हमें बतला सकती है कि उसको हैज आया है या हैज नहीं आया, तो इस सूरत में अगर औरत कहती है कि मुझे हैज आ गया है तो औरत का कौल मोतबर है कसम के साथ, क्योंकि औरत इस मामले में अमीन है, अमानतदार है। क्या है? अमानतदार है भाई, यहां तो उसकी अपनी जात का मामला है, किसी और का मामला नहीं, और अपनी जात के बारे में इंसान अमीन होता है, तो औरत अमीन है, उसकी बात कसम के साथ कबूल कर ली जाएगी, और तो कोई दलील यहां मौजूद नहीं है। लेकिन औरत के अपने हक में कबूल की जाएगी, किसी और के हक में कबूल नहीं की जाएगी। मसलन खावन ने कहा था बीवी से इन हिजती फांति तालिकू व जर्रतु की, तुझे भी तलाक है और तेरी सौकन को भी तलाक है, तो अब औरत कहती है मुझे हैज आ गया, तो औरत को तो तलाक हो जाएगी, लेकिन अगर खावंद इनकार करता है कि नहीं तुझे हैज नहीं आया तो फिर सौकन को तलाक नहीं होगी, लेकिन अगर खावंद तस्दीक कर दे कि हां तुझे हैज आ गया है तो फिर तो इस सौकन के बारे में भी बात कबूल कर ली जाएगी, उसको तलाक वाकई हो जाएगी। लेकिन अगर खावंद औरत की तकजीब करता है, उसको झुटलाता है कि नहीं तुझे हैज नहीं आया, तो इस सूरत में औरत के अपने हक में तो यह बात कबूल की जाएगी, औरत को तलाक हो जाएगी भाई, खावन बेशक इनकार करता रहे लेकिन सौकन के बारे में औरत की बात कबूल नहीं की जाएगी। मसला समझ में आ गया? तो कहते हैं फइन कान शर्तु ला युअलमु इल्ला मिन जिहतिहा, तो अगर शर्त जो है वो मालूम नहीं हो सकती इल्ला मिन जिहतिहा मगर औरत की जानिब से ही, फल कौलु कौलुहा फी हकी नफसिहा, तो उस औरत ही का कौल मोतबर होगा फी हकी नफसिहा अपनी जात के बारे में, मिसलु अन यकूला मिसाल के तौर पर खावन यूं कहता है इन हिस्ती फअंति तालिकु व फुलानतु, कि अगर तुझे हैज आया तो तुझे भी तलाक है, व फुलानतु और फुलानी मेरी जो बीवी है उसको भी तलाक है। भाई ये बात मैं पहले बयान कर चुका कि ये फलाना तो ये गैर मुनसरिफ है, क्योंकि यह किनाया है आलम से, इसके जरिए किसी मुअय्यन जात की तरफ इशारा होता है, तो यह आलम से किनाया है और तो यह आलम के दर्जे में है, और नीज इसके साथ गोलता भी जुड़ी हुई है जो तानीस की अलामत है, तो एक आलमियत आ गई एक तानीस आ गई, इसलिए यह गैर मुनसरिफ है। उमूमन तुलबा इसको मुनसरिफ पढ़ते हैं, यह दुरुस्त नहीं है भाई। और मैंने हवाला भी जिक्र किया था कि अल्लामा रज़ी ने काफिया की जो शरा लिखी है और निहायत अजीम शरा है, उस शरा के अंदर जहां पर मारिफा की बहस करते हैं साहिबे काफिया, मारिफा की तारीफ करते हैं, तो वहीं पर उस मकाम पर जो अल्लामा रज़ी शरा करते हैं तो वहां वो जिक्र करते हैं कि ये फलाना तो ये लफ्ज क्या है, गैर मुनसरिफ है भाई। तो कहते हैं खामन ने बीवी से कहा इन हिस्तीफानते तालिकों व फुलाना तू, कि अगर तुझे हैज आया तो तुझे भी तलाक है और फुलानी मेरी बीवी को भी। फकालत कद हिज तू, औरत ने कहा कि तहकीक मुझे हैज आ गया। तुल्लिकत हिया वलम तू तल्लक फुलाना तू, औरत ने क्या कहा मुझे हैज आ गया। तुल्लिकत हिया तो औरत को तो तलाक हो जाएगी, वलम तू तल्लक फुलाना तू लेकिन उस फुलानी को तलाक नहीं होगी। मैंने बताया ये उस वक्त है जब खामंद औरत को झुटलाता है, अगर खामंद औरत को नहीं झुटलाता उसकी तस्दीक करता है कि हां आपकी बात ठीक है, फिर फुलानी को भी तलाक हो जाएगी, इस औरत को भी और फुलानी को भी। लेकिन अगर खामंद झुटलाएगा तो इस औरत के हक में बात कबूल करेंगे क्योंकि अपने बारे में यह अमीन है। तो कहते हैं तुल्लिकत हिया, इसको तो तलाक हो जाएगी, वलम तु तल्लक फुलाना तो, और फुलानी को तलाक नहीं होगी, यानी जब खावंद इसको झुटलाए। वुकू तलाक इस्तेहसान, और तलाक का वाक्य होना इस्तेहसान है, तलाक का वाक्य होना यहां, यानी हमने कहा इस औरत को तलाक हो जाएगी तो इसको भी तलाक का होना यह इस्तेहसान है। कियास तो यह तकाजा करता है, इसमें औरत की तस्दीक नहीं होनी चाहिए भाई, किस तरह कियास ये तकाजा करता है। तो कहते हैं भाई देखिए, अभी तो हमने आपको बताया कि अगर शर्त के बारे में खावंद और बीवी में इख्तिलाफ आ जाए तो किसका कौल मोतबर है, खावंद का कौल मोतबर है, औरत का कौल मोतबर नहीं। तो यहां भी जब खावंद औरत को झुटला रहा है तो कियास तो ये तकाजा करता है इस शर्त के अंदर भी औरत की तस्दीक नहीं होनी चाहिए भाई, खावंद का कौल मोतबर होना चाहिए। तो कहते हैं वुकू तलाक इस्तेहसान, और तलाक का वाक़ होना इस्तेहसान है। वल कियास अल्ला यका, और कियास तो यह है कि तलाक वाक़ न हो। लिअन्नहु शर्तुन, क्योंकि हैज का आना तो शर्त है। फला तुसद्दकू का माफी दुखूली, फला तुसद्दकू का माफी दुखूली, तो लिहाजा औरत की तस्दीक नहीं की जाएगी। कमाफी दुखूली, जैसे उस घर के अंदर दाखिल होने में औरत की तस्दीक नहीं की जाती थी तो यहां भी उसकी तस्दीक नहीं की जाएगी। वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है, देखो अब कियासे खफी जिक्र करेंगे, और कियासे खफी को भी इस्तेहसान तब कहते हैं जब उसके मुकाबले में क्या है, कियासे जली, और यहां कियासे जली मौजूद है कि इस कियास को यह तकाजा करता है तलाक नहीं होनी चाहिए क्योंकि इख्तिलाफ किस में आया है, शर्त में, और शर्त में जब इख्तिलाफ आए तो औरत की बात कबूल नहीं की जाती बल्कि खावंद की बात कबूल की जाती है, लेकिन इस्तेहसान कबूल किया जाएगा, तलाक वाकई हो जाएगी। तो कहते हैं वजहुल इस्तेहसान, इस्तेहसान की वजह यह है कि अन्नहा अमीनतुन फी हकी नफसिहा, कि यह औरत अपने हक में अमीन है, अपने हक में अमीन है, अमानतदार है। इज़ला युअलमु ज़ालिका इल्ला मिन जिहतिहा, इसलिए क्योंकि शर्त का इलम नहीं हो सकता, इल्ला मिन जिहतिहा मगर औरत की जानिब से ही। फयुक़बलु क़ौलुहा, लिहाजा औरत के कौल को कबूल किया जाएगा। कमा कुबिला फी हक़िल इद्दति वल ग़शयानी, जैसे कि औरत का कौल कबूल किया जाता है इद्दत के हक में भी। वल ग़शयानी, और ग़शयान यानी सोहबत भाई, वती, गशयान किनाया है किससे, सोहबत और वती से भाई। तो कहते हैं कमा कुबी लफी हक इल इद्दत वल गशयानी, जैसे औरत का कौल कबूल किया जाता है इद्दत के हक में भी। वल गशयानी, और सोहबत के हक में भी भाई, जैसे खामन ने औरत को तलाक दे दी तो अब औरत का कौल कबूल किया जाएगा इद्दत के बारे में। अगर वो कहती है मेरी इद्दत गुजर गई है तो इद्दत गुजर चुकी, और अगर वो कहती है मेरी इद्दत नहीं गुजरी तो फिर अभी इद्दत नहीं गुजरी। या इसी तरह सोहबत के बारे में भी, मसलन खावन बीवी से सोहबत करता है तो बीवी अगर कहती है मैं हैज की हालत में हूं यानी मैं पाक नहीं हूं, तो खावन उसकी बात कबूल करेगा, उससे सोहबत नहीं करेगा। और अगर बीवी कहे कि मैं पाक हूं तो खावंद उसकी बात कबूल करेगा और उसके साथ फिर वो सोहबत कर सकता है। तो जैसे वती के बारे में खावंद उसके कौल को कबूल करता है, इसी तरह जैसे इद्दत के बारे में औरत के कौल को कबूल किया जाता है, तो यहां भी औरत के कौल को कबूल किया जाएगा, क्योंकि एक हैज ऐसी चीज है जिसका पता औरत से ही चल सकता है। भाई ये तो एक सूरत खशयान की मैंने जिक्र की कि सोहबत के बारे में भी खावंद औरत का कौल कबूल करेगा। अगर औरत कहे कि मैं पाक हूं तो खावंद के लिए सोहबत जायज होगी, और अगर बीवी कहे कि मैं पाक नहीं हूं हैज की हालत में हूं तो खावंद के लिए भी सोहबत जायज नहीं होगी। या दूसरी सूरत सोहबत की ले लें, एक शख्स ने एक औरत को तलाक दे दी है, कुछ मुद्दत के बाद वही औरत दोबारा इसके पास आई कि मेरे साथ निकाह कर लो, मेरे साथ निकाह कर लो, मैंने फला आदमी से निकाह किया था इस दौरान, इद्दत के बाद मैंने फला आदमी से निकाह किया था और उसने मेरे साथ सोहबत भी कर ली थी और फिर उसने मुझे तलाक दी है, अब मैं दोबारा आपसे निकाह करना चाहती हूं। आपने पढ़ा है कि खावन जब बीवी को तीन तलाकें दे दे तो जरूरी है कि वह औरत अब किसी और से निकाह करे, और सिर्फ निकाह काफी नहीं, उसका सोहबत करना भी जरूरी है। फिर उसके बाद अगर वो तलाक देता है या उसका इंतकाल हो जाता है तो अब औरत पहले खावंद के लिए हलाल हो गई। तो यहां पर भी औरत अगर आकर ये कहती है कि मैंने निकाह किया था और दूसरा शख्स मेरे साथ सोहबत कर चुका है, तो इस सोहबत में औरत की बात कबूल की जाएगी। बात समझ में आ गई? तो पहले खावंद के लिए इसके साथ निकाह जायज हो जाएगा, वो इसके साथ अब निकाह कर सकता है। तो कहते हैं फयुकबलु कौलुहा, तो इस मसले के अंदर भी शर्त के बारे में औरत के कौल को कबूल किया जाएगा, कमा कुबिल फी हक़ल इद्दत वल गशयानी, जैसे औरत का कौल कबूल किया जाता है इद्दत और सोहबत के बारे में, वलाकिन्नहा शाहिदतुन फी हक़ ज़र्रतिहा, लेकिन यह औरत तो गवाह है फी हक़ ज़र्रतिहा अपनी सौकन के हक में, बल ही मुत्तहमतुन, बल्कि ये तो मुत्तहमा है, फला युक्बलु कौलुहा फी हकिहा, लिहाजा उसके हक में इसके कौल को कबूल नहीं किया जाएगा। अपने बारे में कौल कबूल कर लेंगे, इस औरत को तलाक हो जाएगी, खावन बेशक रद्द कर रहा है फिर भी इसको तलाक हो जाएगी, लेकिन सौकन के हक में इसके कौल को कबूल नहीं करेंगे कि सौकन को तलाक हो गई है। वजह यह कि यह सौकन के खिलाफ गवाही दे रही है। खावन ने क्या कहा था, अगर तुझे हैज आया तो तुझे भी तलाक है और मेरी फुलानी बीवी को भी तलाक है, तो इस औरत के बारे में तो इस कौल को कबूल कर लिया जाएगा कसम के साथ, लेकिन सौकन के बारे में कबूल नहीं किया जाएगा, क्योंकि गोया यह सौकन के खिलाफ गवाही दे रही है। क्या कर रही है? सौकन के खिलाफ गवाही दे रही है, और गवाही तो सिर्फ अकेली औरत की काबिल कबूल नहीं, दो मर्द होने चाहिए या एक मर्द और दो औरतें, उससे किसी चीज का इस्बात हो सकता है। तो लिहाजा चूंकि ये अकेली है इसलिए इसकी गवाही कबूल नहीं, या इनीस इसलिए भी कि वो दूसरी औरत तो इसकी सौकन है और इसके तो दिलों में बदगुमानी आती है कि ये उसकी तलाक की वजह से ऐसा कह रही है कि मुझे हैज आ गया है। तो ये माना है वलाकिन नहा शाहिदतुन फी हक़ ज़र्रतिहा, लेकिन ये औरत तो गवाह है अपनी सौकन के हक में, यानी तलाक के सिलसिले में कि उस पर तलाक वाकई हो जाए, बल हिया मुत्तहमतुन, बल्कि ये तो मुत्तहमा है, यानी इसके बारे में तो दिलों में बदगुमानी आती है कि ये उसको नुकसान पहुंचाने के लिए यूं कह रही है ताकि उसको भी तलाक हो जाए। भाई तो तोहमत किसे कहते हैं? बदगुमानी को। ये मुत्तहम है यानी इसके बारे में दिलों में बदगुमानी आती है। फला युकबलु कौलुहा फी हक़िहा, लिहाजा इस औरत का कौल इसकी सौकन के हक में कबूल नहीं किया जाएगा। आगे देखिए वकदालिका लौ قال ان كنت تحبين ان يعذبك الله في نار جهنم فانت طالق وعبدي حر فقالت احبه او قال ان كنت تحبيني فانت طالق وهذه معك فقالت احبك طلقت هي ولم يعتق العبد ولا تطلق صاحبتها। अच्छा, सूरत मसला ये, खावन ने बीवी से कहा अगर तुझे यह पसंद है कि अल्लाह तुझे जहन्नम का अजाब दे तो तुझे तलाक है, अगर तुझे यह पसंद है कि अल्लाह ताला तुझे जहन्नम की आग में अजाब दे तो तुझे तलाक है। औरत कहती है मुझे पसंद है, तो साथ ही तलाक हो गई, साथ ही तलाक हो गई, क्योंकि खावन ने तलाक को मुअल्लक किया था किस चीज के साथ? औरत के जहन्नुम के अजाब के पसंद करने के साथ, और औरत ने खबर दे दी अपनी जात के बारे में, खबर दे दी कि मुझे पसंद है, तो तलाक वाकई हो जाएगी। इस पर इश्काल होता है, भाई जहन्नुम का अजाब कौन पसंद कर सकता है? लिहाजा यहां तो यकीनी तौर पर औरत झूठ बोल रही है, यकीनी तौर पर झूठ बोल रही है। जब ये झूठ बोल रही है तो खावन ने तो तलाक को मुअल्लक किया था किसके साथ? जहन्नुम के अजाब के पसंद करने के साथ, और ये झूठ बोल रही है क्योंकि जहन्नुम का अजाब किसी को पसंद नहीं हो सकता भाई, लिहाजा तलाक वाकई नहीं होनी चाहिए। तो आपको साहिब हिदाया बतलाएंगे, साहिब हिदाया बतलाएंगे कि नहीं, इसका झूठा होना अभी भी यकीनी नहीं हो सकता है। ये इस शख्स से इतनी नफरत करती हो कि अजाब के बदले में भी इससे जान छुड़ाने पर तैयार हो जाए, तो लिहाजा इसका झूठा होना भी यकीनी नहीं है। तो लिहाजा इसने जब खबर दे दी है अपने बारे में, पसंद करने का तो पता इसी औरत से चल सकता है कि एक चीज को पसंद करती है या पसंद नहीं करती। जब इसने एक चीज की खबर दे दी है तो इसके कहने से तलाक वाकई हो जाएगी, जब इसने कह दिया कि मुझे पसंद है। तो कहते हैं वकदालिका लौ काला, और इसी तरह अगर खावन ने बीवी से कहा इन कुंती तुहिब्बीना, अगर तुझे यह बात पसंद है अन युअद्दिबकिल्लाहु फी नारी जहन्नमा, कि अल्लाह ताला तुझे अजाब दे जहन्नम की आग में, फअंति तालिकुन, तो तुझे तलाक है, वअब्दी हुर्रुन, और मेरा गुलाम आजाद है। हां एक और चीज भी खावन ने जिक्र की थी, तुझे तलाक है और मेरा गुलाम आजाद है, तो इसकी अपनी जात के औरत के जात के बारे में तो इसकी बात कबूल की जाएगी, इसको तलाक हो जाएगी, लेकिन गुलाम आजाद नहीं होगा। फअंति तालिकुन वअब्दी हुर्रुन, तो तुझे तलाक है और मेरा गुलाम आजाद है। फकालत उहिब्बुहू, वो औरत कहती है मुझे पसंद है, और याद रखो ये उसी मजलिस में कहती है, किसमें? मालूम हुआ खावंद उसको तलाक का इख्तियार दे रहा है, तलाक का मालिक बना रहा है, अगर तुझे जहन्नम का अजाब पसंद है तो तुझे तलाक है, गोया तलाक का मालिक और बना रहा है, उसे तलाक का इख्तियार दे रहा है। तो उसी मजलिस में औरत की तरफ से जवाब जरूरी है भाई, कि उसी मजलिस में कहे मुझे जहन्नम का अजाब पसंद है, तो फिर इस सूरत में तलाक वाकई हो जाएगी। तो कहते हैं फकालत उहिब्बुहू, तो उस औरत ने उसी मजलिस में कह दिए कि मुझे पसंद है। औ काला, या खावन ने उसे कहा इन कुंती तुहिब्बीनी फअंती तालिकुन वहादिही माकी, अगर तू मुझसे मोहब्बत करती है फअंती तालिकुन वहादिही माकी, तो तुझे भी तलाक है और तेरे साथ मेरी इस बीवी को भी तलाक है, अगर तू मुझसे मोहब्बत करती है। या नफरत को जिक्र करता है, इन तुबगिज़ीनी, अगर तू मुझसे नफरत करती है तो तुझे भी तलाक है और मेरी इस बीवी को भी तलाक है। खावन ने यूं कहा फकालत उहिब्बुका, तो औरत जवाब में कहती है हां मैं तुझसे मोहब्बत करती हूं, तुल्लिकत हिया, तो इस औरत को तलाक हो जाएगी, औरत को तलाक, लेकिन दूसरी औरत को तलाक नहीं होगी, दूसरी औरत को तलाक नहीं होगी। अब वो जिक्र करेंगे, तो कहते हैं तुल्लिकत हिया, दोनों सूरतों के अंदर औरत को तलाक हो जाएगी। वलम यातिकिल अब्द वला तुतल्लकु साहिबतुहा, लेकिन वो गुलाम आजाद नहीं होगा और ना उसकी औरत की साथी दूसरी औरत जो है उसको तलाक होगी। लिमा बैयन्ना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि अपनी जात के बारे में यह अमीना है, अपनी जात के बारे में खबर देगी तो हम कबूल करेंगे, तो इससे इसकी अपनी तलाक तो वाकई हो जाएगी, हमने कबूल कर लिया, लेकिन गैर के बारे में इसकी बात को कबूल नहीं किया जाएगा। तो कहते हैं लिमा बैयना, उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि अपने बारे में इसकी बात कबूल की जाएगी, क्योंकि अपनी जात के बारे में यह अमीना है। वला यतयक्कनु बिकज़्बिहा, ये वही एतराज का जवाब दे रहे हैं, एतराज ये कि औरत ने कहा मुझे जहन्नम का अजाब पसंद है, तो इसमें तो उसका झूठा होना यकीनी है, तो जवाब दे रहे हैं साहिब हिदायत के नहीं, इसका झूठा होना अब भी यकीनी नहीं हो सकता है, ये खामन से इतनी ज्यादा नफरत करती हो कि जहन्नुम के अजाब के बदले में ही इससे छुटकारे को पसंद करे। तो कहते हैं वला यतयक्कनु बिकज़्बिहा, और इस औरत के झूठा होना यकीनी नहीं, लिअन्नहा लिशिद्दति बुग़्ज़िहा इय्याहु, इसलिए क्योंकि औरत जो है अपने इस खावन से शदीद बुग़्ज़ की वजह से, क़द तुहिब्बु तख़लीसा मिन्हु बिल अज़ाबी, वो पसंद करेगी इससे छुटकारे को, बिल अज़ाबी, अज़ाब के बदले में। आगे देखिए, वफी हकीहा अंत अल्लकल हुक्म भी अखबारिहा, वफी हकीहा और खुद इस औरत के हक में अंत अल्लकल हुक्म भी अखबारिहा, यह हुक्म मुतालिक हो जाएगा इसकी खबर से। ये जो तलाक वाला हुक्म जो है ये मुतालिक होगा इसकी खबर से। जब इसने खबर दे दी मैं पसंद करती हूं या मैं मोहब्बत करती हूं तो बस इसके बारे में कबूल करेंगे और खुद इसको तलाक हो जाएगी, लेकिन गैर के हक में कबूल नहीं करेंगे। तो कहते हैं वफी हकीहा अंत अल्लकल हुक्म भी अखबारिहा, खुद इस औरत के अपने हक में इस हुक्म का ताल्लुक जो है इसकी खबर देने के साथ होगा। व इन कानत काज़िबतन, अगरचे ये झूठी हो, बेशक ये झूठ बोल रही है लेकिन दारो मदार इसके खबर देने पर है, खबर तो इसने दी है कि ऐसा है, खबर तो दारो मदार किस पर है, खबर देने पर है, बाकी दिल की हालत वो तो अल्लाह जानते हैं, इसने तो कह दिया कि ऐसा है, तो चाहे झूठी खबर दे फिर भी वो जजा वाके हो जाएगी। जबकि फफी हक गैरिहा, जबकि इसके अलावा के हक में बकियल हुक्म अलल असल, हुक्म अपनी असल पर ही बाकी रहेगा। वही अल महब्बत, और वो महब्बत है यानी पसंद करना, वो पसंद करना। याद रखो जाबता ये है, जाबता ये है कि औरत के अपने हक में तो उसकी खबर का एतबार किया जाएगा, औरत के अपने हक में तो उसकी खबर का एतबार किया जाएगा, लेकिन गैरों के हक में उसकी खबर का एतबार नहीं करेंगे बल्कि हकीकत शय को देखेंगे। हकीकतन अगर यह जहन्नुम के आजाब को पसंद करती है तो फिर गुलाम भी आजाद हो जाएगा। खावन ने क्या कहा था, फांति तालिकू व अब्दी हुर्रुन, अगर तू जहन्नुम के आजाब को पसंद करती है तो तुझे तलाक है और मेरा गुलाम आजाद है। औरत ने कहा मैं जहन्नुम के आजाब को पसंद करती हूं, तो अपने बारे में तो औरत की यह खबर कबूल कर ली जाएगी, लेकिन गैर के हक में हकीकत को देखा जाएगा कि हकीकतन जब यह जहन्नुम के आजाब को पसंद करेगी तब गुलाम आजाद होगा, और हकीकत का तो यहां पता चल ही नहीं सकता क्योंकि औरत के दिल की बात है, तो लिहाजा यहां गुलाम आजाद नहीं होगा। इसी तरह खावन ने बीवी से कहा अगर तू मुझसे मोहब्बत करती है तो तुझे भी तलाक है और मेरी इस बीवी को भी तलाक है। औरत ने क्या कहा, मुझे तुझसे मोहब्बत है, तो इसकी अपने हक में तो इसकी खबर मोतबर है, खुद इस औरत को तो तलाक हो जाएगी, लेकिन इसकी दूसरे के बारे में इसकी खबर का एतबार नहीं बल्कि हकीकत हाल को देखा जाएगा। अगर यह औरत हकीकत में खावन से मोहब्बत करती है फिर तो इस दूसरी को भी तलाक होगी वरना नहीं, और हकीकत मोहब्बत का तो पता चल ही नहीं सकता, वो तो औरत के दिल की बात है। बात समझ में आ गई, यह माना है। दोबारा देख लीजिए तर्जमा, कहते हैं वफी हकीहा अंताल लकल हुक्म भी अखबारिहा, और खुद इस औरत के बारे में ये जो हुक्म का ताल्लुक इसकी खबर के साथ होगा। वह इनकानत का जिबतन, अगरचे ये औरत झूठी हो, फफी हकी गैरिहा बकियल हुक्म अलल असली, तो इसके अलावा बाकियों के हक में हुक्म अपनी असल पर बाकी रहेगा। वही अल महब्बतु, और असल तो क्या है, वो महब्बत है, यानी हकीकतन जब महब्बत पाई जाएगी फिर ही दूसरे के हक में भी वो तलाक या आजादी वाकई होगी, लेकिन हकीकत का तो यहां पता नहीं चल सकता। तो जब शर्त का इलम न हो सके, याद रखो जब शर्त का इलम न हो सके तो जजा नहीं आती, जब शर्त का इलम न हो सके तो जजा नहीं आती। जैसे देखो आगे साहिब हिदाया भी जिक्र फरमाएंगे, एक शख्स बीवी को तलाक देते हुए साथ इंशाअल्लाह की कैद लगा देता है, अंति तालिकुन इंशाअल्लाह ताला, तुझे तलाक है अगर अल्लाह चाहते हैं जी। तो उसने तलाक को मुअल्लक कर दिया अल्लाह की मशीयत के साथ, और अल्लाह की मशीयत का तो हमें इलम नहीं हो सकता, और जब शर्त का इलम ना हो तो जजा भी वाकई नहीं, लिहाजा वो जजा यानी वो तलाक वाकई नहीं होगी। आगे देखिए वह इदा काल लहा इदा हिस्तीफा अंति तालिकुन, और जब खावन ने बीवी से कहा इदा हिस्तीफा अंति तालिकुन कि जब तुझे हैज आए तो तुझे तलाक है, उसके बाद औरत ने खून देखा, तो खून देखते ही फौरन हम ये नहीं कहेंगे ये हैज आ गया लिहाजा औरत को तलाक हो गई। खावन ने भी क्या कहा था, तुझे हैज आए तो तुझे तलाक है, लेकिन खून देखते ही फौरन हैज का हुक्म नहीं लगाएंगे बल्कि तीन दिन इंतजार करेंगे। अगर वो खून तीन दिन तक मुसलसल रहा, अब पता चल जाएगा ये हैज है, क्योंकि हैज की कम से कम मुद्दत तीन दिन है। अगर इसे पहले ही खून रुक गया, मालूम हुआ यह इस्तेहाजा है, यह हैज नहीं है। तो लिहाजा तीन दिन इंतजार करेंगे, तीन दिन जब पूरे हो जाएंगे अब पता चला यह हैज था, लिहाजा तलाक वाकई हो गई। लेकिन इस वक्त वाकई नहीं हुई, जिस वक्त इसने खून देखा था, जिस वक्त हैज शुरू हुआ था, उसी वक्त से गोया तलाक वाकई हो चुकी है, उसी वक्त से तलाक वाकई हो चुकी है। देखो मसलन एक शख्स है, उसने नया निकाह किया है और औरत की भी रुख्सती नहीं हुई, खावंद ने भी सोहबत नहीं की, और खावंद उसको क्या कहता है, इन हिस्तिफानती तालिकुन, किसी बात पर खावंद नाराज हुआ, उसने कहा इन हिस्तिफानती तालिकुन, अगर तुझे हैज आया तो तुझे तलाक है, हैज आया तो तुझे तलाक है। और औरत को जैसे ही हैज शुरू हुआ तो साथ ही तलाक भी हो गई, और औरत गैर मदखूल बिहा है, इस पर इद्दत भी नहीं, फौरन ही बाइना भी हो गई, और इसने फौरन उसी दिन जो है एक दूसरी जगह निकाह भी कर लिया, दूसरी जगह निकाह भी कर लिया। भाई अभी तो पता ही नहीं ये हैज है भी या नहीं, कहीं इस्तेहाजा ना हो, तो तीन दिन इंतजार करेंगे। तीन दिन तक अगर ये खून मुसलसल रहा, मालूम हुआ औरत के खून शुरू होते ही तलाक हो गई थी, लिहाजा इसका दूसरा निकाह सही हो गया जी। और अगर दरमियान में खून रुक गया, मालूम हुआ ये इस्तेहाजा था, मालूम हुआ उस औरत का वो निकाह सही नहीं है। भाई बात समझ में आ गई। तो कहते हैं वह इदा काल अलहा, और अगर खावन ने बीवी से कहा इदा हिस्तिफानती तालिक उनकी, जब तुझे हैज है तो तुझे तलाक है, फराती दामत, औरत ने खून देखा, लम यकई तलाक हत्ता यस्तमिर रसला सता अयामिन, तो तलाक वाकई नहीं होगी यहां तक कि वह खून मुसलसल तीन दिन रहे, ले अन्नमायन कते दून हो ला यकून हैजन, इसलिए क्योंकि वह खून जो मुनकते हो जाए इससे कम में, ला यकून हैजन, वह हैज नहीं होगा। फैदा तम्मत सलासतु अय्यामिन, जब तीन दिन पूरे हो जाएं, हकम ना बि तलाक मिन हीना हाजत, तो हम तलाक का हुक्म लगाएंगे मिन हीना हाजत, जिस वक्त औरत हायजा हुई थी। हीन वक्त के माना में है, और आप यहां यूं भी पढ़ सकते हैं मिन हीनी हाजत, नून के नीचे जेर भी और जबर भी पढ़ सकते मिन हीना हाजत। वजह यह कि जर्फ की इजाफत जब जुमले की तरफ हो जाए तो उस पर फतहा पढ़ना भी जायज है, मबनी अल फतह पढ़ना भी जायज, तो मिन हीना हाजत। और अगर आप मबनी नहीं पढ़ते इसको तो फिर मीन की वजह से जर भी पढ़ सकते हैं मिन हीनी हाजत। तो कहते हैं हकम ना बि तलाक मिन हीना हाजत, तो हम तलाक का हुक्म लगाएंगे जिस वक्त से वो औरत हायजा हुई थी, ले अन्नहु बिल इम्तिदादी उरिफा अन्नहु मिनर रहीमी, इसलिए क्योंकि खून के लंबा होने से ये जान लिया गया कि ये खून रहम से था, फकान हैजम मिन अल इब्तिदाई, तो ये इब्तिदा से ही हैज था, लिहाजा उस वक्त से ही तलाक वाकई हो गई। वलव काल अलहा इदा हिस्त हैजतन फअंति तालिकुन, दूसरी मिसाल, अब खावंद हैजतन मस्तर भी ले आता है और कहता है इदा हिस्ती हैजतन फअंति तालिकुन, तो याद रखो हैजतन ये पूरे हैज को कहते हैं, हैजतन ये ता किस लिए है, वहदत की है, एक हैज, तो लिहाजा पूरा हैज जब होगा तब औरत को तलाक होगी, उससे पहले नहीं। भाई तो पिछले मसले में तो खून जारी होते ही उसको तलाक हो गई थी, लेकिन पता तीन दिन बाद चला था कि यह हैज ही है, जबकि यहां पर खामन ने कहा जब तुझे पूरा एक हैज आ जाए तो तुझे तलाक है, तो जब हैज खत्म होगा फिर तलाक वाकई होगी। तो कहते हैं वलव काल अलहा, और अगर खामन ने बीवी से कहा इजा हिस्त हैजतन फांति तालिकुन, कि जब तुझे एक हैज आ जाए तो तुझे तलाक है, लम तो तल लखा थोरा मिन हैजिहा, तो औरत को तलाक नहीं होगी यहां तक कि अपने हैज से पाक हो जाए, हैज के खत्म होने का पता पाकी से ही चलेगा ना, पाक हो गई तो मालूम हैज गुजर गया, एक पूरा हैज आ गया है, लिहाजा तलाक हो जाएगी। लिअन्न अल-हैज़ता बिल्हा इहियल कामिलतु मिन्हा, लिअन्न अल-हैज़ता, इसलिए क्योंकि यह हैज का जो लफ्ज है बिल्हा ई हा के साथ, हा से मुराद है गोलता, जो वक्फ की हालत में हा बन जाती है। तो कहते हैं लिअन्न अल-हैज़ता बिल्हा ई, इसलिए क्योंकि ये जो हैज़तुन का लफ्ज है हा के साथ, हियल कामिलतु मिन्हा, ये वो है जो हैज में से पूरा हो, वलिहाजा हुमिला अलैहि फी हदीस इस्तिबराई, और इसीलिए पूरे हैज पर महमूल किया गया है इस लफ्ज को, फी हदीस इस्तिबराई, हदीस इस्तिबरा में, हदीस इस्तिबरा में जो हैजतुन का लफ्ज आया है उसको भी एक पूरे हैज पर ही महमूल किया गया है। इस्तिबरा का माना है रहम की सफाई, रहम की सफाई। यह हदीस मेरे हाशिए में दी हुई है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال في سبايا اوطاسين कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औतास के कैदियों के बारे में फरमाया ला तू तो हामिल हत्ता तजा वला गैर उजात हमल हत्ता तहीज हैजतन। भाई कदीम जमाने के अंदर जो कैदी बनाए जाते थे वो गुलाम और बांदियां बना ली जाती भाई, तो वो तकसीम मुजाहिदीन में फिर तकसीम होती थी भाई। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने औतास के कैदियों के बारे में फरमाया था, आपने फरमाया ला तू तो हामिल हत्ता तजा के हामिला से सोहबत न की जाए हत्ता तजा यहां तक कि वो वज़ह हमल कर दे। यह मसला पीछे जिक्र हो चुका है, बात समझ में आ गई कि अगर कैदी औरत हामिला है तो उस सूरत में वज़ह हमल तक उसके साथ सोहबत नहीं की जाएगी। वही हुजूर जिक्र फरमा रहे हैं ला तू तो हामिल हत्ता तजा के हामिला से वती न की जाए यहां तक कि वो वज़ह हमल कर दे वला गैरु जाती हमलिन हत्ता तहीज हैजतन और जो हमल वाली नहीं है उसके साथ भी वती न की जाए हत्ता तहीज हैजतन यहां तक कि उसको एक पूरा हैज आ जाए। पूरा हैज आ जाएगा तो मालूम हुआ यह औरत हामिला नहीं, इस्तेबरा पाया गया, रहम की सफाई हो गई, उसके बाद वती हलाल हो जाएगी मालिक के लिए। तो यहां हदीस के अंदर भी हैजतन के लफ्ज से क्या मुराद है, पूरा हैज मुराद है। तो यह माना है वलिहाजा हुमिला अलैहि फी हदीस इस्तिबराई और इसीलिए एक पूरे हैज पर महमूल है यह हैजतुन का लफ्ज जो हदीस इस्तिबरा में आया है। व कमालुहा बिंतिहा इहा और हैज का पूरा होना बिंतिहा इहा उसके खत्म हो जाने से होता है। वजालिका बितोहरी और ये तोहर के जरिए होगा, जब तोहर आ गया मालूम हुआ हैज पूरा हो गया है। वह इजा काल अंति तालिकुन इदा सुमती यौमन, सूरत मसला ये खामन ने बीवी से कहा इजा सुमती यौमन फ अंति तालिकुन, इजा सुमती यौमन फ अंति तालिकुन, जब तू एक दिन का रोजा रखे तो तुझे तलाक है। तो औरत जब रोजा रखेगी तो शाम को जाकर रोजा पूरा होगा। खामन ने भी क्या कहा है, जब तू रोजा रखे यौमन एक दिन, तो यहां यौम आया और आपको साहिब हिदायत ने बतलाया था कि यौम का माना नहार भी है यानी सुबह से शाम तक का जो वक्त है, और यौम मुतलक वक्त के माना में भी आता है। तो वो यौम जिस फेल के लिए जर्फ बन रहा है उसको देखेंगे, अगर वो फेल मुमतद है तो फिर यौम से मुराद नहार होगा यानी सुबह से शाम तक, और अगर वो फेल गैर मुमतद है उसमें तूल नहीं है तो फिर इस सूरत के अंदर यौम मुतलक वक्त के माना में होगा। और यहां पर यौम के साथ सौम का जिक्र है, इदा सुमती यौमन, जब तू एक रोजा रखे, और रोजा वो तो सुबह से शाम तक होता है, उसमें तो इम्तेदाद होता है, वो लंबा होता है। तो मालूम है यहां यौम से मुराद नहार है। तो जब रोजा रखेगी तो उस दिन जब सूरज गुरूब होगा तो अब उस औरत को तलाक हो जाएगी। और अगर इसके बजाय खावन ने सिर्फ इतना कहा अंति तालिकुन इदा सुमती, इदा सुनती जब तू रोजा रखे तो तुझे तलाक है, तो यहां यौम की कैद नहीं है, यौम की कैद नहीं। जब यौम की कैद नहीं है तो थोड़ी देर का भी रोजा पाया गया तो तलाक हो जाएगी, थोड़ी देर का रोजा भी पाया गया तो तलाक हो जाएगी। खावन ने क्या कहा है, अंति तालिकुन इजा सुनती, तुझे तलाक है जब तू रोजा रखे, तो औरत जैसे ही सुबह रोजा रखेगी साथ ही तलाक हो जाएगी, क्योंकि एक लम्हे का रोजा तो पाया गया या नहीं जी। रोजा शुरू हो गया, जब रोजा शुरू हुआ तो रोजा पाया गया, और खामन ने भी क्या कहा था जब तू रोजा रखे तो जैसे ही रोजा पाया गया साथ ही तलाक हो गई। तो कहते हैं वह इदा काल अंति तालिकुन इदा सुमती यौमन, और जब खामन ने बीवी से कहा कि तुझे तलाक है जब तू एक दिन रोजा रखे, तुल्लिकत हीन तगीबु शम्सु, तो उस औरत को तलाक हो जाएगी, हीन तगीबु शम्सु जिस वक्त सूरज गायब हो जाए यानी सूरज गुरूब हो जाए, फिल यौमिल लदी तसूमु उस दिन में जिस दिन उसने रोजा रखा है, लिअन्नल यौम इदा कुरिन बिफ़िअल मुमतदिन, इसलिए क्योंकि यौम के लफ्ज जब उसको मिलाया जाए फ़िअल मुमतद के साथ यानी ऐसा फेल जिसमें इम्तेदाद है, तूल है, लंबाई है, तो युरादु बिही बयाज़ुन नहारी, तो फिर इस सूरत में यौम से मुराद बयाज़ुन नहारी दिन की रोशनी होती है, दिन का उजाला होता है, यानी नहार मुराद है सुबह से शाम तक। बिखिलाफ इमा इदा काल अल्लाह इदा सुनती, बखिलाफ इस सूरत के कि जब खामन ने बीवी से कहा कि तुझे तलाक है, इदा सुमती, जब तू रोजा रखे, ले अन्नहु लम युकद्दिर हु बिमियारिन, क्योंकि खावन ने इस रोजे को मुकर्रर नहीं किया, बिमियार इन किसी पैमाने के साथ, यानी इसके साथ वक्त जिक्र नहीं किया। पहले तो था एक दिन रोजा रखे, तो पूरा दिन जब रोजा रख लेगी तो सूरज गुरूब होते ही उसको तलाक हो जाएगी। अब तो उसने कोई यौम जिक्र नहीं किया, कोई वक्त का पैमाना जिक्र नहीं किया, लिहाजा रोजा रखते ही फौरन उसी वक्त तलाक हो जाएगी, सुबह सवेरे भाई। तो कहते हैं ले अन्नहु लम युकद्दिरहु बिमियारिन, इसलिए क्योंकि खावन ने इस रोजे को मुकर्रर नहीं किया किसी पैमाने के साथ। वक़द वुजिदा सौम बिरुक्निही व शर्तिही, और तहकीक रोजा पाया गया है अपने रुकन और शर्त के साथ। रोजे का रुकन क्या है? खाने पीने और सोहबत से इंसान रुका रहे, तो लिहाजा ये रोजे के अरकान, सुबह जैसे ही रोजा उसने शुरू किया रोजे के अरकान पाए गए। क्या? खाने से भी बची हुई है, पीने से भी, और सोहबत भी नहीं है इस वक्त, तो एक लम्हे के लिए रोजा पाया गया। और रोजे की शर्त भी पूरी है। रोजे की क्या शर्त है? कि औरत हैज और निफास की हालत में ना हो भाई। तो रोजे की शर्त भी पूरी थी और रोजे का रुकन भी पाया गया, तो जैसे ही रोजा शुरू हुआ साथ ही तलाक हो गई, क्योंकि एक लम्हे का तो रोजा पाया गया और खामन ने भी कहा था जब तू रोजा रखे। तो यह माना है वक़द वुजिदा सौम, और तहकीक रोजा पाया गया है, बिरुकनी ही अपने रुकन के साथ, यानी खाने पीने और सोहबत से रुकने के साथ, व शर्ती ही और अपनी शर्त के साथ कि औरत हैज़ व निफास में न हो। वमन कालल इमराती ही इदा वलत गुलामन फअंति तालिकुन वाहिदतन, सूरत मसला ये, बीवी हामिला है, खावन ने बीवी से कहा अगर तूने लड़के को जन्म दिया तो तुझे एक तलाक है, और अगर तूने लड़की को जन्म दिया तो तुझे दो तलाकें हैं। औरत ने लड़के और लड़की दोनों को जन्म दे दिया, और फिर अगर लड़का पहले पैदा हुआ है तो औरत को एक तलाक हो जाएगी, और अगर लड़की पहले पैदा हुई है तो औरत को दो तलाकें हो जाएंगी। तवज्जो है, क्योंकि जैसे ही लड़का पैदा होगा, जैसे ही लड़का पैदा होगा, औरत को एक तलाक हो गई। भाई देखो, खावन ने क्या कहा? अगर लड़का पैदा हुआ तो तुझे एक तलाक, अगर लड़की पैदा हुई तो तुझे दो तलाकें। तो अगर पहले लड़का हुआ तो औरत को एक तलाक हो गई, उसके बाद अब लड़की जब पैदा होगी, अब दो भी होनी चाहिए लेकिन दो नहीं होंगी। दो क्यों नहीं होंगी? क्योंकि जैसे ही लड़का पैदा हुआ इसको तलाक हो गई, और तलाक के बाद अभी लड़की पैदा नहीं हुई, तो और ये औरत हामिला है, और हामिला की इद्दत क्या है? वज़ए हमल। तो लिहाजा लड़के के पैदा होते एक तलाक तो वाकई हो गई, अब लड़की के पैदा होने पर दो तलाकों ने वाकई होना है, लेकिन इधर लड़की की पैदाइश हो रही है, इधर उसके साथ इद्दत पूरी हो रही है हामिला की। जब लड़का पैदा हो गया, लड़की तो अभी पैदा नहीं हुई, तो औरत तो हामिला है, और हामिला पर तलाक आ गई, और हामिला की इद्दत क्या होती है? वज़ए हमल। क्या इद्दत होती है? वज़ए हमल इद्दत होती है। लिहाजा जब ये लड़की पैदा होगी उसके साथ ही इस औरत की इद्दत पूरी हो रही है, तो जिस लम्हे में इद्दत पूरी हो रही है उसी लम्हे में दो तलाकें भी आ रही हैं, लेकिन अब वो दो वाकई नहीं होंगी क्योंकि ये तो इद्दत पूरी हो गई, इद्दत के पूरे होते हुए तो तलाकें वाकई नहीं हो सकती, तो सिर्फ एक ही तलाक वाकई होगी और इद्दत भी पूरी हो गई। और अगर इसके बरक्स हुआ, पहले लड़की पैदा हुई और फिर लड़का पैदा हुआ, तो लड़की पैदा होते ही औरत को दो तलाकें हो गईं, लेकिन अभी लड़का पैदा नहीं हुआ तो औरत हामिला है, जब हामिला है तो हामिला को दो तलाकें हो गई हैं, और हामिला की इद्दत क्या है? वज़ए हमल। लिहाजा इधर जैसे ही लड़की की पैदाइश होगी साथ ही इद्दत पूरी हो रही है, लिहाजा वो जो लड़के की पैदाइश के साथ तलाक मुअल्लक थी वो वाकई नहीं होगी, तो औरत दो तलाकों के साथ बाइना हो गई, इद्दत पूरी हो गई, अब ये जहां चाहे निकाह कर सकती है। और अगर इसी खामन से निकाह करेगी अब वो सारी जिंदगी एक तलाक का मालिक है भाई। बात समझ में आ गई? लेकिन यहां मसला यह है कि पता ही नहीं है पहले लड़का पैदा हुआ है या लड़की पैदा हुई है, तो अब क्या करेंगे? तो अब वो साहिबे हिदाय आपको बतलाएंगे भाई। तो कहते हैं वमन काल लिमरअतिही, और जिस शख्स ने अपनी बीवी से कहा इदा वलत्ति गुलामन, के जब तू लड़के को जन्म दे, गुलाम, गुलाम का लफ्ज लड़के के लिए भी बोलते हैं और गुलाम के लिए भी, तो खावन बीवी से कहता है इदा वलत्ति गुलामन, जब तू लड़के को जन्म दे, फअंति तालिकुन वाहिदतन, तो तुझे एक तलाक है, वइदा वलत्ति जारियतन, और जब तू लड़की को जन्म दे, फअंति तालिकुन सिनतैनी, तो तुझे दो तलाकें हैं, फवलदत गुलामन व जारियतन, तो उसने जन्म दिया एक लड़के और एक लड़की को, वला युदरा अय्युहुमा अव्वलू, और यह मालूम नहीं है कि इनमें से पहला कौन सा है, तो लज़िमहु फिल क़ज़ाई तत्लीक़तुन, तो इस औरत पर लाजिम होगी क़ज़ा में एक तलाक, काजी के पास मसला गया तो काजी एक तलाक का फैसला करेगा। वजह यह कि पता ही नहीं है, अगर लड़का पहले हुआ है तो एक तलाक हुआ है और लड़की पहले पैदा हुई है तो दो तलाकें, तो इस दो में भी एक तलाक तो आ गई, तो लिहाजा एक तलाक का वाकई होना तो यकीनी है हर हाल में, लेकिन दूसरी के वाकई होने में शक आ गया और शक की वजह से तलाक वाकई करार नहीं दी जा सकती, लिहाजा काजी एक ही का फैसला करेगा। यह माना है लजिमा हो फिल कजाई तत्लीकतुन, के लाजिम होगी कजा में उस पर एक तलाक। वफी तनजुही, तनजुह का माना है बचना, बचना। वफी तनजुही तत्लीकतानी, यानी हराम से बचने में तत्लीकतानी, दो तलाकें लाजिम होंगी। हराम से बचने में दो तलाकें लाजिम होंगी, यानी यूं कहो तनजुह का माना कर लें एहतियात के। तनजुह का क्या माना? एहतियात। वैसे तनजुह का माना है बचना, तो हराम से बचने के लिए वैसे दो तलाकें शुमार की जाएं, यानी बाद में अगर खावन इसी औरत से निकाह कर लेता है तो अब यह न समझे कि मेरे पास दो तलाकें हैं, काजी तो एक का फैसला करेगा कि एक तलाक हुई है, दो अभी भी बाकी हैं, लेकिन बतौर एहतियात के खावन यही समझे मेरे पास एक ही तलाक बाकी है, एक भी दे दूंगा तो यह मुझ पर हमेशा के लिए हराम हो जाएगी, यह माना है। तो कहते हैं वफी तनजुही तत्लीकतानी, और तनजुह यानी बतौर एहतियात के दो तलाकें हो जाएंगी, उस खावन पर दो तलाकें लाजिम हो गई, यानी उसकी तरफ से वाकई हो गई। यानी यूं कहो कजान एक तलाक होगी और दयानतन क्या समझे? दो तलाकें समझे भाई, यानी उसका और अल्लाह का मामला है। फिर तर्जमा देख लीजिए, लजिमहु फिल कजाई तत्लीकतुन, लाजिम होगी उस खावन पर कजा के अंदर एक तलाक। वह फिर तनजुही तत्लीकतानी, और हराम से बचने के अंदर दो तलाकें, यानी बतौर एहतियात के दो तलाकें। वन कजातिल इद्दतु, और नीज इस औरत की इद्दत भी गुजर गई, अब खावन इसको रखना चाहता है तो नए सिरे से निकाह करना पड़ेगा और नया महर मुकर्रर करना पड़ेगा भाई। तो कहते हैं वन कजतिल इद्दतु, और इद्दत भी पूरी हो गई जब दूसरा बच्चा पैदा हुआ। लिअन्नहा लौ वलदतिल गुलाम अव्वलन, इसलिए क्योंकि इस औरत ने अगर पहले लड़के को जन्म दिया है। वकअत वाहिदतुन, तो एक वाक्य हो गई। वतनकज़ी इद्दतुहा बिवज़इल जारियति, और इस औरत की इद्दत गुजर जाएगी लड़की को जन्म देने से। सुम्मा ला तक़ऊ उख्रा बिही, फिर दूसरी तलाक वाक नहीं होगी बिही इसकी वजह से, यानी वज़इल जारिया लड़की को जन्म देने की वजह से अब दोबारा दो तलाकें वाकई नहीं होंगी। लिअन्नहु हालुन क़िज़ाइल इद्दती, क्योंकि यह तो इद्दत के पूरा होने की हालत है, इधर लड़की पैदा हो रही है इधर साथ ही इद्दत भी पूरी हो रही है। वलव वलदतिल जारियत अव्वलन, और अगर औरत ने पहले लड़की को जन्म दिया। वक़ात तत्लीकतानी, तो दो तलाकें वाकई हो जाएंगी। वन कज़त इद्दतुहा बिवज़इल गुलामी, फिर और इस औरत की इद्दत पूरी हो जाएगी लड़के को जन्म देने से। सुम्मा ला यक़ऊ शैउन आख़रु बिही, फिर इस लड़के के जन्म देने से कोई और चीज वाकई नहीं होगी। लिमा ज़करना अन्नहु हालुल इन्क़िज़ाई, उस वजह से जो हमने जिक्र कर दिया कि यह इद्दत के पूरा होने का, इद्दत के गुजरने का हाल है। फ़इदन फी हालिन यक़ऊ वाहिदतुन व फी हालिन यक़ऊ सिनतानी, तो जब एक हाल में एक तलाक वाक़े हो रही है और एक हाल में यक़ऊ सिनतानी, दो तलाकें वाक़े हो रही हैं। पता नहीं है लड़के को पहले जन्म दिया है या लड़की को। लड़के को पहले फर्ज करें तो एक तलाक बनती है, लड़की को पहले फर्ज करें तो दो तलाकें बनती हैं। यह माना है फ़ईज़न फी हालिन यक़ऊ वाहिदतुन व फी हालिन यक़ऊ सिनतानी, तो तब एक हाल में एक तलाक वाक़े होती है और दूसरे हाल में दो तलाकें। फला तक़ऊ सानिया, तो बिशक की वल इहतिमाली, तो दूसरी तलाक वाक़े नहीं होगी शक और इहतिमाल की वजह से। लड़के की सूरत में तो एक तलाक है, लड़की की सूरत में दो तलाकें हैं, तो एक का होना तो यकीनी क्योंकि दो के अंदर भी एक तलाक तो आ गई। तो एक तलाक का होना हर हाल में यकीनी है और दूसरी के होने में शक आ गया तो उस शक की वजह से दूसरी तलाक को वाकई करार नहीं दिया जाएगा। यह माना है फला तकाउ सानिया तो भी शक की वल इहतिमाली, तो दूसरी तलाक शक और एहतमाल की वजह से वाकई नहीं होगी। वल औला और बेहतर यह है अन्ना खुजा बिसिन तैनी कि हम दो को लें, हम दो तलाकों को लें, तनाजुहम व एहतियातन हराम से बचने के लिए और बतौर एहतियात के। तनाजुहम व एहतियातन का एक ही माना है, यानी यूं कहिए अत्व तफसीरी है, साहिब हिदाया व एहतियातन के जरिए तनाजुहन का माना बयान कर रहे हैं। मैंने आपको बतलाया था कि मातूफ गैर होता है मातूफुन आलय से, जो पहले आए वह है मातूफुन आलय और बाद वाला है मातूफ, तो दरमियान में वो वगैरह आएगा, ये वो मुगायरत पर दलालत करता है कि ये दोनों अलग अलग हैं। लेकिन बाज औकात उसी मातूफ के जरिए माना बयान किया जाता है मातूफुन अलैह का, इसको अत्वे तफसीरी कहते हैं और इसमें दोनों अलग नहीं होते, एक ही चीज है भाई, क्योंकि मातूफ माना बयान कर रहा है मातूफुन अलैह का भाई, तो दोनों एक ही चीज है। यहां भी इसी तरह है केवल औला अन्ना खुजा भी सिनतैनी और बेहतर यह है कि हम दो तलाकें लें, तनाजुहम व एहतियातन बतौर एहतियात के। वल इद्दत मुनकजिया तुम भी यकीन इन और इद्दत जो है वो गुजर चुकी है भी यकीन इन यकीन के साथ, लिमा बैयन्ना उस वजह से जो हमने बयान कर दिया कि हामिला की इद्दत क्या है वसाए हमल, तो इद्दत का गुजरना यकीनी है। अब खावंद इसको रखना चाहता है तो नया निकाह करना पड़ेगा नए महर के साथ। व इन काला लहा और अगर खावन ने बीवी से कहा इन कल्लम थी अबा अमर व अबा यूसुफ फअंत तालिकुन सलासन, सूरत मसला ये खावन ने तलाक को मुअल्लक कर दिया दो चीजों के साथ। खावन बीवी से कहता है अगर तूने अबू अमर और अबू यूसुफ से बात की तो तुझे तलाक है, अब सिर्फ एक से औरत बात करेगी तो तलाक नहीं होगी, जब दोनों से बात हो जाएगी तो अब औरत को तलाक हो जाएगी। अब हमारे नजदीक याद रखो जाब्ता यह है कि जिससे पहले बात करे उस वक्त खावन की मिल्कियत होना जरूरी नहीं, क्योंकि तलाक ने वाके होना है दूसरे से बात करने पर, लिहाजा उस वक्त खावन की मिल्कियत जरूरी है। लिहाजा खावन ने क्या कहा, अगर तूने अबू अमर और अबू यूसुफ से बात की तो तुझे तलाक है, और फिर बाद में खावन ने औरत को तलाक दे दी, तलाक बाइन, वो एक तलाक अभी भी मुअल्लक है और उससे पहले ही खावन ने एक तलाक बाइन दे दी। अब औरत की इद्दत गुजर गई, वो बाइना हो गई, जुदा हो गई, और फिर इसने पहले आदमी से बात कर ली, अबू आमर से बात कर ली, तो अभी भी तलाक वाके नहीं, क्योंकि अबू यूसुफ से भी बात करेगी तो तब तलाक वाके होगी। फिर बाद में खावन ने इस औरत से निकाह कर लिया, अब यह औरत फिर उसकी मिल्कियत में है लेकिन वह तालीक तो अभी भी मौजूद है, लिहाजा इस निकाह के अंदर अब इस औरत ने अबू यूसुफ से बात कर ली तो अब तलाक वाके हो जाएगी। तो हमारे नजदीक अगर खावन ने दो या तीन चीजों के साथ तलाक को मुअल्लक किया है तो आखिरी फेल आखिरी चीज के पाए जाते हुए मिल्कियत का होना जरूरी है, पहले वालों में मिल्कियत हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि इमाम जुफर फरमाते हैं दोनों के अंदर मिल्कियत जरूरी है, जब अबू अमर से बात करे तब भी खावंद की मिल्कियत हो इस पर, और जब अबू यूसुफ से बात करे तब भी खावंद की मिल्कियत हो, फिर तलाक वाके होगी, वैसे तलाक वाके नहीं होगी। बात समझ में आ गई, देखिए भाई वह इन काल अलहा और अगर खावंद ने बीवी से कहा इन कल्लम थी अबा अमर व अबा यूसुफ फांति तालिकुन सलासन कि अगर तूने अबू अमर और अबू यूसुफ से बात की तो तुझे तीन तलाकें हैं, सुम मतलकहा वाहिदतन फिर खावंद ने उसको एक तलाक दे दी, फबानत तो ये औरत बाइना हो गई, तो कहते हैं फबानत वो बाइना हो गई, वन कजत इद्दतुहा और इसकी इद्दत गुजर गई, फकल्लमत अबा अमरीन तो फिर इसने अबू अमर से बात कर ली, पहले शख्स से बात की है और इस वक्त वो उस आदमी की मनकूहा नहीं है, निकाह बिल्कुल टूट चुका है। सुम्म तज़व्वजहा फिर खावन ने इसी औरत से दोबारा निकाह कर लिया, फकल्लमत अबा यूसुफा अब इस औरत ने अबू यूसुफ से बात कर ली, फहिया तालिकुन सलासन तो अब इस औरत को तीन तलाकें हो गईं, माअल वाहिदतिल उला पहली एक के साथ। खावन ने पहले भी तो एक तलाक दी थी और यह बाइना हो गई थी और फिर इसने निकाह किया है, तो पहले चाहे एक दी थी तो अब दो बाकी थी, और अगर पहले दो दी हुई थी तो अब एक बाकी थी, लिहाजा उनके साथ मिलाकर अब पूरी तीन हो जाएंगी जी। अब पूरी तीन हो जाएंगी, अब औरत इस शख्स पर हमेशा के लिए हराम हो गई। यह माना है, कहते हैं फहिया तालिकुन सलासन माल वाहिदतिल उला, तो इस औरत को तीन तलाकें हो जाएंगी उस पहली एक तलाक के साथ, क्योंकि तलाकें तो हैं ही तीन, एक तो ये पहले ही दे चुका है, दो बाकी थी तो उस एक को मिलाकर कुल तीन पूरी हो जाएंगी। यह माना है फहिया तालिकुन सलासन माल वाहिदतिल उला, तो इस औरत को तीन तलाकें हैं उस पहली एक तलाक के साथ। वकाल जुफर रहमहुल्लाहु ला यकाउ, और इमाम जुफर रहमहुल्लाह फरमाते हैं इस सूरत में तलाक वाकई नहीं होगी। वहादही अला वजूहिन, और ये वाला मसला कई सूरतों पर है, कई सूरत पर है। मसलन देखो, खावंद ने तलाक को मुअल्लक किया है दो चीजों से, या तो वो दोनों मिल्कियत में पाई जाएंगी, या वो दोनों गैर मिल्कियत में पाई जाएंगी तलाक के बाद, या उनमें से पहली जो है वो मिल्कियत में है और दूसरी गैर मिल्कियत में, और चौथी सूरत इसका बरअक्स कि पहली जो है वो गैर मिल्क में है और दूसरी मिल्क में। तवज्जो है, फिर सुनो, यहां चार सूरतें बनती हैं। खावंद ने औरत की तीन तलाकों को मुअल्लक किया है दो चीजों के साथ, एक चीज नहीं जिक्र की, दो चीजें जिक्र की हैं। एक तो सूरत यह है कि ये दोनों चीजें इस खावंद की मिल्कियत में पाई जाएं, खावंद की मिल्कियत, निकाह मौजूद है और इस औरत ने दोनों से बात कर ली तो अब तीन तलाकें हो जाएंगी, हमारे नजदीक भी, इमाम जुफर रहमहुल्लाह के नजदीक भी। दूसरी सूरत, दोनों चीजें गैर मिल्क में पाई गईं, खावन ने तीन तलाकें तो मुअल्लक कर दी लेकिन उनके वाके होने से पहले खावन ने एक तलाके बाइन देकर औरत को जुदा कर दिया अपने से। अब इद्दत गुजर गई, बाद में उस औरत ने अबू आमर से भी बात की और अबू यूसुफ से भी, तो दोनों देखो गैर मिल्कियत में पाई गई, निकाह के बाहर भाई। तो इस सूरत में बिल इत्तेफाक तलाक वाके नहीं होगी, ना हमारे नजदीक और ना इमाम जुफर रहमहुल्ला के नजदीक, क्योंकि उनके नजदीक तो दोनों मिल्क में होना जरूरी है। तीसरी सूरत यह है कि पहली चीज मिल्कियत में होती है और दूसरी मिल्कियत के बाद होती है, यानी औरत ने अबू आमर से तो बात की है निकाह के ही हालत में और फिर खावंद ने एक तलाक दे दी है और औरत बाइना हो गई, जुदा हो गई, इद्दत गुजर गई, फिर उस औरत ने अबू यूसुफ से बात कर ली, तो अब ये दूसरी चीज गैर मिल्कियत में यानी गैर निकाह में पाई जा रही है। तो इस सूरत में भी बिल इत्तेफाक हमारे नजदीक भी तलाक वाके नहीं और इमाम जुफर के नजदीक भी तलाक वाके नहीं। तो मालूम हुआ तीन सूरतों में हमारा और इमाम जुफर का इत्तेफाक है, अगर दोनों मिल्कियत में हुई दोनों चीजें तो बिल इत्तेफाक तलाक वाके हो जाएगी, अगर दोनों मिल्कियत से बाहर हुई तो बिल इत्तेफाक तलाक वाके नहीं होगी, और अगर पहली तो मिल्कियत में है और दूसरी मिल्कियत से बाहर है तो इसमें भी बिल इत्तेफाक तलाक वाके नहीं होगी। लेकिन चौथी सूरत के पहली तो गैर मिल्क में है बात और दूसरी मिल्कियत के अंदर है, इसमें हमारे नजदीक तलाक वाके हो जाएगी और इमाम जुफर के नजदीक तलाक वाके नहीं, क्योंकि दोनों का मिल्कियत में होना जरूरी था। बात समझ में आ गई। देखिए भाई, कहते हैं वहाद ही आला वजूहिन, और यह मसला कई सूरत पर है। इम्मा इम वजिदा शर्तानी फिल मिल्की, या तो दोनों शर्तें मिल्कियत में पाई जाएंगी, फयकउ तलाक, तो तलाक वाके हो जाएगी। वहादा जाहिरुन, और ये तो जाहिर है कि जब दोनों शर्त पाई जाए तो मशरूत भी पाया जाता है तो तलाक वाके हो जाएगी, और खावन मालिक भी है, खावन मालिक भी है, शर्तें पाई गई और खावन मालिक भी है तो तीनों तलाकें वाके हो जाएंगी। अब वो जिदाफी गैर मिल्की, ये दोनों पाई गई गैर मिल्क में, फला या काउ, तो इस सूरत में तलाक वाके नहीं होगी। अब वो जिदल अव्वल फिल मिल्की वसानी फी गैर मिल्की, या अव्वल तो मिल्कियत में पाई जाए और दूसरी गैर मिल्कियत में, फला या काउ ऐसा, तो इस सूरत में भी तलाक वाके नहीं होगी। लिअन अल जजा अला यंजिलु फी गैर मिल्की, इसलिए क्योंकि जजा ने तो दूसरी चीज के बाद आना है, दो चीजों में से जब दूसरी पाई जाएगी तब जजा आएगी, और दूसरी चीज जब पाई गई उस वक्त तो खावन तलाकों का मालिक ही नहीं था, लिहाजा वो यमीन खुल जाएगी और कुछ भी वाके नहीं होगा। तो कहते हैं लिअन अल जजा अला यंजिलु फी गैर मिल्क, इसलिए क्योंकि जजा गैर मिल्क में नाजिल नहीं होती, फला या काउ, लिहाजा वाके नहीं होगी। وجد الاول في غیر الملک, یا اول چیز تو پائی گئی غیر ملک میں, والثانی فی الملک, اور دوسری چیز جو ہے ملکیت کے اندر پائی گئی, خاوند نے دوبارہ اسے نکاح کیا تھا. وہی مسئلۃ الکتاب الخلافیت, اور یہ ہے وہ کتاب والا مسئلہ, الخلافیت اختلافی, یہ ہے وہ کتاب والا اختلافی مسئلہ بھائی جو متن میں ذکر ہے. ہمارے نزدیک جب پہلی غیر ملک میں ہے اور دوسری چیز ملکیت میں ہے تو دوسری کے بعد طلاق نے آنا ہے, اور اس وقت تو خاوند کی ملکیت ہے, لہذا تین طلاقیں واقع ہو جائیں گی. اور امام زفر کے نزدیک دونوں کا ملک میں ہونا ضروری تھا, ان کے نزدیک طلاق واقع نہیں ہوگی. تو کہتے ہیں لہو, امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے, اعتبار الاول بالثانی, وہ اول کو قیاس کرتے ہیں ثانی پر, اذ ہما فی حکم الطلاق کا شیء واحد, اس لیے کیونکہ یہ دونوں طلاق کے حکم میں شیء واحد کی طرح ہیں. امام زفر فرماتے ہیں اگر خاوند صرف ابو عمر کی شرط لگاتا کہ اگر تُو نے ابو عمر سے بات کی تو تجھے طلاق ہے, تو عورت ملکیت میں جب ابو عمر سے بات کرے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو جب ایک چیز ہو اس کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے, تو جب خاوند نے دو چیزوں کی شرط لگائی ہے تو دونوں کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ دونوں بھی ایک کے درجے میں ہیں, یہ دونوں بھی ایک کے درجے میں ہیں, اور ایک کے اندر تو ملکیت ضروری تھی تو ان دو کے اندر بھی ملکیت ضروری ہے بھائی. تو وہ اس اول کو قیاس کرتے ہیں ثانی پر. ثانی پر ہمارے ائمہ کیا فرماتے ہیں, اول ملک میں نہ بھی ہو, دوسری ملکیت میں ہوئی دوسری چیز, تو طلاق واقع ہو جائے گی. تو امام زفر فرماتے ہیں جیسے دوسری کا آپ کے نزدیک ملکیت میں ہونا ضروری ہے, اسی طرح پہلی کا بھی ملکیت میں ہونا ضروری ہے, کیونکہ یہ دونوں شے واحد کے حکم میں ہیں. تو خاوند چاہے دو چیزیں ذکر کرے چاہے دس ذکر کرے, یہ سب ایک ہی چیز کے درجے میں ہوں گی, اور سب کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے. تو کیا دلیل ان کی کہ آپ کے نزدیک جیسے دوسری کا ملکیت میں ہونا ضروری ہے, اسی طرح پہلی بھی تو شرط ہے, اس کا بھی ملکیت میں ہونا ضروری ہے بھائی. دلیل بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لہو, امام زفر رحمہ اللہ کی دلیل جو ہے اعتبار الاول بالثانی, کہ اب وہ اول کو اعتبار کرتے ہیں ثانی پر, اول کو قیاس کرتے ہیں ثانی پر, کہ جیسے ثانی کا ملکیت میں ہونا ضروری, اسی طرح اول کا بھی ملکیت میں ہونا ضروری ہے. اذ ہما فی حکم طلاق کا شیء واحد, اس لیے کیونکہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں طلاق کے حکم میں, کشے ان واحدین, ایک ہی چیز کی طرح ہیں. ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ نصحت الکلام بھی اہلیت المتکلم, کہ کلام کا صحیح ہونا متکلم کی اہلیت سے ہوتا ہے. کلام کا صحیح ہونا میں نے آپ کو بتلایا, تعلیق کے لیے اہلیت چاہیے, انسان کو عاقل بالغ ہو, کیونکہ قسم کسی آدمی کے ذمہ میں رہتی ہے, اسی طرح تعلیق بھی اس کے ذمہ میں رہتی ہے. اور یہاں پر خاوند تعلیق کر رہا ہے, اور خاوند کیا ہے, عاقل بالغ ہے, اس میں اہلیت ہے, اس کے ذمے میں کوئی چیز رہ سکتی ہے, تو اس نے تعلیق کی ہے تو یہ تعلیق اس کے ذمے میں رہے گی. تو کہتے ہیں ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ نصحت الکلام بھی اہلیت المتکلمی, کہ اس کلام کا صحیح ہونا یعنی اس تعلیق کا صحیح ہونا بھی اہلیت المتکلمی, متکلم کے اہل ہونے سے ہے. اس کلام کا صحیح ہونا متکلم کے اہل ہونے سے ہے, یعنی اس کے ذمے سے یہ اس کا تعلق ہے. الا ان الملک یشترط حالت التعلیق, توجہ ہے پھر سنیں, ولنا ان صحت الکلام بھی اہلیت المتکلم, کہ اصل میں تو اس کلام کا صحیح ہونا, اس تعلیق کا صحیح ہونا, اس کا تعلق متکلم کی اہلیت سے ہے, اس کو اہل ہونا چاہیے, اس کے ذمے کوئی چیز رہ سکے, تعلیق اس کے ذمے رہ سکے, وہ بچہ یا مجنون نہ ہو بھائی. تو لہذا اس کلام کا اور اس تعلیق کا صحیح ہونا صرف متکلم پر موقوف ہے, متکلم اہل ہو تو یہ تعلیق کیا ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گی. ہاں البتہ ساتھ ہم ملکیت کی شرط لگاتے ہیں, وہ ہم شرط ہم کیوں لگاتے ہیں, اب وہ بیان کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ولانا ہماری دلیل یہ ہے ان نصحت الکلام بھی اہلیت المتکلم, کہ اس کلام کا صحیح ہونا متکلم کی اہلیت کے ساتھ ہے. الا ان الملک یشترط حالت التعلیق, مگر یہ کہ ملکیت جو ہے وہ شرط ہے حالت التعلیق, تعلیق کی حالت میں. لیسیر الجزاء غالب الوجود, تاکہ جزا غالب الوجود ہو جائے, جزا کا ہونا یقینی ہو جائے, جزا کا ہونا यकीनी हो जाए लिस्तिसहाबिल हाल, इस्तिसहाबे हाल की वजह से, लिस्तिसहाबिल हाल भाई इसको अच्छी तरह समझ लें, इस्तिसहाबुल हाल भाई, इस्तिसहाबे हाल कहते हैं इबका माकाना अला माकाना, कि एक चीज जिस सिफत पर थी उसी पर उसको बाकी करार देना, उसी पर उसको बाकी रखना। फुकहा उसकी मिसाल जिक्र करते हैं, मसलन आप जंगल में जा रहे हैं और वहां कुछ पानी जमा है, अब आपको वुजू की हाजत पेश आई, आप इस पानी से वुजू करना चाहते हैं लेकिन मालूम नहीं ये पानी पाक है या पाक नहीं है भाई, बात समझ में आ रही है। वहां पानी में जाहिर कोई नजासत वगैरह के आसार नहीं है, क्योंकि अगर जाहिरी नजासत वहां मौजूद है फिर तो उसके नापाक होने में कोई शुबा नहीं, लेकिन वैसे पानी जमा है अब पता नहीं ये पाक है या पाक नहीं। तो फुकहा फरमाते हैं इस सूरत में इस्तेसहाबे हाल को दलील बनाया जाएगा, इस्तेसहाबे हाल को दलील बनाया जाएगा। और इस्तेसहाबे हाल किसे कहते हैं, इबका उम्माकाना अला माकाना, एक चीज को बाकी रखना उसी हाल पर जिस पर वो थी। और माजी के अंदर तो ये पानी पाक था, क्योंकि ये पानी कहां से आया, बारिश की वजह से आया, और बारिश का पानी तो पाक होता है, जब यह आसमान से जब नाजिल हुआ उस वक्त यह पाक था, तो इस वक्त भी इसको पाक करार दिया जाएगा। इबका माकाना अला माकाना, एक चीज को उसी हालत पर करार देना जिस हालत पर वो था, माजी के अंदर यह पानी पाक था तो आज भी इसको क्या करार दिया जाएगा, पाक ही करार दिया जाएगा। इल्ला ये कि कोई मुजील आ जाए जो इस सिफत को क्या कर दे, जायल कर दे और खत्म कर दे, और यहां तो कोई ऐसी चीज मौजूद नहीं है, लिहाजा पानी को पाक करार दिया जाएगा। तो इस्तेसहाबे हाल किसे कहते हैं, इबका माकाना अला माकाना भाई। तो इस्तेसहाब का वैसे माना होता है मुसाहबत तलब करना, सीन तलब के लिए है, इस्तेसहाबुल हाली हाल की मुसाहबत तलब करना, या यानी माजी के अंदर एक चीज का जो हाल था तो इस हाल को भी उसका मुसाहिब बना दिया जाए कि अब भी वही हालत है जो पहले हालत थी, अब भी वही हालत है भाई। तो देखो बात चल रही थी कि तालीक तो सही हो जाएगी जब कहने वाले में अहलियत हो, जब कहने वाले में अहलियत हो, वो आकिल बालिग है तो उसकी तालीक सही है। हां हम मिल्कियत की भी शर्त लगाते हैं, मिल्कियत की शर्त इसलिए लगाते हैं ताकि जजा गालिबुल वजूद हो जाए, जजा के होने का यकीन हो जाए। खावन बीवी से कहता है इन दखल तिदार अफानती तालिकुन, अगर तू उस घर में गई तो तुझे तलाक है। अब इस वक्त खावन मालिक है तो अब इस जजा का होना भी यकीनी है, हालांकि एहतमाल तो यह आता है, हो सकता है इस वक्त तो यह मालिक है, निकाह मौजूद है, लेकिन हो सकता है चंद दिन के बाद यह तलाक दे दे, तो जिस वक्त शर्त वाकई होगी उस वक्त तो मिल्कियत ही मौजूद नहीं होगी। लेकिन कहते हैं इस वक्त मालिक है तो हम इस्तेसहाबे हाल को दलील बनाएंगे कि उम्मीद है उस वक्त भी मिल्कियत मौजूद होगी, जब उस वक्त मिल्कियत मौजूद होगी तो जजा वाकई हो जाएगी। बात समझ में आ रही है, तो लिहाजा शर्त की तालीक के लिए तो असल उस आदमी की अहलियत है और अखावन आकिल बालिग है, लिहाजा अहलियत तो है। अलबत्ता हमने मिल्कियत की भी शर्त लगाई, मिल्कियत की शर्त किस लिए लगाई, ताकि जजा गालिबुल वजूद हो जाए, जजा जजा के होने का यकीन हो जाए। इस वक्त मालिक है तो यकीनन उस वक्त भी मालिक होगा, इस्तेसहाबे हाल की वजह से भाई। बात समझ में आ गई, देखिए भाई साहिब हिदायत इसको और बेहतर अंदाज में जिक्र फरमाएंगे। तो कहते हैं इल्ला अन्नल मिल्क युश्तरतु हालत तालीकी, लेकिन यह कि मिल्कियत शर्त होगी तालीक की हालत में, जब खावन तालीक कर रहा हो उसको तलाकों का मालिक होना चाहिए। लियसीर अल जजा उगालिबल वजूदी, ताकि जजा जो है गालिबुल वजूद हो जाए, उसके होने का यकीन हो जाए। लिस्तिसहाबिल हाली, किस वजह से, इस्तेसहाबे हाल की वजह से, यानी इबका माकाना अला माकाना की वजह से, जिस हालत पर एक चीज थी उसी पर उसको बाकी रखा जाए। फयसहुल यमीन, तो यमीन सही हो जाएगी। इस वक्त मिल्कियत को हमने शर्त करार दिया है ताकि जजा गालिबुल वजूद हो जाए, जजा के होने का यकीन हो जाए इस्तेसहाबे हाल की वजह से। फयकउल यमीन, तो यमीन सही हो जाएगी, मुनाकिद हो जाएगी भाई। तर्जमा भी समझ में आया कि नहीं, फिर देख लें तर्जमा। इल्ला अन्नल मिल्का युश्तरतु हालत तालीकी, मगर यह कि मिल्कियत शर्त होगी तालीक की हालत में। लियसीर अल जजा उगालिबल वजूदी, ताकि जजा गालिबुल वजूद हो जाए। लिस्तिसहाबिल हाल, इस्तिसहाबे हाल की वजह से। फयसिहुल यमीन, तो यमीन सही हो जाएगी। वाइंदा तमामी शर्ती, और नीज वाइंदा तमामी शर्ती, इसका अतफ है हालत तालीक पर। इसका अतफ किस पर है? पीछे क्या आया था? इल्ला अन्नल मील का युश्तारा तो हालत तालिक, इस हालत तालिक को उठाएं और यहां इंदा तमामी शर्त लिखें। इल्ला अन्नल मील का युश्तारा तो इंदा तमामी शर्ती, इसी तरह मिल्कियत शर्त होगी, शर्त होगी इंदा तमामी शर्ती, जिस वक्त शर्त पूरी हो रही हो उस वक्त भी मिल्कियत शर्त होगी। लियन जिलल जजा, ताकि जजा नाजिल हो सके भाई, उस वक्त मालिक होगा तो तलाक हो सकेगी, अगर वो मालिक नहीं है तो तलाक भी वाकई नहीं होगी, तो उस वक्त भी मिल्कियत शर्त होगी। लियनजिल जजा, ताकि जजा नाजिल हो सके। लियन ला यनजिल इल्ला फिल मिल्की, इसलिए क्योंकि जजा नाजिल नहीं होती मगर मिल्कियत में ही, खावन मालिक होगा तो तलाक हो सकती है, वैसे तलाक नहीं हो सकती। वफी माबे नजालिकल हालु हालु बका इल यमीनी, और इस हालत के दरमियान जो है वो बकाए यमीन की हालत है। एक जमाना वो है जिसमें तालीक कर रहा है, उसमें भी मिल्कियत शर्त। एक जमाना वो है जिसके अंदर जजा नाजिल होगी, उसके अंदर भी मिल्कियत शर्त है, और दरमियान के जमाने के अंदर मिल्कियत शर्त नहीं है। यह माना है वफी मा बैन ज़ालिकल हालु हालु बका इल यमीनी, और इसके बीच में जो हाल है वो बकाए यमीन का हाल है। फयुस्तगना अन क़ियामिल मिल्की, तो वो बेनियाज है मिल्कियत के कायम होने से, उसमें मिल्कियत का वजूद जरूरी नहीं है। इस बका उहु बि महल्लिही, इसलिए क्योंकि तालिक की जो बका होती है बि महल्लिही, वो अपने महल के साथ होती है। तालिक का महल क्या है? कसम खाने वाले का जिम्मा है, और वो तो मौजूद है भाई, तो लिहाजा मिल्कियत बेशक ना हो लेकिन जिम्मा तो है, लिहाजा वो तालीक बाकी रहेगी। तो कहते हैं इस बका उहू बी महल्ली ही, इसलिए क्योंकि तालीक की जो बका होती है बी महल्ली ही, वो अपने महल के जरिए होती है। वह हुआ जिम्मतु, और वो महल क्या है? वो उस शख्स का जिम्मा है जिसने तालीक की थी भाई। बात समझ में आ गई, हल हो गया। चलिए बस भाई, हादा हुवल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।